نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد DQ 21 دار قرآن 2021 آج ہم اس میں سے پارہ نمبر 10 کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیوی توفیق اور اس کی رحمت کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کہ جو تیری مراد ہے وہی ہم بھی سمجھیں کوئی ایسی چیز ہماری زندگی میں نہ آ جائے اس سارے کرنے قرآنے کے دوران کہ جس کے بعد ہم واقعی کوئی غلط بات کہہ دیں بہت خوف کے ساتھ اور بہت ہی فکر کے ساتھ یہ بات کہنے والی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بے فکر پن سے اور لاوبالی پن میں اس دین کی تعلیم دینے سے بچائے آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ جو دکھتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے یہ بات کرنا اور بعض دفعہ سنی ہوئی بات کو ہم آگے بغیر کسی جذب کے اور بغیر کسی چیز کے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے کم از کم اس سے بچائے جو آپ کو پڑھانا ہوتا ہے اس کو پہلے پورا جذب کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور اس میں میرا دل جان جسم ایک ایک چیز ایگزاسٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ بات بہت بڑی ہے تو یاد رکھیے کہ اس کو پڑھانا اگر نعمت بہت بڑی ہے تو پھر یہ ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے پارا نمبر 10 ہمیشہ ہی ہماری بہت ساری توجہ محبت اور بہت سارا وقت لیتا ہے وَعَلَمُوا کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ علم کے بغیر بات نہیں بنے گی جتنا بھی علم لیں گے وہ تھوڑا لگے گا اور میں آج پھر اسی بات کی گواہی دوں گی کہ اتنی بار پڑھانے کے باوجود آج پھر 10واں پارا پڑھانے کے لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں آج بھی اس کا حق ادا نہیں کر پاؤں گی جتنا کچھ اس میں ہے تو آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے دار قرآن کا ٹاپک القلب الباخس عن الہدایہ ہدایت کا طالب دل ہے اور الحمدللہ یہ دل اب 10ویں پارے پہ پہنچ چکا ہے اس امید کے ساتھ کہ دل کے اندر یقیناً خیر آ چکی ہوگی جب بھی ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں اب آپ بالکل اپنے آپ کو اس برتن کی طرح رکھ کے لکھنا شروع کریں آپ لوگ لکھیں گے نہیں نا تو میں بھی فوکس نہیں ہوتی مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس میں باتیں کر رہی ہوں حالانکہ اس میں سے ایک ایک بات کو لکھنے سے پہلے کوئی 10ویں دفعہ میں نے خود بھی پڑھا ہوتا ہے تاکہ میں کوئی غلطی نہ کر دوں اور اللہ تعالیٰ پھر بھی کوئی غلطی رہے تو اس کو معاف کر دے پارے کی مرکزی آیت آج ہماری ایک نہیں دو ہیں سورۃ توبہ آیت 32 سے 33 يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی بھوکوں سے بجھا دیں مگر اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں خواہ کفار کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے آپ نوٹس لیجئے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو سورۃ توبہ جو کہ ایک یونیک سورہ ہے اس میں ان دو آیات کا آنا یہ آج ہمیں اس بات پہ مائل کرتا ہے کہ ہم اس پارے کو اس نیت سے پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ پھوکے مارنے والے کون ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگوں نے اسلام کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی کیا ان کی پھوکوں سے پھر اسلام کا نور بجھ گیا نہیں بجھا تو آج کے دور کا جو سب سے بڑا کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے خود کو اور ہماری نسلوں کو امت مسلمہ کو اس بات کا یقین دلانا ہے کہ اسلام کا مستقبل بڑا خوبصورت ہے اس کے لیے جو چیز آج مجھے دلوں میں آپ کے اس موضوع سے متعلق دکھی وہ آیت نمبر 45 ہے سورۃ توبہ کی ہی इरताबत कुलूबुहुम फहुम फी रईबिहिम यतरद्ददून, जिनके दिलों में शक है और वो अपने शक ही में मुतरद्दित हो रहे हैं। ये हैं वो लोग जो आज के दौर में हिम्मतें तोड़ने वाली बातें करते हैं। देखा जाए तो मजमूई तौर पे इस वक्त उम्मत के ऊपर एक हल्की सी बेकली और एक खिजां की कैफियत है और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। पहले तो लोग जाकर नबी सल्लम के मस्जिद में उसके इर्द गिर्द कुछ बातें करते होंगे, लेकिन आज सोशल मीडिया भी आम हो गया और हर बंदे को बोलना आसान भी लगता है और बोलना अच्छा भी बहुत लगता है। चाहे बोलने की बजाय सुनने का ही अभी मुकाम था, लेकिन वो बोलना पसंद करते हैं तो उनका शौक है। तो ऐसे लोगों से आज जो एक कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया जा रहा है वो क्या है कि मुसलमान खराब है, इस्लाम का कोई मुस्तकबिल नहीं और आने वाला दौर बड़ा बुरा है और बस इस दौर की नस्लें और इस दौर के बच्चे ये तो पैदा ही ना होते। यानी इवन बाज दफा कुरान पढ़ी हुई खवातीन के मुंह से मुझे ऐसी बातें मिलती हैं कि क्या करते हैं बच्चे पैदा करके, आगे तो फितने ही फितने हैं। तो उम्मत पे आज एक मायूसी तारी की गई है, ये याद रखिये बहुत बड़ा फितना है। आज का मेरा टॉपिक जिसमें इस पूरे पारे को हम एक नटशेल में समप करेंगे वो क्या है, अल मुबशिरातु बिंतिसारिल इस्लाम, खुशखबरियां इस्लाम के गलबे की। तो गलबा इस्लाम की बशारतें जो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस और कुरान की आयात से जो मिलती हैं, तो आज इस बारे में से इसको ढूंढेंगे। और शुरू में आज इसी पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि इस्लाम का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, अल मुस्तकबिलु लिहाज़द्दीनी। अगर देखा जाए तो आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्तकबिल रोशन इस्लाम का है, इस वजह से कि आज भी इस्लाम वास्टली और वाइडली स्प्रेडिंग रिलीजन है दुनिया में। आज भी जिस दीन को लोग अपनी विजडम के साथ, अपने हालात के साथ, और स्पेशली अब ये जो हालात चल पड़े इस वक्त फितनों के दौर, कभी ना कभी जहां भी को फितना फैला, चाहे आप उसको 9/11 से ले लीजिए या आज कोरोना का फितना, इस सारे दौर में आप जाकर दुनिया की हिस्ट्री देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह बिनेमतिही ततीमु सालेहात। आज भी बावजूद इसके कि हम मुसलमान वो कोशिशें नहीं कर रहे दावा की, तबलीग की, इस्लाम को आगे ले जाने की, लेकिन इसके बावजूद भी इस्लाम ही दुनिया में सबसे ज्यादा फैला जा रहा है। और आज वो चैनल्स जो चाहे अपने दिल में कुछ भी रखकर इस्लाम के खिलाफ बात करें, वो ये कहने पे माइल हो रहे हैं अपने फिगर्स एंड फैक्ट्स की रोशनी में कि 2020 तक ये, 21 ये, 22, 25 तक इस्लाम यूरोप का सबसे बड़ा रिलीजन होगा। ये उनकी बातें हैं, ये उनके मामलात हैं। तो नोट कीजिए कि हम आज इन हालात पे क्यों बात करें, यानी ये मौजू क्यों है, इसलिए कि आज मायूसियों के इस दौर में, परेशानियों के दौर में हम दीन वालों का फर्ज है, हम दीन के मुबल्लिगीन, हम दीन के खादिम और खादिमात और हम कुरान की खिदमत करने वाले, इनका अखलाकी फर्ज है कि लोगों को खुशखबरियां दें और लोगों के दिलों में से इस्लाम की नफरत का बीज निकाल दें। आज इस्लाम से नफरत हमारी नस्लों को दी जा रही है, अनसीन किस्म का एक ऐसा फैक्टर दिया जा रहा है कि इस्लाम ने तो डूबना, चलो निकल जाओ इस कश्ती में से, अभी छलांग लगा दो। तो हमें लोगों को बताना है कि नहीं। और एक और जो फिगर हमारी इस नस्लों को दिया जा रहा है कि इस्लाम बहुत मुश्किल दीन है, दीन में बहुत तंगी है। अल्लाह के नबी ने तो अपने सहाबा को जब भी कहीं भेजा, जिसमें माज बिन जबल भी आते हैं, अबू मूसा अलैशरी, यमन भेजा, तो आपने उनको इंतहाई मुख्तसर सी वसीयत की थी कि देखो आसानियां पैदा करना, बशिरु वला तुनफिरु, लोगों को मुश्किलों में ना डालना, बशारते देना, नफरतें ना डालना और आपस में मिलजुल कर काम करना। इसी बात की नसीहत सहाबा कराम, जिसमें सबसे आखिरी सहाबी अनस बिन मालिक थे, जिन पे दौरे सहाबियत पूरा होता है, उन्होंने भी पूरी उम्मत को इसी बात का सबक दिया था और खिताब करते हुए उन्होंने उम्मत मुस्लिमा से कहा था कि लोगों के लिए आसानी पैदा करो और इन्हें तंगी में न डालो, खुशखबरियां दो, इन्हें इस्लाम से नफरत न दिलाओ। तो लिहाजा आज आपको मुझे सर उठाकर जीने की जरूरत है, अपने आप को अपलिफ्ट करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप और मैं अपने दीन का खूबसूरत अंदाज लोगों को दिखाते हैं, उतना ज्यादा लोगों के लिए दीन प्रैक्टिकल है। वरना एक तरफ लोग इस्लाम में दाखिल हों और दूसरी तरफ हमारी अपनी ही नस्लें निकलती जाएं तो बात क्या बनेगी। तो लिहाजा जरूरत है कैसे दावत और तबलीग के तरीके से पूरी तरह परहेज किया जाए, जिससे लोगों को इस्लाम से नफरत भी हो और लगे कि इस्लाम डूब रहा है। देखिए, जो सौदा नहीं बिकता उसको कोई नहीं खरीदता, और जिसको बहुत बेच खरीदने लग जाए तो वो लोग खड़े हो जाते हैं, ये क्या बिक रहा है, जरा हम भी तो देखें। जिसको कोई ना सुन रहा हो, लोग कहते अच्छा ही नहीं होगा, तभी नहीं सुन रहा, और जहां जहां बहुत सुन रहे हो कहते अच्छा ही होगा, ये इंसानी फितरत है। तो आज जब हम लोगों को इस्लाम के साथ इस तरह का रवैया देखें तो हमारे दिल में दर्द आना चाहिए। और इसलिए भी जरूरी है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा अपनी तारीख के इंतहाई सख्त मराहल से गुजर रही है। मायूसी और एहसास नाकामी का एक एहसास गालिब है। हमने अपने कोर्स में सर उठा के जियो एक टॉपिक किया था कि जिसको पढ़ाने के दौरान मुझे बहुत शिद्दत से एहसास हुआ था कि वाकई इसकी कितनी जरूरत है, खासतौर पर फिर हमारी यूथ, हमारी नस्लें, हमारा जौहर, हमारी वो मट्टी के जो नम हो जाए तो बड़ी जरखेज है। फिर दुश्मनान इस्लाम ने भी इस्लाम पर बहुत पुरफरेब अंदाज से हमले किए और उसका नुकसान जो हुआ वो जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन इस वक्त इस्लामी बेदारी का मौका है। इस वक्त जरूरत है कि हम इन चीजों को लेकर चले। सवाल यह है कि अगर गलबा इस्लाम होगा तो हमें तो इसके कोई हालात नहीं दिखते। लोग तो जो भी कहते हैं, अपने ही गोरे कहते हैं और अपने ही लोग आके स्क्रीनों पे आके कहते हैं कुछ नहीं रह गया, छोड़ दो, पाकिस्तान में कुछ नहीं, सऊदीया में कुछ नहीं, और ऐसी लगता है कि एक नफसियाती किस्म की जंग छिड़ी हुई है और लोगों को मायूस करके अपनी तरफ ले जाने वाली चीजों की तरफ लोग लेके जाते हैं। तो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए हमने इस वक्त इंशाल्लाह, आइए देखते हैं कि कुरान पाक में क्या बिशारतें हैं गलबा इस्लाम से मुतल्लिक, क्योंकि इस वक्त ये उम्मत जिसको अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा काम दिया था उसको ये बात बताना लाजमी है कि वो अल्लाह के वादों पर यकीन करे और इस मुश्किल घड़ी में शम्मा उम्मीद को जला कर रखे। आज के दौर के वो मुबल्लिगीन जो वाकई लोगों की उम्मीदें ऊंची रखते हैं वही लोगों को ज्यादा खुशी भी देते हैं, वरना इस्लाम के नाम पर कभी सख्ती है, कहीं शिद्दत है और कहीं सिर्फ झगड़े हैं। चंद इख्तलाफी बातों को अब नुमाया करके इस्लाम की खिदमत कर सकते थे, लेकिन आज के दौर में ऐसा मुश्किल हो रहा है। तो कुरान पाक में बहुत सारी आयात है, लेकिन चंद आयात नंबर आप नोट करना चाहें तो आपके लिए लिख दी गई है। सूरत तौबा की आयत नंबर 32-33 जो इस वक्त भी हम आप पढ़ेंगे, सूरत सफ की आयत 8 और 9 और सूरत अल-फतह की आयत नंबर 28, तीनों का एक ही टॉपिक है, एक ही मजमून तीन दफा कुरान पाक में अल्लाह सुबहान तआला ने पेश किया कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलखुदा व दीन अल-हक की लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। बस लस लियुज़हिरहु को आप गलबा इस्लाम से ले लीजिए कि ये दीन गालिब होगा। अल्लाह ने कह दिया युरीदून युत्फि नूरुल्लाह, दुश्मन चाहें जो मर्जी करें रोशनी को अपनी फूकों से बुझाना चाहें, लेकिन अल्लाह ताला इसको गालिब करके रहेगा। ये तो आज हम सोए हुए हैं फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया में इस्लाम फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, क्योंकि सच्चाई है एक चिंगारी लगा दें फिर आग खुद ही फैलती रहती है। आज मैं और आप कुछ भी नहीं करेंगे ना तो उसके बावजूद भी इस्लाम फैलेगा। और फिर इसके बाद सूरत नूर में अल्लाह ताला ने वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वामिलुस्सालिहाती लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ध, सूरत नूर की आयत नंबर 55 है। इसमें भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खबर दी और पूरे कुरान पढ़ने वालों को खबर दी कि वाकई इस्लाम फैलेगा। और इसी तरह अगर आप हदीस ये तो आपको बहुत खुशी इस बारे में कि इस्लाम का गलबा होगा, जब अल्लाह के नबी सल्लम ने हातिम के साथ बात की और उनको बताया कि ए अदी इस्लाम कबूल कर लो सलामत रहोगे। कहते हैं कि मैंने कहा कि मेरा तो अपना बड़ा अपना अच्छा दीन है, मैं आपके दीन को क्या करूंगा। तो आपने फरमाया कि याद रखो एक वक्त आएगा कि दुनिया में एक ही दीन होगा और वो इस्लाम होगा, और ये वो वक्त होगा कि एक दूर से हीरा से एक औरत चलकर आएगी या सवारी पे आएगी, लेकिन उसको किसी का डर नहीं होगा। अल्लाह की कसम अल्लाह इस दीन को गालिब करेगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ये मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मशरिक और मगरिब मेरे सामने समेट के रख दिए और अनकरीब मेरी उम्मत वहां तक पहुंचेगी। तो बहरहाल इन सारी चीजों को सामने देखें तो कुरान में भी आयतें बहुत सारी और अहादीस भी हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इस गलबे के अंदर एक और चीज है और वो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इस्लाम फैल गया था मक्का से मदीना और हिजाज तक, ताइफ, और इसके बाद आप देखिए कि तबूक तक तो आपके अपने कदम भी जाके लग गए इस्लाम की तरवीज में। आपके बाद क्या हुआ, मुअज्ज़ज़ तरीन लोगों को खलीफा बनाया गया, जिसमें सबसे पहले आप देखिए कि उस दौर के सबसे बड़े सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक को इस्लाम की बागडोर दी गई। ये भी बड़ी अहम बात होती है। एक लीडर दुनिया से जाने से पहले अपने बाद बेहतरीन लोगों को नॉमिनेट कर जाए कि मेरे बाद ये होगा, और इशारों किनायों में अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के लिए बात कर दी थी। और अबू बकर सिद्दीक ने जो सबसे बड़ा काम किया वो उमर फारूक को नॉमिनेट किया था। तीन लोगों का तज़किरा आता है, साहिब बहुत ही फरासत लोग उसमें अबू बकर है, क्योंकि उन्होंने अपने बाद अब उमर को नॉमिनेट किया था। बस लोगों ने उस पर एतराज भी किया था, लेकिन उमर में सख्ती है, तो आपने फरमाया नहीं, हजरत उमर के ऊपर खिलाफत की जिम्मेदारियां जब आएंगी तो इनकी सख्ती इनकी नरमी में बदल जाएगी। फिर आप देख लीजिए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो, फिर हजरत अली रजीम अल्लाह ताला अन्हो, सबको अल्लाह ने बेहतरीन तरीके से बता दिया कि ये सब कुछ हम जो करेंगे वो क्या होगा, ये अल्लाह ने इस दीन को रखना है। आप ऐसे समझिए कि कोई घर बनाना आसान है, बन जाता है, तिनका तिनका जोड़कर कोई घर बनाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर वो घर जाया हो जाता है। सास चली गई, बहुएं आ गई, उनके अपने स्टाइल थे, उनकी जिंदगियां थी, या कोई टेक केयर ना करे। चले बाप ने कारोबार किया, दुकान बनाई, बड़ी साख बनाई, बड़ी कीमती चीजें थी उसकी, बड़ी इज्जत थी, बाद में बेटों पोतों ने वो नहीं किया, बिगड़ जाता है। याद रखिए दीन के साथ भी यही होता है। संजीदा कोशिश है, दीन एक खेल और हजल नहीं है। हमें हजल लगता है, माजरत के साथ हम देखते हैं कि ये काम है, पढ़ाना है, क्या बड़ी बात है, पढ़ा ले, उसको पकड़ उसको पकड़, फिर उसके बाद उसको सुना, उससे लेंगे, चंद लोगों से मिनते करेंगे, हमारी मदद कर दो जरा, हम भी एक इदारा बना लें। वल्लाह ही ये इदारे बनाने और इनको चलाने सिर्फ अल्लाह का काम है। ये अल्लाह की रहमत होती है तो ये काम हो जाता है, इसके बगैर ये काम होता नहीं है। फिर आप देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इस गलबे के लिए, आप जरा सा मैं आपका रब जोड़ना चाहूंगी, पिछले पारे में हमने सूरत अलराफ में पिछले कौमों की के किस्से पढ़े। कुरान पाक में रसूलों के किस्से भी बताए गए, मोमिनीन और मुकज्जबीन के अंजाम भी बताए गए। हमने वहां जो कुछ पढ़ लिया उन सब के बाद हमें ये तो पता चल गया कि अल्लाह की ये सुन्नत है कि जब भी किसी कौम के पास वहां का नबी या रसूल भेजा जाता है तो कौम अगर मान लेगी तो वो नबी के साथ निजात पा लेगी, और अगर तकजीब करेगी तो उड़ा दी जाएगी। बस वही असूल इधर है। अल्लाह ताला ने इस कुरान में रसूलों के किस्से भी दिए, मुकज्जबीन और मोमिनीन के अंजाम बताकर हम सबको बता दिया कि देखो तुम आज अपने आप को देख लो। नबी सल्लम नहीं भी अगर अपने वजूद के साथ, लेकिन उनका मिशन जिंदा है, उनका इस्लाम जिंदा है। आज अगर तुम इस मिशन को अपनी जिंदगी का मिशन बना लोगे तो अल्लाह तुम्हें बचा लेगा। मसलन जैसे आप देखिए कि सूरत अलअराफ में हमने तवील किस्सा हजरत मूसा और फिरौन का पढ़ा, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मुकाबला उस वक्त के फिरौन से हुआ, अल्लाह ने फिरौन को डुबो दिया। क्या बड़ी बात थी, अल्लाह ताला कुछ और भी कर सकता था, लेकिन हजरत मूसा के दौर में भी इस्लाम गालिब नहीं हुआ। ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे वक्त के साथ, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मोमिनों से अपने सच्चे वादों की भी बात की है। सूरत रोम की आयत 47 देख लीजिए, व कान हक्कन अलैना नसरुल मोमिनीन। सूरत यूनस आयत 103 में अल्लाह ने बता दिया, हक्कन अलैना नुंजिल मोमिनीन। और सूरत हज आयत 38 में अल्लाह ने बता दिया, इन्नल्लाहा युदाफियु अनिल्लज़ीना आमनु, अल्लाह मोमिनों का दिफा करेगा। तो क्या पता चला कि अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान पाक में आपको मुझे ये बता दिया कि ये किताब पढ़ने वाले, इसके हिस्सा बनने वाले इंशाल्लाह कल निजात पाएंगे। तो भी इतनी बात का खुलासा क्या हुआ कि हमें अपने दिल से एहसास महरूमी निकालना है, एहसास कमतरी निकालना है, इस्लाम को लोगों की नजरों में खूबसूरत बनाकर दिखाना है, सर उठाकर जीना है। और फिर आज के दौर में जो प्रोपेगंडा है इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के मुतल्लिक, उन सारी चीजों को हमने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत और उसके ऊपर नजरें लगाते हुए इस चीज को अपने सामने रखना है कि अल्लाह ताला का ये दीन गालिब हो। आगे चलते हैं, कुछ चीजें जो आज के दौर में हमारे ऊपर मुसल्लत की जाती हैं और हम उसको देखेंगे आज कुरान की रोशनी में, यानी मीडिया की रोशनी में। तो आप बहुत कुछ देखते सुनते रहते हैं, आपको हर वक्त ये चीजें इधर से उधर, उधर से इधर दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, लेकिन कुरान क्या कहता है। एक सवाल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही मारूफ किया जाता है, और वो कह के नऊज़ुबिल्लाह, آپ نے یہ اسلام تلوار کے ساتھ پھیلایا۔ آج چونکہ اس سپارے میں ہم سورت انفال بھی پوری کریں گے اور سورت توبہ کو بھی شروع کریں گے، ان دونوں سورتوں میں نفس سلم کی جنگوں کی بات ہے، اس کو ملائخ کہتے ہیں۔ تو ایک سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت اور جنگ کے نبی بیک وقت ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا اپنا قول ہے، ان نبی الرحمہ، میں رحمت کا پیامبر ہوں، انا نبی الملحمہ، میں مارکوں کا پیامبر ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے ذہن میں جنگ آتی ہے اور دوسری طرف رحمت آتی ہے۔ آج کے دور کی جنگوں کو دیکھ کر تو واقعی یہ جنگیں اور جو دنیا میں لوگ کرا رہے ہیں یہ رحمت نہیں لگتی، لیکن تھوڑا سا سمجھ لیجئے اس مضمون کو بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایک رحمت بھی تھے اور کس طریقے سے آپ کو جنگیں بھی لڑنی پڑی۔ تو پچھلے دور میں انبیاء کرام کی وہ قومیں، خاص طور پہ رسولوں کی وہ قومیں جنہوں نے رسول کو جھٹلا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی آسمانی یا زمینی آفت کے ساتھ تباہ کر دیا۔ قوم نوح کو پانی میں ڈبو دیا اور اسی طرح باقی قوموں کے قصے آپ پڑھ چکے ہیں۔ مکہ والے جن کے پاس اللہ نے اپنا آخری رسول بھیجا، محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سر کی آنکھوں سے، سر کے کانوں سے یہ پیغام دیکھا اور سنا۔ اگر وہی قانون ادھر بھی اپلائی کیا جاتا یا لاگو کر دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا کہ جب مکہ والے ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا، اور کوئی زمین سے آفت آتی یا آسمان آتا، اور جبرائیل علیہ السلام نے ایسی آفرز بھی دی کہ نبی اگر آپ اجازت دیں تو زمین دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس بستی کو نہ کر دوں، طائف والوں کا واقعہ یاد کیجئے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ لکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کام جو پچھلے دور میں آسمانی آفات سے لیا، وباؤں کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں، طوفانوں کی صورت میں، وہی معاملہ عربوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی تلواروں سے لیا۔ سمجھیے گا، بہت اہم ٹاپک ہے، اسی لیے آپ کو یہ سب دے رہی ہوں کہ جس دنیا میں اب آپ ہیں آپ نہیں بچ سکتے۔ آپ کے بچے خبریں بھی سنتے ہیں، وہ بڑے بڑے چینلز پہ بھی جاتے ہیں، جب ان کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے یہ بات بتا دی کہ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں اس کا یقین آئے گا کہ ہاں اللہ کے نبی نے جنگیں کی، لیکن اللہ کے نبی کی جنگیں کس لیے تھی؟ تاکہ پیس ہو، دا وار ٹو ہیو دا پیس۔ جنگوں کا خوبصورت ادب اور طریقہ سکھایا گیا، ان ساری چیزوں میں اس کو سامنے رکھیے۔ اسلام سے پہلے جو حالات تھے، جو واقعات تھے، اس میں کیا تھا؟ لوٹ مار تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس جنگ کا مقصد کیا ہے اور اس کی اجازت کیوں دی گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھیجے گئے تو اسلام سے پہلے جنگیں کیا تھی؟ 200 سال تک جنگیں بواس جاری رہی، ادھر سے اڑ کر ادھر کوئی پرندہ چلا گیا، میرے کھیت سے آپ کے کھیت پہ اس پہ لڑائی شروع ہوتی، کئی سال تک جاری رہتی، اور ادھر سے پانی نکل کر ادھر بھیج دیا گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھے۔ مولانا حالی کی مسدس کو پڑھ لیجئے۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کی بہتری کی، اس میں یہ بھی کیا کہ جنگ کے ایتھکس سکھائے، جنگ کی ٹیکٹکس سکھائیں۔ اور عام طور پہ دیکھیں نا، طوفان آتا ہے تو سبھی مارے جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ گیہوں کے سگن بھی پستا ہے، لیکن ادھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کی تلواروں سے، صحابہ کی تلواروں سے صرف انہی لوگوں کا مقابلہ کیا گیا جو خود مارنے آتے تھے۔ آج ایک ایٹم بم گرتا ہے، نہتے شہری مارے جاتے ہیں، نائٹروجن بم گرے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ لوگ کدھر گئے اور ان کی جان نکل جائے گی نا۔ آج آپ خبریں سنتے ہیں اور اخباروں میں پڑھتے ہیں یا ادھر ادھر دیکھتے سنتے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اسلام کی جنگیں ایسی نہیں تھی کہ بیچاری عورتوں پہ اور بچوں پہ اور بوڑھوں پہ اور ہینڈی کیپس کے اوپر بم پھیلائے جائیں، وہاں صرف ایسے ہی تھا جیسے مثال دیتی ہوں کہ کاکروچ آ جائے تو آپ ماریں گے نا، کاکروچ کو پھرنے دیا کریں گھروں میں، کوئی بات نہیں، مخلوق ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، نہیں آپ مارتے ہیں کیونکہ کاکروچ فساد پھیلاتے ہیں، یا گندگی ہوگی، بیماری ہوگی، چھپکلیوں کو مارتے ہیں نا۔ بس اسلام کا کام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کام لیا کہ وہ سر جن میں خنس بھرا ہوا تھا، جس میں اسلام کی دشمنی تھی، اللہ کی اس بنائی ہوئی دنیا میں اللہ کا نام بلند کرنے کی بجائے अपने तौर तरीके चलाने की जरूरत थी, तो अल्लाह ताला ने ऐसी जगहों पे फिर इन चीजों को आपके जरिए से बिल्कुल खूबसूरत तरीके से आगे फैलाया। आपने आप कह सकते हैं कि वॉर टू डोंट हैव वॉर, इसलिए आपने जंगे की कि जंग ना हो, झगड़े खत्म हो, लड़ाइयां खत्म हो। हक को बातल की जंग में जंगे बदर का बड़ा तस्करा है, जिसका तस्करा हम पीछे शुरू कर चुके हैं, और अभी इस पारे को भी हम जब शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका ताल्लुक पिछले पारे के साथ जोड़ूंगी इंशाल्लाह आयत के साथ। तो अल्लाह ताला के वादों में एक और वादा है, वो भी नोट करें कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जब भी दुश्मनों ने कोई चाल चली, अल्लाह वादा करता कि मैं इनको नाकाम करूंगा। इसके लिए आप बाद में इंशाल्लाह, और आज मैंने एक नियत की है, अगर आप लोग भी इसमें करेंगे इंशाल्लाह अपनी ख्वाहिश का इजहार, तो मेरे दिल में अल्लाह ने डाल दिया कि अस्माउल सिफात वाली हमारी सीरीज पूरी होने लिए शाम के सेशंस में इसके बाद एक शॉर्ट कोर्स हम इसी टॉपिक पे करेंगे। और एक अरबिक बुक है बेसिकली अल मुबशरात इब इंतसार इल इस्लाम। आज दिल सुबह से बेचैन थी कि अल्लाह ताला ये आज का पारा पूरा करा ले, और आज के दौर का द मोस्टली नीडेड टॉपिक इज दिस टॉपिक कि अल मुबशरात बिन तिसार अल इस्लाम। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ये अरबी बुक पढ़ाने को तैयार हूं कि गलबा इस्लाम की बशारतें कैसे अल्लाह ने हर चीज खोल के बता दी। तो अल्लाह सुबहान तआला कहता है कि इस्लाम गालिब होगा, इसकी दलील है कि दुश्मनों की चालें नाकाम हुई, हर दौर में लोगों ने की, लेकिन ये नहीं है कि आप और मैं ये सोच लें कि अब ये कभी खत्म नहीं होंगी। बस आप देखिए कि सूरत तारिक आयत 15 से 17 में अल्लाह ताला ने दुश्मनों की चालों को खत्म करने का वादा किया। फिर सूरत अनफाल आयत 30-36 है, सूरत यूनस 82 है, आले इमरान 12-13 है। अब इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको एक एक आयत की डिटेल में ले जाऊं, लेकिन यकीन कीजिए कि इस्लाम गालिब होगा, इंशाल्लाह होगा। फिर इसकी एक और दलील ले लीजिए कि कलमा हक की सरबुलंदी के लिए अल्लाह ने पसंदीदा कौम का इंतखाब करने का वादा किया। आप और मैं एक आयत पढ़कर आए हैं सूरत मायदा आयत 54 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ए बोन मुस्लिम, ए खुद को पैदाइशी जद्दी पुश्ती मुसलमान कहने वाले, तुम्हें आज इस्लाम अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे लिए इस्लाम एक प्रैक्टिकल रिलीजन नहीं रह गया, तो जाओ फिर शौक से छोड़ दो, तुम्हें इस्लाम नहीं अच्छा लगता, कुफर अच्छा लगता है, कुफर के तरीके अच्छे लगते हैं, शौक से जाओ, मुझे भी कोई परवाह नहीं। فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ, अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम का वादा कर दिया जो आज आप और हम मुसलमानों के लिए, जो वाकई पैदाइशी मुसलमान कहते हैं खुद को, उनके लिए एक थ्रेट है। आज आप देखिए रिवर्ट्स इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, और हम पकौड़े समोसे खा पका कर उस पर भी राजी नहीं है, फिर भी रोते हैं हमारे बच्चे कि आज फिर इफ्तारी में आपने 6 ही चीजें बनाई हैं, बस आपको तो बस 4 ही किस्म की चाट बनानी आती है, आपको तो बस चिकन नगेट ही आते हैं, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। याद रखिएगा, अगर मैं और आप आज ये काम नहीं करेंगे, अल्लाह करा लेगा, और करा रहे। आज इंग्लिश जुबान के जितने अच्छे स्पीकर हैं उनमें मेजॉरिटी रिवर्ट्स हैं, क्योंकि उनके दिल में तड़प है। जिसने खुद कुछ वक्त जहालत में गुजारा होता है उसको ये चीज करनी आसान लगती है। देखा जाए तो आज अमूमी तौर पर जद्दी पुश्ती मुसलमान वाकई दुनिया बना रहे हैं। आज हम अपनी दुनिया बना रहे, अपनी हवेलियां बना रहे, अपनी जायदादें बना रहे, अपने बच्चों की शादियां बना रहे। गुड़िया गुड्डे के खेल को अपने बच्चों की शादियों के खेल पे मूव कर लिया। बचपन में अच्छे लगते हैं गुड्डी गुड्डे के खेल, बड़े होके नहीं अच्छे लगते, लेकिन हम कर रहे हैं। आज उम्मत पे अमूमी तौर पर एक नींद बरपा है, तो अल्लाह ताला हमें ऐसे जगाने के लिए कहता है कि देखो अगर तुम अभी भी अपना ये काम नहीं करोगे ना, 2021 आ गया है, अप्रैल है, 19 डेट है आज, क्या हो गया मुसलमानों, कोरोना को मैंने तुम्हारे सर पे एक साल से एक उस्ताद बना के मुकरर किया हुआ है, अगर तुमने इससे भी सबक नहीं लेना ना, तो फिर पीछे हो जाओ, गेट आउट, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। देखिए मुसलमान के साथ अल्लाह का वादा मशरूत है, वो भी आगे आती है बात, तो देखेंगे आप। इस्लाम तो गालिब है, मुसलमान है कि नहीं ये अलग बात है। आज इस्लाम आज भी इस दौरे महरूमी में अपने हर दलील हर एथिक के साथ गालिब है। आज मगलूब है तो मुसलमान मगलूब है, और उसकी वजह है हमारे करतूत ही ऐसे हैं। तो सारी बात का खुलासा ले लेते हैं ताकि आगे चल सकें, और वो क्या है कि पूरी दुनिया में इस्लाम की नशर इशात होगी। अल्लाह के नबी ने कह दिया कच्चे घर में भी जाएगा, पक्के में भी जाएगा, इज्जत वाले को इज्जत के साथ मिलेगा और जिल्लत वाले को जिल्लत के साथ मिलेगा। फिर कुरान सुन्नत में इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी कि सर जमीने यूरोप पर इस्लाम का गलबा होगा और फतेह रूम की खुशखबरियां कुरान में मौजूद हैं। आज ये जो रिपोर्ट मैंने शुरू में जिक्र किया है, मैं उस रिपोर्ट को और कुरान की आयतों और अहदीस को जमा करके आपको पूरे एक घंटे का लेक्चर दे सकती हूँ कम से कम इस पे, कि देख लीजिए जो आज उनके फिगर एंड फैक्ट्स बता रहे हैं इट्स ट्रू, यानी गोरा गलत नहीं कहता। अगर नॉन मुस्लिम है तो वो गलत नहीं होता, उसकी ठीक बात थी, वो सही कह रहे हैं कि इस्लाम गालिब होगा। हमारे पास ऐसी अहदीस मौजूद हैं जिससे ये चीजें मिलती हैं। फिर इसी तरह आप देखिए मशरिक और मगरिब की इस्लामी मुमलिकत में शमूलियत होगी, यानी मशरिक से कुछ चल के मगरिब तक पहुंचेगा ना, हर चीज इस्लाम होगी। और हारून रशीद खलीफा ने एक दफा एक बादल को उड़ते देखा तो कहा बरस, तो बादल उड़ गया, आगे चला गया, ना बरसा, तो कहने लगा है बादल ना बरस, तो जिधर भी जाके बरसेगा तेरा खराज मुझे ही मिलेगा। यानी यहां से लेके वहां तक मुसलमानों की हुकूमत है और ये दौर होगा। फिर आप याद रखिए अहदीस से ये बात पता चलती है कि खुशहाली, अमन और माल की फरावानी होगी, जिसको आज हम देख ही रहे हैं, चारों तरफ ये चीजें मिलती हैं। फिर इसी तरह से खिलाफत अला मिनहाजुन नबूवा कायम होगी, जैसे नबी सल्लम के फौरन बाद खुलफाए राशिदीन का दौर था और वो वाकई राशिदीन थे, अल्लाह हमें भी रुश्द दे दे, इसी तरह क्यामत से पहले खिलाफत कायम होगी। ये सब कुछ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के करीब का दौर और जिसमें आप इमाम महदी का आना जाना, ये सारे उस दौर की बातें हैं। और अहदीस में ये भी पता चलता है कि औलाद याकूब पर औलाद इस्माइल का गलबा होगा, यानी मुसलमान आज के मारूफ गिरोह के ऊपर गालिब आएंगे। और फिर इस तरह नुसरत इलाही के हामिल गिरोह की बका है, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिसके साथ रब की मदद आ जाए फिर उसको किसी और की जरूरत नहीं रहती। और अल्लाह के नबी की अहदीस एक और बात नोट कर लीजिए कि हर सदी में एक मुजद्दद पैदा होगा। मुजद्दीन कौन होते हैं? रिवाइवल ऑफ द फेथ। निशाते सानिया का लफ्ज आपने मुश्किल उर्दू में पढ़ा और सुना होगा, और ये चीजें अल्लाह करवा रहा है। इस सदी के बारे में लोग नासिरुद्दीन अल्बानी साहब का नाम लेते हैं कि जब दीनदारों ने बाज़फा दीन के नाम पे कहीं अपने मुजाहिदे किए, कहीं अपने उन्होंने फतवे दिए, दीन में इतना असल और नकल जमा हुआ कि आज हमें खुद फिक्र पड़ जाती। हमने खुद वो हदीसें बयान की हुई हैं पिछले 10-15 साल पहले जो आज की रिवायतों से तहकीक से पता चलता है कि दुरुस्त नहीं थी, तो छोड़ दी क्योंकि खलत मलत हो गया दीन। और इसी तरह से फिर ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल भी होगा और इमाम महदी का जहूर होगा। तो आने वाले दौर के लिए आपने मैंने अपनी नस्लों को इंशाल्लाह एक चीज के साथ छोड़ना है जिसके साथ हम खुद भी जुड़ेंगे, और वो खुशखबरी है, ग्लैड टाइडिंग है। आपके बच्चों में से अबू बकर निकलेंगे, उमर निकलेंगे, उस्मान होंगे, अली रजी अल्लाह अन्हु अजमाइन, और नेक लोग इन्हीं नस्लों से निकलेंगे। और इस्लाम का सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से नमूदार होगा, क्यामत के करीब सूरज मगरिब से निकलेगा। तो किसी ने बड़े वसूख की बात की जो दिल को लग गई कि जैसे असली सूरज जिसको सन कहते हैं, सन सूरज शम्स, ये मशरिक की बजाय मगरिब से निकलेगा ना, तो इसी तरह जो इस्लाम का नूर हिदायत और ये सूरज है ये भी मगरिब से निकलेगा। आज आप देख लीजिए हमारे अपने मुल्कों के हालात देखिए और दूसरों में देखिए, ये आज यहां बैठे हैं तो इतनी तड़प है, अल्लाह माफ करे, पता नहीं अपने घरों में होते तो इस वक्त किसी दर्जी के पास खड़े कपड़े सीने का ऑर्डर दे रहे होते, और इल्ला माशाल्लाह जो वहां कर रहे हैं अल्लाह उनके भी कबूल करे, सब वहां अच्छे नहीं और सब यहां बुरे नहीं है, सब तरह के लोग सब जगह होते हैं। तो इस सारे काम के लिए फिर क्या चीज फ्यूल है? और वो है अल्लाह की मदद, अल्लाह की मोहब्बत। तो आज के इस पारे की दुआ जो आपको इंशाल्लाह इस सारे रास्ते को आसान करने में बहुत ही मदद देगी, और वो क्या है? اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد اے اللہ اور یہ دل کے اندر کے جو والز ہیں نا اس میں سے دعا نکالیے اور یہ دعائیں اپنے بچوں کو سکھا دیں کیونکہ اللہ کی محبت اطاعت کے راستے آسان کرتی ہے अल्लाह की मोहब्बत नमाज रोजे हज से ऊपर बढ़ाकर उसकी रास्ते की जिद्दोजहद को आसान करवा देती है। और जितना ज्यादा आप इसके अंदर अपने आप को पेश करते जाएंगे अल्लाह ताला उतना ही ज्यादा आपके लिए इन सारी चीजों को आसान से आसान करवाता जाएगा। तो क्या है कि अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगती हूँ और मैं इस शख्स की भी तुझसे मोहब्बत मांगती हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता है, और ऐसा अमल चाहती हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुंचा दे। ऐ अल्लाह तो अपनी मोहब्बत को मुझे, मेरी जान और मेरे घर वालों से ज्यादा महबूब बना दे। اے اللہ اپنی محبت کو ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ کر دے. ترمذی کی روایت ہے 3490, اور حقیقت ہے کہ اس بارے میں آپ کو اس کا رنگ دکھے گا. آج ہم اس میں ایک آیت پڑھنے والے ہیں کہ ایک طرف 8 محبتیں اور دوسری طرف اللہ رسول اور اس کے راستے کی جد و جہد کی محبت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی محبت دے دے. حدیث لے لیجیے آج کے پارے کے ساتھ. ترمذی کی روایت ہے 3334. آپ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ بڑھ جاتا ہے, پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے, یعنی سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے, اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے, یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ رفتہ رفتہ دل کالا ہو جاتا ہے. آپ نے میں نے اس حدیث سے کیا عمل کا نقطہ لینا ہے کہ اپنے دل کو انشاءاللہ دھوتے دھوتے اتنا صاف کر دینا ہے کہ ایک گناہ کا دھبا بھی نہ رہے, یعنی یہ پورا پارا آپ کو مجھے دھونے کے لیے کافی ہے. آئیے دیکھیے اس پارے میں دل کی کون سی اقسام ہے. پارا 10 میں انواع القلوب آیت 64 میں, اور ذرا غور کیجیے گا, میں نے تو اس کو جتنی بھی دفعہ دیکھا ہے میں تو کانپ کے رہ گئی ہوں. یہ پارا عام پڑھنے والا نہیں ہے, یہ ایسے نہیں ہے پڑھا سکتے کہ بس دیکھا سنا اچھا جو پڑھ لیا دیکھ کے جا کے پڑھا دیا. یہ تو پہلے اندر اتنا ہضم کرنا پڑتا ہے. ایک مثال دے دیتی ہوں, آپ دیکھیے کہ ایک بندہ کھانا کھاتا ہے نا, تو کھانا ہضم ہوتا ہے, جسم کا حصہ بنتا ہے, طاقت ملتی ہے, آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. لیکن ایک وہ کھانا ہوتا ہے, آپ کھاتے ہی اس کے بعد وومٹ کر دیتے ہیں, تو اس سے تو بلکہ اور نکاہت ہو جاتی ہے. جب کسی کو ڈائریا ہوتا ہے تو نکاہت ہے نا. علم بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ لیا پڑھانا آگے, یہ تو ایسے ہی جیسے جہاز میں بیٹھ گئے ہیں تو جہاز چلانا آگے, ایئر ہوسٹس بننا آگے. اب آپ نے پڑھا, چلو نوٹس میرے پاس ہے, جا کے میں پڑھانے لگ گئی. اچھا میں کسی کا لیکچر سنوں گی, لفظ بلفظ پڑھاؤں گی, کبھی بھی نہیں ہوگا. نہ ممکن ہے کہ آپ لفظ بلفظ پڑھائیں, اور پڑھانے کی بات نہیں ہوتی, کسی کے لفظ کیوں چوری کریں ہم. لفظوں میں کیا ہے, اصل تو چیز علم ہے. پہلے اس کو جذب کیجئے, اپنے آپ کو اس کے عمل کے کھاتے میں لائیے, اپنے باڈی پہ فٹ کیجئے ایک ایک حکم کو, اور جب آپ کو خود وہ ہضم ہو پھر جتنا لے سکتے ہیں دیجئے. آج تو بہت ضرورت ہے اس علم کو دینے کی. تو بالکل اسی طرح سے یہ جو بات ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت سورت توبہ کی آیت 64 میں, دل کی قسم دیکھیے منافق, یعنی آج اس بارے میں آپ کو ابھی نوٹ کرواتی ہوں. القلب المنافق ہے, یخزر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبیہم بما فی قلوبہم. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے. یعنی نبی کی محفلوں میں کانپتے رہتے تھے کہ ہائے ہماری کوئی بات نہ ہو جائے, ہائے ہماری کوئی بات نہ ہو. اور میں اکثر سوچتی ہوں اللہ کے نبی کے دور کے منافق پھر بھی ڈرتے دل سے علم کی محفلوں میں بیٹھتے تھے, آج تو ہم آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اس سوچ سے کہ کہیں ہم منافقت والی کوئی بات سن کر اس کی زد میں نہ آ جائیں اور پتہ نہیں ہمیں ہی نہ سنائیں. یاد رکھیے کوئی کسی کو نہیں سناتا, یہ کتاب خود ہمیں پڑھ لیتی ہے. آپ جس جگہ سے اٹھ کر آ کر یہاں بیٹھے ہیں نا, وہ مجھے نہیں پتا, آپ کے دوسرے ساتھیوں کو نہیں پتا, لیکن بندے کو قرآن سنتے وقت جو محسوس ہو رہا ہوتا ہے نا وہ سچ ہوتا ہے. دائی دین کو نہیں پتا آپ کیا کر کے آئے, آپ نے فجر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی. اگر اس نے بیچ میں کوئی فجر نہ پڑھنے کی مثال دی تو وہ اس نے تو اللہ کی بات کی, لیکن ہر بندے کو قرآن کی محفل میں کیسا فیل ہوتا ہے یہ اس کے دل کی حالت ہے. چلے اپنے لیے کرائیٹیرین رکھا کریں, خوشخبریاں زیادہ ہیں, خوشی سے روتی ہوں یا غم اور فکر سے, تو بس اسی سے آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ توبہ صورت میں 77 میں پھر دوبارہ قلب منافق کی بات ہے. اگر آج میں نے یہ ٹاپک اس بارے کا نہ دیا ہوتا آپ کو تو میں نے نفاق کا ٹاپک دینا تھا, لیکن وہ نہیں دیا ابھی, کیونکہ ابھی آپ کچے ہیں, ابھی آپ اس کی گہرائیوں میں جا نہیں سکتے کہ قلب منافق ہوتا کیا ہے. حالانکہ اس بارے میں دو دفعہ یہ دل آ رہا ہے. سورۃ توبہ 77 دیکھیے, فاقبہم نفاقا فی قلوبہم الى یوم یلقونہ. اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جس کے حضور ان کی اس کی پیشی جس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. دعا کیجیے اللہ ایسا نہ کرے. آپ کہتے ہیں یہ کس شخص کا تذکرہ ہے کہ جو قیامت تک منافق ہی رہے گا, یعنی اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے. یہ کون سا ہے, جب ترجمے میں جائیں گے تو دیکھیے گا. پھر آپ دیکھیے توبہ 87 میں, القلب المطبوع الی, مہر زدہ دل ہے, وتوبی علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ دیا آپ کو آج میں نے آپ کے تھیم کے ساتھ, دلوں پہ دیکھیے مہر لگتی ہے تو پھر واقعی اللہ کے رستے میں نکلنا واقعی مشکل بھی لگتا ہے. تو فرمایا ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا اس لیے کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا, और देखिए फिर दोबारा कल्बे मतबू है सूरत तौबा आयत 93 में, वतवल्लाहु अला कुलूबिहिम फहुम ला यालमून, अल्लाह ने इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया इसलिए ये अब कुछ नहीं जानते, इसलिए कि ये कुछ नहीं जानते। अल्लाह हमें बाशऊर बना दे, हल्की सी चीज जो हमारी जिंदगी में इधर से उधर आहट पैदा करती है, जो हमारे दिल के अंदर इस्तराब पैदा करती है, अल्लाह ताला हमें उसको भी समझने की तौफीक अता फरमाए। तो देखिए पारा 10 में हिदायत से मुतल्लिक 6 आयात हैं, तौबा 18, 19, 24, 33, 37 और 80। अल्लाह ताला हमें इन सारी आयतों के तराजू में खुद को तोलकर खुद से पूछने वाला बना दे कि मैं 10 पारों तक पहुंचकर हिदायत की तलब लेकर कहां पहुंच चुकी हूं, और अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान कर दे। आगे देखिए कि सूरत अनफाल में का हम यहां 41 से 75 यानी आखिरी हिस्सा पढ़ने वाले हैं। इसका मेन थीम लिख लीजिए, मुहाजिर बनो या अंसार बनो। आज के दौर में सिर्फ दो ही लोग बचेंगे, या मुहाजिर या अंसार। कैसे, वो जब आयत आएगी तो वहां बात करेंगे। इसमें जो टॉपिक्स हमारे सामने है, हक परस्ती नुसरत इलाही है, यानी आज अगर आप हक के पीछे लग गए हैं ना तो समझ लीजिए कि अल्लाह की मदद आपके साथ आ गई है, क्योंकि आज इस फितनों के दौर में हक और बातिल का फर्क ही नहीं पता चल रहा, असल और नकल का फर्क ही नहीं, जिसको आप कहते हैं कि होशियार रहिए नकालों से और जालसाजी से होशियार रहिए। तो हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला तू हमें इसकी तौफीक अता फरमा कि हम अपनी जिंदगी में हक के साथ रहें। फिर दीन पर साबित कदमी कैसे रखने हैं, दिखावे से कैसे बचना है, नेमतों का सही इस्तेमाल करना हम सीखेंगे, और खयानत से बचना। और फिर खास तौर पे इस सूरत में चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गजवात से मुतल्लिक बातें, तो हम देखेंगे कि मुसलमानों का मजबूत दिफा, ये इसकी क्या अहमियत है। और फिर आपस की मोहब्बतें, अल्लफा युअल्लिफु, उल्फत की बातें हैं। फिर मुसलमानों के ईमान का वजन कैसे उनके हालात और उनके दूसरी चीजों के साथ मशरूत है। और फिर इसी तरह से मुसलमान माल के लिए नहीं लड़ता, मोमिन का मकसद माल गनीमत जमा करना नहीं होता, वो दुनियावी फायदे लेने के लिए दुनिया में जाकर ये कुछ नहीं कर रहा होता, बल्कि वो तो कुछ और ही तलब करता है। और फिर जिहाद और हिजरत करने वाले एक दूसरे के दोस्त हैं, तो अल्लाह ताला हमें ऐसा ही बना दे। सूरत अनफाल तरतीब में 8 नंबर की सूरत है, 41 से 75 इस हिस्से में हम देखने वाले हैं। आज तो शुरू होगी हमारे पारे में 41, लेकिन मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहती हूँ पिछले पारे की आयत नंबर 39, यानी सेकंड लास्ट आयत ऑफ दी पारा, पिछला देखिए पारे से रब लीजिएगा। अल्लाह ताला ने वहां क्या फरमाया था, वकातिलुम हत्ता ला तकून फितना वयकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह, और इनसे लड़ाई करो यहां तक कि फितना न रहे और दीन सिर्फ अल्लाह ही के लिए हो जाए। वहां फितने से बचने के लिए जंग की इजाजत दी गई थी। फितना क्या था, परसिक्वेशन था, और सबसे बड़ा परसिक्वेशन क्या है कि अल्लाह के नाम पे मुसलमान होने वालों को टॉर्चर दिए जाएं। तो यहां अल्लाह ताला ने अब आपको मुझे वो सवाल जो सूरत अल अनफाल के बिल्कुल शुरू में पूछा गया था, गज़वा बदर जो इस्लाम की पहली जंग थी, हक और बातिल का पहला मार्का था, एक तारीख साज मार्का था, उस पे सहाबा ने एक सवाल पूछा था, अल्लाह के नबी जो माले गनीमत मिला इसका क्या करें। तो वहां तकरीबन 39 आयतों में अल्लाह, बल्कि 40 आयतों में किरदार साजी सिखाई गई। जब पिछले पारे के बिल्कुल एंड पे पढ़ चुके कि पहले अपने आपस के ताल्लुकात ठीक करो, अपने आप को लो, और अब यहां उस सवाल का जवाब दिया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ٹاپک لکھئے، حق پرستی ہی اصل میں نصرت الہی کو لانے والی چیز ہے۔ آیت 41 سے 44 کا یہ ٹاپک ہے۔ और जान लो कि तुम जिस किस्म की कोई गनीमत भी हासिल करो, इसमें से पांचवा हिस्सा तो अल्लाह का है और रसूल का और कराबतदारों का और यतीमों का और मिस्कीनों का और मुसाफिरों का। अगर तुम अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो और इस चीज पर जो हमने अपने बंदे पर उस दिन उतारा है जो दिन हक और बातिल की जुदाई का था जिस दिन दो फौजें भिड़ गईं और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जबकि तुम पास के किनारे पर थे, किसके पास? मदीना के, और वो दूर वाले किनारे पर थे और काफिला तुमसे नीचे था। अगर तुम आपस में वादे करते तो यकीनन तुम वक्ते मुईन पर पहुंचने में मुख्तलिफ हो जाते, लेकिन अल्लाह को तो एक काम कर ही डालना था जो मुकर्रर हो चुका था, ताकि जो हलाक हो दलील पर और यानी यकीन जानकर हलाक हो और जो जिंदा रहे तो वो भी दलील पर यानी हक पहचान कर जिंदा रहे। बेशक अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला खूब जानने वाला है। जबकि अल्लाह ताला ने तुझे तेरे ख्वाब में इनकी तादाद कम दिखाई, अगर इनकी ज्यादती दिखाता यानी कसरत दिखाता तो तुम बुज़दिल हो जाते और इस काम के बारे में आपस में इख्तलाफ करने लगते, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया क्योंकि वो दिलों के भेदों से खूब वाकिफ है। लिहाजा जबकि इसने बवक्ते मुलाकात इन्हें तुम्हारी निगाहों में बहुत कम दिखाया, ये वो वक्त था जबकि इसने बवक्ते मुलाकात इन्हें तुम्हारी निगाहों में बहुत कम दिखाया और तुम्हें इनकी निगाहों में बहुत कम दिखाया, ताकि अल्लाह ताला इस काम को अंजाम तक पहुंचा दे जो करना ही था, और सब काम अल्लाह ही की तरफ फेरे जाते हैं। इन आयात में गज़वाए बदर की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 13 साल रहे। हर तरह की परसिक्वेशन थी, फितना था, बिलाल के जुल्म और सितम जो उन पर हुए आप सब आगाह हैं। खुबाब बिन अरद को देखिए, बीबी सुमैया के शहादत की खबरें आपने पढ़ी, आले यासिर को अल्लाह के नबी ने जो खुशखबरियां दी आप सब ने कहीं ना कहीं ये पढ़ा सुना है। लेकिन इन सब के जवाब में एक ही हुक्म था जो आप सूरत निसाब में पढ़ कर आए हैं, कुफ्फ अईदिया को हाथ न उठाओ। अगर नबी सल्लम को जंग का शौक होता नाउज़ुबिल्लाह और आप बर्बरिक होते और आप दहशतगर्द होते तो आप तो 13 साल में पकड़ के मार के खत्म कर देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? नंबर एक, अभी तैयारी पूरी नहीं थी, मुसलमान अभी एक ताकत नहीं बने थे। दूसरी बात है कि अभी उनको तबलीग करके हुज्जत तमाम करनी थी। कोई उस्ताद अगला सबक पढ़ाए बगैर उसका टेस्ट नहीं लेता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक हर किस्म का जुल्म सितम सहा, हत्ता के ताइफ गए पांव में जूतों में खून पड़ गया, हत्ता के 3 साल शाबे अबी तालिब के अंदर कैद कर दिए गए, मकसूर थे, जिस दौरान हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला की सेहत खराब हुई और उसके अगले ही साल फिर उनका इंतकाल हुआ। हर जगह आपने सहाबा को हाथ नीचे रखने का हुक्म दिया। बड़ी बात है, लिखिए, या आप नहीं लिखेंगे तो आप भी ऐसी गलतियां कर सकेंगे जो कि आज उम्मत मुस्लिमा में अक्सर लोग कर रहे हैं, बगैर तैयारी के कूद पड़ना और इस्लाम को बदनाम करना, एक नारा मार देना, एक बड़क मार देना और दुनिया के कुछ जगह जहां मुसलमान पहले ही दबे होते हैं वहां पे खून की होलियां जारी हो जाएं, ये इस्लामी मिजाज नहीं है, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। आपने पूरी तरह तैयारी करवाई, आपने सहाबाए कराम को इस बात के लिए तैयार किया कि पहले अपना किरदार बनाओ। देखिए, अच्छा लीडर वो होता है पहले टीम तैयार करता है, और अच्छी टीम बन जाए उसके बाद काम कोई बड़ा नहीं, सिर्फ उसको आपने रेप्लिका करना है, मल्टीप्लाई करना है, फ्रेंचाइज करना होता है। जो लोग बगैर टीम के, कच्ची टीम पे अधूरी कोशिशों के साथ काम करते हैं उनको कभी भी अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे, और टीम बनाते बनाते आपकी दुनिया से रुखसती का वक्त होगा। फिर आप किसी की बनी बनाई टीम में से कुछ लोगों को चुनना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि असल मकसद सामने हो तो इंसान वो एफर्ट्स उन कामों पर लगाने के जो ऑलरेडी हो चुका है, वो काम फिर दोबारा आप करेंगे तो आपने क्या खूबी की? बस आपकी मेड सफाई कर गई तो दोबारा फिर आप पकड़ कर झाड़ू पोछा लेंगे? बेकार बात है। आज ये हो रहा है, माजरत के साथ। आज हम में से हर एक वो करता है जो दूसरा करता है, उसका भी दिल करता है मैं करूं। हालांकि ये वक्त प्रेपरेशंस का नहीं, सर्विंग का है। ये जुमला लिखे, शायद मैं 2-3 बार बोलूं इस पूरे पारे के दौरान। देयर इज नो टाइम टू प्रिपेयर, इट्स टाइम टू सर्व। आपके घर दावत है, 10-20 लोग आ रहे हैं और आप सुबह से खाने पका रही हैं, अब मेहमानों के आने में 1 घंटा रह गया, आप फिर कहती हैं मैं ये भी बना लूं, अच्छा अब ये फ्रूट चाट भी बना लूं, वो कर लूं, और इतने में वो आएंगे, घर बिखरा होगा, ढोंडे तरीके से आप सर्व करेंगी और हैप हैजर्ड होगी। आपको मुझे अपनी जिंदगी में, अपनी उम्र के साथ भी और अपने तजुर्बे और अपने हालात, तीन चीजें लिख लीजिए। अगर आपको अल्लाह के दीन के गलबे में अपना हिस्सा डालना है तो तीन चीजें लिख लीजिए। पहले तो अपने आप को पहचानिए, अपना कैलिपर देखिए, अपनी असल वर्थ लीजिए। आप इल्मी तौर पे कहाँ खड़ी हैं इस वक्त? देखिए, जिन लोगों ने 6-7-8 साल की उम्र में मदरसों का रुख किया और वो काला काला रसूलुल्लाह पे निकले, वो 20-25 साल की उम्र में हकीकत में कुरान के उस फहम को पा चुके होते हैं कि जिसको आप कह सकते हैं कि उनकी बुनियाद पुख्ता हो गई। अब एक खातून जो 25 से 30 और 30 से 35 और 35 से 40 साल की उम्र में पहली दफा कुरान पकड़ती है, और इससे पहले सिर्फ उसने नाजरा पढ़ा और वो भी देसी तरीके का, मुझे बताइए वो 1 साल 2 साल 4 साल में कितनी को महारत पालेगी? तो ये तो नस्लों को तैयार करना। हाँ, करें क्या, अपने 4-5 साल के बच्चे को, बेटी को, बेटे को दीन के लिए डिवोट कीजिए। आपने जैसे उनको दुनिया के लिए डिवोट किया हुआ ना, उनको दीन के इल्म पर रखिए। आप उनकी शुरू से बुनियादें बनाइए, इंशाल्लाह वो नस्ल तैयार हो जाएगी तो फायदा होगा। अब क्या हुआ कि आज हम क्या कर रहे हैं, क्या बड़ी बात है? देखिए, इस वक्त मैं अपने ऊपर बात करूंगी कि मैं आपको कुरान पढ़ा रही हूं, आप 1 सुने 100 सुने 1000 सुने या 1 लाख सुने, वो अल्लाह की एक बराबर है। लेकिन मैंने क्या कारनामा किया, मैं तो मुसलमानों को पढ़ा रही हूं। हम सबको तो ये पैगाम गैरों को देना था। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास तामुरूना बिलमारूफ, क्या कोई मुसलमान को कहते हैं मुसलमान हो जाओ? हम तो भी अपनों को कह रहे हैं कि अल्लाह के बंदो पहले तुम तो कुरान पढ़ो। हमने किसी दूसरे को क्या सिखाना है कि कुरान पढ़े या नमाज पढ़े? हमारे तो अपने मुसलमानों का ही हाल है। मुझे पूरी सीरत में आज तक कम से कम मैंने 8 से 10 सीरीज पढ़ाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, छोटी बड़ी, एक किसी किताब में ये नहीं मिला कि अल्लाह के नबी ने सहाबा को जमा किया हो, सहाबा को जो जाहिर उस वक्त के मुसलमान थे, और कहा करा कि अल्लाह के बंदो नमाजें पढ़ा करो। ना मुमकिन था, ये तसव्वुर ही नहीं था कि कोई मुसलमान भी और नमाज ना पढ़े। और मुसलमानों, और देखो अल्लाह के बंदो रोजे रखा करो, ये रोजे में क्या सिगरेट पीते हो? सवाल ही नहीं, नो क्वेश्चन। और आज तो मैं पूरा फिर दीन पढ़ के आई हूं, जिस हद तक मैं नबी की जिंदगी को पढ़ सकती थी। आप देखिए, आपकी सारी तबलीग का रुख गैर मुस्लिम था। अबू जहल क्यों मुसलमान नहीं हुआ? कि मुसलमान होके काम करने पड़ेंगे, अच्छे ये पढ़ो ये करो, मैं नहीं करता साहब। अब्दुल्ला बिन उबई ने पहले यही सोचा, गज़वा बदर हुई, बेशुमार किस्म की फतह मिली, वो अपने कहते हैं आस्तीन का सांप बन के मुसलमानों में दाखिल हो गया। उसको ये पता था बाहर रहकर मैं कैसे इनको नुकसान दूं, मैं अंदर रहता हूं। और अंदर रहकर जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं, याद रखिए, वो बाहर से रहने वालों से कम होते हैं। कुछ लोग ग्रुप में सिर्फ इसलिए शामिल होते हैं कि वो अपने कपड़े बेच सके, कुछ इसलिए होते हैं कि इधर से कॉन्टेक्ट ले सके। तो बिल्कुल याद रखिये, इस वक्त हम सब, मैं अपने समेत हर वो बंदा जो सिर्फ मुसलमानों को टीच कर रहा है, टीचिंग और चीज होती है, तालीम तो हमने सबने देनी है, उस्ताद तो बनना है, लेकिन ये जो वास और दर्स और मोटिवेशन और अपने आप को फैलाना, ये गैर मुस्लिमों के लिए था। हम तो अपनी, हमारी हालत तो ये है कि अभी फौज तैयार हो रही है, तो वो फौज कहाँ निकलेगी, गैरों तक जाएगी? तो अल्लाह करे हमारी तबलीग और हमारी तालीम का रुख गैर मुस्लिम हो जाए। इसको दावा कहते हैं, असल दावा तो वो थी। हम जिंदगी से चले जाते हैं, हमारी तजवीज ही नहीं ठीक होती, हमारी ग्रामर ही नहीं ठीक हुई, गम पड़ा हुआ, गम गम के आपने आपको और सजाना है और संवारना है, और दुनिया जो है वो बेचारी भूख से मर रही है। तो लिहाजा गज़वा बदर हक़ व बातिल का जो मार्का था, अनयूजुअल जंग थी, उसी का तस्करा आप पर मैं सुन रहे हैं। और आप देखिए कि इस बारे में आपको पहली जंग बदर और आखिरी जंग गज़वा तबूक जो था, दोनों का खुलासा मिल रहा है। यानी आप इन सारी चीजों को कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगे, मलाह कहते हैं इसको, बाबुल मलाह महा। और हमने जब पढ़ी थी किताब इसकी मुहसिन इंसानियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की जो रिसेंट बुक पढ़ाई पिछले साल में, तो पूरा चैप्टर है तलवारों की छांव में, पढ़कर देखिए। तो खुलासा क्या है कि इस्लाम किस तरह अल्लाह ताला ने मदद दी, सिर्फ 313 को 1000 के मुकाबले में ऐसी फतह दी कि आज गैर मुस्लिम हिस्टोरियन, जो नॉन मुस्लिम इस्लाम हिस्टोरियन होते हैं, वो हैरान है कि बदर वाले दिन मुसलमान जीते तो कैसे जीते। 2 टूटी हुई तलवारें, चंद घोड़े, चंद ऊंट, और गए थे तो वो अपना सिर्फ अपने वो काफिले का सामान पीछा करने, और वहां इतनी बड़ी जंग मुसल्लत हो गई। आप इसकी तफसीर सुनिए, खून गर्म हो जाता है जब आप ये वाकयात सुनते हैं। लेकिन इस वक्त के लिए बस इतनी बात लीजिए कि इस्लाम का मिजाज क्या है, कि लोगों को इस्लाम की बात दिखाएं। अब इनायतों में अल्लाह ने हमें बताया कि वो 3000 का जो लश्कर था मुसलमानों को, यानी साहब दुश्मन था वो 1000 था इस जंग में, مسلمان 313 تھے. اللہ کہتے ہیں تمہیں بہت تھوڑے دکھے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, یعنی جو ان کی اصل تھی نا وہ دکھا دی, یعنی ایمان کے اعتبار سے دشمن یا کافر زیادہ بھی ہو تو وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے. پھر آگے دیکھیے, اب کچھ ایتھکس, کچھ تیاریاں کرنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ تم جب میدان جنگ میں آتے ہو تو کیا کرو. آیت 45 سے 46, ثابت قدمی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم, اے مسلمانوں, اے ایمان والو, جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو, اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو. آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر اور سہار رکھو, یعنی تقوی اختیار کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ دیکھیے کہ جنگوں میں جو سب سے زیادہ کام کیا گیا وہ تربیت تھی. یہ وہ ایتھکس تھے جو کل کی جنگیں ہوں یا آج کی ہوں, اسلام کو پھیلانے کی کوئی چیز ہو, ہر میدان میں کامیابیوں کا نسخہ ہے. وہ جہاد ہو جنگ کی صورت میں یا علم حاصل کرنے کا جہاد ہو. فسبتو, لفظ اپنے لیے نوٹ کیجئے, فسبتو, فیصلہ کر کے جم جائیں, ڈبل مائنڈیڈ نہ ہوں, پینڈلم کی طرح ادھر سے ادھر نہ بھڑکتے رہیں. اللہ نے آپ کو مجھے جو کام دیا, جو میری آپ کی صلاحیت تھی, جو اس کے مطابق میری ڈیوٹی لگ گئی, جو مجھے جاب مل گئی, بسم اللہ کر کے اس کو کرتے جائیے. اس کے بعد نتائج نکلے نہ نکلے, آپ سے مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ دنیا میں اسلام نافذ ہوا تھا کہ نہیں, غلبہ اسلام ہوا تھا کہ نہیں. ہاں, ہم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اس میں اپنا حصہ ڈالا تھا کہ نہیں. آج کے دور میں کچھ نہ کرنے والے, خاموش رہنے والے, اپنے گھر بچوں دنیا داریوں میں رہنے والے مجرم ہیں, کرمنلز ہیں, کیونکہ دوبارہ ہم اس صدی میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حالات جاری ہو گئے. دوسری چیز اس میں آپ کو جو دکھ رہی ہے وہ ثبات کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کا ذکر کرو کثرت سے, کیونکہ اللہ کے کام اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں ہوتے. آپ کی اپنی نمازیں ٹھیک نہیں, آپ دوسروں کو کیا پڑھائیں گے؟ آپ اور میں اور ہم سب انصار اللہ, خاص طور پہ ہم دیکھیں اس میں کہ ہماری اپنی ذاتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی عبادات ہیں. تیسرا کام دیکھیے, اطیعوا اللہ ورسولہ, آپ اللہ کے کام کرنے کے شوقین ہیں, اللہ نے آپ کو موقع دیا بسم اللہ, لیکن ذرا سا اپنی اطاعت اللہ کی اور رسول کی دیکھیے, زندگی کی خوشی غموں میں آپ کا میرا معاملہ کیسا ہوتا ہے. پھر دیکھیے, ولا تنازعوا, جھگڑے چھوڑ دو, آپس میں اختلافات چھوڑ دو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بڑا کام ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہوتا. ٹیم ورک کی زد ڈریم ورک, دنیا میں گناہ کے کام کوئی کرے یا خود نیکیوں کے کرے, ٹیم ورک کرنی پڑتی ہے. اور ٹیم نہیں بنتی جب تک آئی کا لفظ نہ نکل جائے, دیر از نو آئی ان دا ٹیم. اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ بتا دیا کہ ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہوں. اجتماعی کام کرنے والے جب اللہ کو بھول کر افراد میں کھو جائیں, لوگوں کے پیچھے لگ جائیں, ان کی شخصیتوں کے پیچھے لگ جائیں, تو دین تو پیچھے پڑ جاتا ہے اور ہمارے اپنے گلے شکوے اور دوسری چیزیں چل پڑتی ہیں. اور ایک اور چیز یاد رکھیے کہ وَاصْبِرُوا, کامیابی کو ہدف بنا کر کام شروع نہ کیجئے گا ورنہ آپ یہیں سے چلے جائیں. جب آپ کہتے ہیں نا میں نے ضرور کامیاب ہونا ہے, مثلا اگر آج میں یہاں پڑھانے بیٹھی تو میں کہتی ہوں کہ میں نے ایک کامیاب قسم کا پروگرام کرنا ہے, 1000 لوگ نہیں آئیں گے تو میں بات نہیں کروں گی, تو مجھے نہیں آنا چاہیے تھا, مجھے بالکل بات نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ جب کامیابی کو اپنا مقصد بنا کر اللہ کے رستے کے کام کرتا ہے نا, تو پھر بائے ہک اور کروک, پھر تو کرنے کے لیے آپ کو ہر وہ طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے جو لوگوں کو اچھا لگے. اور پھر ایسے لوگ جن کا اپنا تذکیہ نہیں ہوا ہوتا, جن کے بھی اپنے دل میں گندگیاں ہوتی ہیں نا, چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہیں, کبھی بدگمان ہے, کبھی اس سے ناراض, کبھی اس سے ناراض, چھوٹے چھوٹے عذر کر کے گھر بیٹھ جانا, اور کبھی مشورہ دیا اور یہ سوچنا کہ اب ہمارا فرض حق ہے کہ اب یہ مشورہ قبول بھی کیا جائے. اللہ کہتا ہے ایسے لوگ دین کا کام نہیں کر سکتے. یاد رکھیے, آپ پوری محنت کریں پھر بھی آپ کا کام ضائع ہو سکتا ہے, آپ بالکل سچے ہوں پھر بھی آپ کو کوئی جھوٹا کہہ دے, آپ کو صبر کرنا پڑے گا. یہ قیمت ہے اس رستے میں کام کرنے کی. دس از پارٹ آف دی کوالیفیکیشن, اٹس ریٹن ان یور سی وی. اگر آپ میں سے مجھ میں کسی کو دین کا کام کرنے کا شوق ہے تو ناگوار باتوں پہ صبر کرنے کی کوالیفیکیشن اپنے اندر لے کر آئیں. مزاج جو میں اختلاف ہوگا, لوگوں کی ٹیمپرامنٹ الگ ہوتے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ فرق ہوتا ہے, مزاج فرق ہوتا ہے, आपने दीन को आला मुकाम देना है, मेरे इस काम से दीन को फायदा हो रहा है, बिस्मिल्लाह। इख्तलावात को और अपनी जात को दूसरों को पीछे कर दें, अल्लाह ताला फिर बहुत बड़े बड़े काम लेगा इंशाल्लाह ताला। आगे देखिए आयत 47 से 49, दिखावे से बचना है। वला तकूनु कल्लती नखरजू मिन दियारिहिम, इन लोगों जैसे न बनो जो इतराते हुए और लोगों में खुद नुमाई करते हुए अपने घरों से चले और वो अल्लाह की राह से रोकते थे, जो कुछ वो कर रहे थे अल्लाह इन्हें घेर लेने वाला है, जबकि इनके अमाल को शैतान ने जीनतदार दिखा दिया, यानी शैतान उनको बहुत मुजयन करके दिखा रहा था कि देखो तुम कितने अच्छे काम कर रहे हो, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। अबू जाहल के लश्कर की तरफ इशारा है, जब निकला था मक्का से तो बहूब सज संवर के और अपने आप को बहुत बड़ा कर करा के निकला, लेकिन बाद में पता चला कि उसका वो काम जो था वो तो सिर्फ उसके अपने ही दिमाग की एक इख्तरा थी, अल्लाह ताला ने उसकी सारी खुशफहमियां दूर कर दी। तो क्या कहने लगा कि आज तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, मैं खुद भी तुम्हारा हिमायती हूं, लेकिन जब दोनों जमातें नमूदार हुई तो अपनी एड़ियों के बल पीछे रह गया, पीछे हट गया और कहने लगा मैं तुमसे बरी हूं, मैं ये देख रहा हूं या मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे, मैं अल्लाह से डरता हूं और वो सख्त अजाब वाला है। सुराखा बिन मालिक एक लीडर थे किसी कबीले के, उसके साथ मक्का वालों की दुश्मनी थी। जब अबू जहल अपना लश्कर तैयार कर रहा था तो उस वक्त ख्याल आया कि कहीं पीछे से वो हमला ना कर दे, तो लिहाजा कुछ बंदे कम कर दूं। तो शैतान उस लीडर की रूप में आया और कहने लगा नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, जब मैं इधर नहीं होऊंगा तो पीछे तुम्हारी औरतों और बच्चों पे कौन हमला करेगा। तो उसकी तरफ ये सारा इशारा है, लेकिन इसमें हमारे लिए अमल की कोई बात है, और वो क्या है कि कभी कभी मैदान जंग में इबलीस भी आया होता है, शैतान भी आया होता है, और वो दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाता है। इसने जो लश्कर तैयार किया था उसके अंदर खूब सजावट की, दिखावा किया, तो जिस तरह दुनिया का दिखावा अच्छा नहीं, वैसे दीन का दिखावा भी अच्छा नहीं। अपना नाम ऊंचा करने के लिए तो कभी दीन में कोई दिखावा ना कीजिए, हाँ अगर किसी ऐसी चीज से दीन को फायदा हो और लोगों को वो दीन प्रेजेंटेबल दिखे, उस दीन के ऊपर अमल करने में उनको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन होता दिखे, तो जरूर करना चाहिए। और ये जुमला आपने नोट किया, इन्नी अखाफुल्लाह, ये शैतान का जुमला कितना बड़ा झूठ है। अगर इसको अल्लाह से डर लग रहा होता तो बताइए क्या दुनिया ऐसी होती जैसी है, और क्या पता चला कि बाज दफा शैतान बड़ी खैर से महरूम करने के लिए छोटी नेकी करने के ऊपर भी तैयार हो जाता है। लिहाजा कहने लगा कि वहां से भाग गया, जब फरिश्ते उतरे तो फरिश्तों को देखकर वो दूर चला गया। और ऐसे वक्तों में ऐसी बातों को करके वो असल में करता क्या है, अपने साथियों को, यानी जो शैतान के हम ख्याल लोग होते हैं, उनको इस्लाम दुश्मनी में और ज्यादा बढ़ाता है। यहां एक छोटी सी बात कहूं, आप देखिए कि अल्लाह के नबी के दौर की जंग में तो शैतान तक आ गया था, फिर भी जीत हो गई, आज हमारे क्यों नहीं होती? आज हम 2 बिलियन के करीब मुसलमान हैं, जरा से इस दर्द को महसूस कीजिए। उसकी वजह यह कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हम बिखरे हुए हैं। आप बहुत सारी लाइटें किसी जगह जला देते हैं, लाइट डिस्पर्स होती है, आप सारी लाइटों को इकट्ठा करके लेजर बना दें, लेजर का क्या काम है, ऑपरेशन होते हैं। लेजर क्या है कि मुख्तलिफ लाइटों को एक नुक्ते पे जमा करना। जब मुसलमान मुख्तलिफ गिरोह, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स, मुख्तलिफ मिजाज के लोग, चले मुसलमान तो हो ना, जब मिल जाएंगे ना तो वो कुफर और शैतान के खिलाफ लेजर लाइट बन जाएंगे। पर जब वो कहते हैं ना, जैसे एक मैं किसी का कॉल पढ़ा, आज नहीं कुछ दिन पहले पढ़ा, कि जहां हर बंदे कोई अपना पौधा लगाने का शौक हो वहां इंसानियत का बाग नहीं बनता, हर बंदा अपने आप को लेकर चलता है। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि देर इज नो मोर ग्रुप्स नो, देर इज नो मोर फिरकास नो। इस वक्त हम सबको मेन स्ट्रीम लाइन के साथ मिलकर प्रेजेंटेबल स्टाइल पे अपनी अपनी एफर्ट उस दीन के काम में लगा देनी चाहिए जो ऑलरेडी दीन का काम कर रहे हैं, और अगर वो आपको कबूल करते हैं तो बिस्मिल्लाह, मैं तो खुद इस पे राजी हो जाऊं अगर मुझे कोई कबूल करता है तो। क्यों? इसलिए कि हम छोटी छोटी कोशिशों में लोगों को तोड़ते, हर बंदे को मस्जिद बनानी है, कितनों को मस्जिद लोग चंदा देंगे, हर बंदे को जामिया बनानी है, अब वो जामिया बनाने वाले लोग तो वही हैं, کے لوگ تو ہیں نہیں اور جگہ آپ تیار کر رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی کہ آج کے دور میں لیزر بن کے کام کریں تاکہ انشاءاللہ اسلام کا غلبہ آئے گا اور اس میں پھر ہمیں خیر بھی ملے گی۔ پھر آگے دیکھیے، جبکہ منافق کہہ رہے تھے اور وہ بھی جن کے دلوں میں روک تھا کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ نوٹ کیا آپ نے، میدان جنگ میں منافق اور وہ بھی کچھ ایسی باتیں ہمتیں توڑنے والے لوگ ہوتے تھے۔ یاد رکھیے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمت توڑتے ہیں۔ آج بھی لوگ سکرینوں پہ آ کے ہمت توڑتے ہیں، تو آپ کہیے کہ نہیں، انشاءاللہ یہ صدی اسلام کی صدی ہے۔ میرے آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا شاید 20th century کے اینڈ پہ، اللہ نو 21st century کے اینڈ پہ جو ہے، لیکن انشاءاللہ ہماری نسلیں ایک روشن اسلام دیکھ رہی ہوں گی۔ دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ اور یہاں ایک اور چیز نوٹ کیجئے گا کہ یہ جو ہمت توڑنے والا جملہ ہے نا، کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، غر ہاؤ لائی دین ہوں۔ یہ آج ہر اس شخص کو، آپ میں سے بھی شاید ان کو ملتا ہوگا جو واقعی دین کے لیے کام کرنے کی نیت سے نکلتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں نماز روزہ ایکسیپٹیبل ہے، حج عمرہ ایکسیپٹیبل ہے، قربانی ایک نہیں دو، بیگم تم اپنی قربانی دے لو، اچھا تم بھی دے لو، اچھا بچوں کی طرف سے دو، ایکسیپٹیبل ہے۔ لیکن دین کے کام، دین کی نشر و اشاعت، اسلام، علم، تعلیم، اس کے لیے قربانی دینے والے کو لوگ کریزی کہتے، پاگل پن کہتے، حماقت کہتے۔ یہاں غر رہا اولائی دینوں میں، اپنے آنسو پوچھ لیجئے، اگر آپ کو اللہ کی طرف آنے کے بعد تانے سننے پڑے تو یہی سچا راستہ ہے، یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ آپ حق میں ہیں۔ حضرت نوح کو یاد کیا کریں، ان کو بھی کیا کہا گیا تھا، اللذی، آپ پڑھیں گے سورہ قمر میں، ڈانٹا گیا، جھڑکا گیا۔ تو اس رستے میں باتیں سننے والوں کو تیار رہنا ہے۔ اور ایک بات میں اکثر بول دیتی ہوں کہ نازک مزاج لوگ، سینسٹیو لوگ، آئی ایم سو سینسٹیو، گھر بیٹھے، اسلام ڈزنٹ نیڈ یو۔ آپ بہت دکھی جلدی ہوتے ہیں، آپ بڑے ایموشنل ہیں، میرا دل ٹوٹ گیا، گھر بیٹھیے، اسلام کو شیشے نہیں چاہیے، اسلام کو ٹھکی ہوئی چیزیں چاہیے، اسلام کو وہ لوگ چاہیے جو پتھر ہو۔ دیکھیے پریشر ڈلتا ہے نا تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کاربن بن جاتا، کاربن جیسے آپ کانوں میں دیکھیں نا، یا وہ کاربن کوئلہ بن جاتا ہے یا پھر ڈائمنڈ بن جاتا ہے۔ ہم سب پہ جو آزمائشیں آتی ہیں اس وقت جو آئی ہوئی ہیں دنیا میں، یا اس طرح کی اور بھی آزمائشیں، اس کے بعد دو طرح کے لوگ نکلتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی طرح ڈائمنڈ بن چکے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر اور کہو، اور باتیں سناؤ، اور پابندیاں لگاؤ، اور برا سمجھو، اور غر رہا اولائی کو، میں تو ڈائمنڈ بنوں گی۔ بس وہ ہیں اللہ کے بندے، ڈائمنڈ پکا بڑا ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں، اس لیے اس کو کاٹنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ مجبور، ہائے میں بیچاری، ہائے میں دکھی، ہائے میں اس سے بھی شرمندہ، بچے بھی نہیں خوش، میاں بھی نہیں خوش، سسرال تو پہلے نہیں تھا خوش، جو بیچارگی میں آ گیا وہ چلا جائے، آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، پھر جائیے آپ ان کو خوش کیجئے، آج تک نہیں ہوئے 20 سالوں میں، آگے شاید ہو جائیں۔ آپ کو اسلام کے لیے کام کرنا، یو نیڈ ٹو بی فارم، پولائٹ بٹ فارم۔ جیسے روٹی کو آپ دیکھیے کہ اچھی مزے کی روٹی کون سی ہوتی، اوپر سے کڑک لگتی ہے، تندور سے روٹی نکلی کڑک، اور جب توڑی تو ایسے روئی کی طرح اندر سے نرم، اندر سے نرم باہر سے سخت، یہ ہے مومن۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار و رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اندر، اپنے اندر جان پیدا کیجیے، ڈیلے، ڈرے ہوئے، دکھی، کو یہ نہ کہہ دے، کو وہ نہ کہہ دے، ایسے لوگ کچھ نہیں، پھر وہ جا کے بس اپنا کام کریں، عبادات کریں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اس کے مقابلے میں، اس کے مطابق ضرور خیر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے ایک اینٹ بنا دے۔ آج دعا کیجئے کہ اللہ مجھے کھاد بنا دے۔ آپ دیکھیے پچھلے پارے میں ہم نے قوم فرعون کے جادوگروں کا قصہ پڑھا نا، مجھے بڑا ہی ان پہ رشک آتا ہے، کیا گرم گرم ان کا ایمان تھا، ادھر سنا ادھر مان کے فٹافٹ عمل کیا، جنت میں پہنچ گئے۔ نہ ان کے اوپر کوئی زکاتیں تھیں، نہ روزے تھے، نہ حج تھے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ٹھنڈے توے پہ روٹی ڈالیں گے نا تو روٹی اکڑ جاتی ہے، توا جب خوب گرم ہوتا ہے اس پہ روٹی ڈالیں تو کتنی نرم ہوتی ہے۔ اگر اس وقت آج اور کل اور ان پاروں کو پڑھنے کے اندر آپ کو اپنا ایمان گرم ہوتا دکھ رہا ہے نا، فٹافٹ روٹی ڈال لیں، فٹافٹ کوئی اچھی نیت کر لیجیے، اپنے آپ کو آگے سے آگے بڑھا لیں، آپ محسوس کریں گے کہ اس کے بعد حقیقت میں آپ کو اللہ تعالیٰ چنے گا۔ اور یہ دعا آج پہ پورے پارے کے دوران بھی مانگیے، اور گھر جا کر بچوں سے بھی منگوائیے کہ اللہ میرا مزاج مجاہدانہ کر دے، میرے مزاج میں سادگی لے آ، اللہ مجھے عیش کوش نہ کر، کیونکہ مسلمان عیش کوش نہیں ہوتا۔ हमारा हिस्सा जिहाद में से आज किताल नहीं है, इल्मी जिहाद है। आज सुस्तियों से जिहाद कीजिए, मुआशरे से जिहाद कीजिए, अखलाकी जिहाद करना है। अल्लाह से ये दुआएं शामिल कर दें अपनी दुआ में कि अल्लाह मेरी सलाहियतों के मुताबिक मुझे खपा दे, इस्लाम की मशीनरी में मुझे फिट कर दे, मुझे वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह काम करना है। बैक एंड पे मैं सजती हूँ, मुझे बैक एंड पे सजा दे, फ्रंट एंड पे सजती हूँ वहां डाल दे, मुझे हर उस चीज से बेनियाज कर दे जिसका मेरी आखरत में कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस काम में ना कोई छोटा है ना बड़ा है, कोई अहम और गैर अहम नहीं, कोई मेन नहीं, कोई कोर की टीम नहीं होती, कोई छोटा नहीं, कोई पहला कोई पुराना नहीं होता। मकसद जब एक होता है तो एक गाड़ी की तरह सब काम करते हैं। गाड़ी के अंदर एक छोटा सा तार भी मिसिंग होता है ना तो गाड़ी नहीं चलती। तो आपको टायर बनना है तो टायर बन जाइए, स्टेयरिंग बनना है बन जाइए, विंडस्क्रीन बनना है तो बन जाए। पर अगर आप हैं ही नहीं है इंजन, तो सारी जिंदगी कोशिश करते रहे आप इंजन नहीं बनेंगे। बेहतर है कि आप अपने आप को एक बैक व्हील का पैर व्हील बैक व्हील बनाकर उस मशीनरी में अटके रहे। आज के दौर में इसकी बहुत जरूरत है। टीम वर्क के साथ अपनी अपनी स्किल्स को लाइए। अल्लाह के नबी के दौर में एक औरत अपने बालों की चुटिया काटी हुई लेके आ गई, अल्लाह के नबी इसको ले जाए जंग में। आपके घोड़े की जब रस्सी टूट जाएगी तो ये मेरे बाल बांध लीजिए ताकि ये इस्तेमाल हो जाए। और एक औरत ने तो इससे भी ज्यादा हैरान कर दिया, अल्लाह के नबी ये बच्चा ले जाइए, छोटा सा बच्चा, क्या मतलब बच्चे खिलाने जा रहे हैं वह? कहा नहीं, जब आपकी तरफ तीर आए तो मेरा बच्चा आगे कर दीजिए, मेरा बच्चा इस्लाम के लिए कबूल हो जाए। ये तड़प लाइए आज। बाकी चीजें पकोड़े समोसे खाने खाएंगे, बिरयानियां खाएंगे, इनका नसीब कहीं नहीं जाएगा। अपने बच्चों को और अपने आप को एक ऐसी सोच के साथ परवरिश दीजिए कि मेरी जिंदगी का मकसद, और कभी बैठ के अकेले में सोचिए मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं क्यों जी रही हूं, मेरे गम क्या है, मेरी खुशियां क्या है, मेरी जॉब, मेरा माल, मेरी दोस्तियां, मेरे रिश्तेदार, ये आईने हैं इस बात के। आप इस दुनिया के लिए जिंदा है, जिए फिर खूब जिए। और अगर आप आखिरत के लिए जीना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ तो करना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो आपको मुझे इन सारी चीजों के पढ़ने के दौरान अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमा दे। आगे देखिए आयत 50 से 52। अजाब का सबब इंसान का अपना अमल है। वला उतरा इज यतवफ्फल्लसीना कफरू, काश के तू देखता कि जब फरिश्ते कुफार की रूहें कब्ज करते हैं, इनके मुंह पर और पीठों पर मार मारते हैं और कहते हैं कि तुम जलने का अजाब चखो बसबब इन कामों के जो तुम्हारे हाथों ने पहले ही भेज रखा है। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। नोट कर ली थी अजाब कब्र की दलील है। अजाब कब्र का लोग पूछते हैं किधर है मामला, तो ये आयत आप उनको बता सकते हैं आयत 50, क्योंकि कब्र में और कौन सा अजाब है। और हदीस में अभी आता है कि फिरौनियों को उनकी कब्रों में अजाब दिया जा रहा है। बस अब इन कामों के जो तुम्हारे हाथों ने पहले ही भेज रखा है, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं, मिसल फिरौनियों के हाल के और इनसे अगलों के कि उन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफर किया, बस अल्लाह ने इनके गुनाहों के बायस इनको पकड़ लिया, यकीनन अल्लाह ताला कुव्वत वाला और सख्त अजाब वाला है। तो क्या पता चला कि जब दुनिया में कोई अल्लाह के दीन के रास्ते में रुकावट बनता है तो अल्लाह ताला उसको कैसे कब्र में भी और उसके बाद अगले मराहल में भी पकड़ेगा। हदीस में आता है कि कब्र में हर शख्स को उसकी जन्नत या उसकी जहन्नुम की जगह दिखाई जाती है ताकि नेक को खुशी हो कि अल्लाह ने मुझे उस जहन्नुम के घर में नहीं दाखिल किया, और बद को तकलीफ हो, हसरत हो इस बात की कि मैं अगर थोड़ी सी कोशिश कर लेता तो मुझे उससे फायदा हो जाता। आगे देखिए आयत 53 से 58। कदाबी आली फिरौन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, नेमतों का सही इस्तेमाल करना। इसको जरा इस सोच के साथ सुनिएगा कि अल्लाह ने आपको मुझे जो जो नेमत दी हुई है क्या हकीकत में उसका सही इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर सही करेंगे ना तो अल्लाह सुबहान तला आपकी नेमतों को पहले से और ज्यादा बढ़ाएगा। फरमाए ये इसलिए कि अल्लाह ऐसा नहीं कि किसी कौम पर कोई नेमत इनाम फरमाकर फिर बदल दे जब तक कि वो खुद अपनी हालत को न बदले, खुद अपनी हालत को न बदल दें जो कि इनकी अपनी थी। और ये कि अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। एक ये आयत और आगे दोबारा भी एक सूरत में आएगी, इसी पे वो अशआर हैं गालिबन मौलाना हाली के कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। इसमें आपने इतनी बड़ी बात पढ़ ली आपको पता भी नहीं चला। और बात ये है कि अल्लाह सुबहान तआला किसी को नेमत दे क्यों दे, इस पे कोई कानून नहीं है अल्लाह के पास। वो अंगूठा छाप को भी दौलत दे दे और बड़े इंटेलेक्चुअल शख्स को फाकों से मार दे। बहुत सेहतमंद माँ मियाँ बीवी हैं तो कोई भी औलाद ना हो और कंवारी मरियम को बच्चा दे दे, ये अल्लाह की बात है। लिखिए, यह आयत बहुत अहम है। अल्लाह की नेमतों को पाने के लिए अल्लाह की ये सुन्नत है क्या कि नेमत देने का कोई कायदा नहीं, लेकिन नेमत का को कायम रखने का असूल बताया जा रहा है इधर कि नेमत दी है, अब तुम उस नेमत के साथ क्या करते हो। अगर कदरदान होगे, शुक्रगुजार होंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी उस नेमत को बढ़ा भी देगा, और अगर नाशुक्री करोगे, पीछे कर दोगे उसको, तो अल्लाह ताला फिर तुम्हारी वो नेमत छीनेगा। और दूसरी बात यह कि अफराद के लिए अल्लाह का कानून मुख्तलिफ है और अकवाम के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसीलिए आगे फरमाया, मिसल हालत फिरौनियों के और इनसे पहले के लोगों के, कि उन्होंने अपने रब की बातें झुटलाई, बस इनके गुनाहों के बायस हमने इनको बर्बाद कर दिया और फिरौनियों को डबो दिया। ये सारे जालिम थे, तमाम जानदारों से बदतर अल्लाह के नजदीक वो हैं जो कुफर करें फिर वो ईमान न लाएं। देखिए, अल्लाह को कुफर वालों पे कितना गुस्सा है, क्यों ना हो। देखिए, हर मुल्क पे उसका झंडा होता है ना, तो ये दुनिया अल्लाह की है, इस पे अल्लाह का झंडा होगा। जो अल्लाह को नहीं मानेंगे उनके साथ फिर ऐसा ही मामला होगा। फिर फरमाया, जिनसे तुमने अहदो पैमान कर लिया फिर भी वो अपने अहदो पैमान को हर मर्तबा तोड़ डालते हैं और बिल्कुल परहेज नहीं करते। यहां देखिए कि इस्लाम कमिटमेंट्स को निभाना और अहद करके, वादे करके और लोगों को उम्मीद दिलाकर पीछे हटने को कितना बुरा कहता है। इस्लाम का ये मिजाज आपको इस आयत से भी दिख रहा है। बस जब कभी तो लड़ाई में इन पर गालिब आ जाए तो इन्हें ऐसी मार मार के इनके पिछले भी भाग खड़े हों, हो सकता है कि वो इबरत हासिल कर ले। और अगर तुझे किसी कौम की खयानत का डर हो तो बराबरी की हालत में इनका अहदनामा तोड़ डाल। अल्लाह ताला खयानत करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। यहां एक बहुत बड़ा सबक सीखा हमने। कभी कभी हम अल्लाह के काम करने के लिए जुड़ते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, फिर जब मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ मिजाज हैं, आपका कुछ और मिजाज, आपके हालात और हैं, कोई किसी की बात बुरी लगी, छट से आप ऐसे वक्तों में नाराज होकर घर बैठ जाते हैं। यहां अल्लाह ताला आपको एक बहुत बड़ा असूल गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुक में बता रहा है, जबकि हम सब तो मुसलमान हैं। तो एक छोटी सी नसीहत याद रखिएगा, जब आप कभी अल्लाह का दीन काम करने के लिए किसी टीम को ज्वाइन करें, किसी प्लेटफॉर्म को करें, आप चॉइस है आपकी, जो आपके नसीब में अल्लाह ने आपके महके की तरह रख दिया, माँ बाप आपके वो नहीं बदल सकते, आपके बहन भाई उनको नहीं बदल सकते। इसलिए असूली बात तो यही होती है कि इंसान जहां से खैर ले रहा होता है वहीं देता है, लेकिन आपकी मर्जी आप जहां ले। लेकिन अपने लिए बार बार गलत तजुर्बात से बचते हुए एक असूल याद रखिएगा, और वो क्या है कि अगर कभी किसी से आपका दिल खराब हो जाए तो कम्युनिकेशन कर ले, किसी बंदे से हो जाए, किसी सिस्टम से हो जाए, किसी रूल से हो जाए, और मिलके बात करके, मुकमुका करके वहीं अटके रहे। ये जो खामोशी के साथ छोड़ देना, लेफ्ट कर देना, अब मेरे से ये काम नहीं होता, और या फिर अंदर खाते मोहब्बत और हमदर्दियां किसी और की हो, प्रमोशन किसी और की हो जाए, याद रखिए किसी सुकून नहीं मिलता। अल्लाह सुबहाना ताला ने यहां उन लोगों का तस्करा कर दिया जो अल्लाह के नबी की महफिलों में मौजूद होते थे, मकसद कुछ और होता था। बजाहर वो देखिए कि तो बदर के ओहद के मुकाम पर मुकाम शौत तक तो अब्दुल्ला बिन उबई था, वो भी गया था। और फिर अगली बात देखिए, आयत नंबर 59 से 62 में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया जा रहा है कि मुसलमानों का दिफा कितना मजबूत होना चाहिए। लोग सवाल करते हैं, क्या मुस्लिम वेपन्स रख सकते हैं? ओहो, मुस्लिम तो बहुत पीसफुल रिलीजन है, अब को मानने वाले हैं, और इस्लाम में वेपन्स क्या है? तो आइए जरा इस सोच के साथ इसको पढ़ते हैं कि जाहिर है जब एक तरफ हथियार है तो दूसरी तरफ भी तो होंगे ना, सबके खत्म कर दीजिए तो मुसलमान सबसे पहले अपने समंदर में फेंक देंगे हथियार। लेकिन अगर तुम हथियार रखो और मुसलमान न रखें तो फिर उसका नुकसान क्या होगा, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। फरमाया, वला यक्सबन्नल लसीन कफरू, काफिर ये ख्याल न करें कि वो भाग निकले, यकीनन वो आजिज नहीं कर सकते। तुम इनके मुकाबले के लिए अपनी ताकत भर कुव्वत की तैयारी करो और घोड़ों के तैयार रखने की, और इससे कि तुम अल्लाह के दुश्मनों को खौफजदा रख सको और इनके सिवारों को भी जिन्हें तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला इन्हें खूब जान रहा है, जो कुछ भी अल्लाह की राह में सर्व करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा हक न मारा जाएगा। कितनी खूबसूरत बात अल्लाह ने आपको मुझे इधर बता दी कि ताकत का इजहार पसंदीदा है, कुव्वत का इजहार कुव्वत के इस्तेमाल से रोक लेता है। तो मुसलमानों को फौजें इकट्ठी करनी चाहिए, टैंक और बुलेट और एटम बॉम्ब रखने चाहिए, क्योंकि जब मुसलमान मुल्कों में हथियार होंगे तो दूसरे उनकी तरफ नजर नहीं डालेंगे। आपके पास इसकी बीसियों मिसालें मौजूद है। तो जवाब क्या है कि मुसलमान हथियार रख सकता है लेकिन उसको इस्तेमाल ना करें। कोशिश कीजिए कि दुश्मन पे सिर्फ उसकी जाहरी, जैसे आप देखते हैं परेड होती है, जंग असलहे की नुमाइश होती है, तो इससे दुश्मनों के दिलों पे रोब जलता है। और ये जो आखिरी बात की गई वो क्या थी कि जो तुम अल्लाह के रस्ते में करोगे, दोगे, लोगे, तुम्हारा हक मारा नहीं जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस चीज का पूरा यकीन दिला दे। और इसके बाद फिर फरमाया अगर वो सुलह की तरफ झुके तो तू भी सुलह की तरफ झुक जा, और अल्लाह पर भरोसा रखिए, यकीनन वो सुनने जानने वाला है। रिस्क टेकिंग लिख रहे हैं, बस इसका एक ही कोड वर्ड दे सकती हूँ क्योंकि यहां तो हर आयत वो है कि जिस पे घंटों बात करूं, लेकिन इस वक्त ये मुमकिन नहीं है। तो बस अल्लाह ताला ने यहां ये कहा दिया कि नबी रिस्क लीजिए। अच्छे लीडर के अंदर ये खूबी होती है कि वो रिस्क लेता है। दीन का काम करने वाले, चाहे वो दीन का काम कर रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे कुछ सोशल वर्क करते हैं, किसी न किसी दर्जे पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा, चेंज कबूल करनी पड़ेगी। अदरवाइज याद रखिए कि बहुत सारे लोग फिर बहुत सारी खैर से महरूम हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने बदर के कैदियों से मुसलमानों के बच्चों को पढ़वाया था। तो कभी ये मत सोचिए कि हम बिल्कुल अलग होकर कटकर एक नई दुनिया बसा सकते हैं। इसी दुनिया में जिएंगे और इसी दुनिया में रहेंगे। फिर फरमाया अगर वो तुझसे दगाबाजी करना चाहेंगे तो अल्लाह तुझे काफी है, इसी ने अपनी मदद से मोमिनों से तेरी मदद की है। यानी कभी कभी कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ रखना पड़ता है जिनके बारे में आपको डाउट होता है कि वो दिल से आपके साथ हैं भी कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपने आप से होते हैं। वो बाहर आपकी टीम का हिस्सा होते हैं लेकिन वो उसमें अपनी टीम बना रहे होते हैं, लेकिन आपको रखना पड़ेगा, अच्छा ट्रस्ट कायम करना पड़ेगा। अच्छा अल्लाह फिर तू जान ये कौन सी कोई जंगी बातें हैं जो कोई ले जाएगा, लेता है तो ले जाए, कोई चीजें आपसे लेकर फायदे उसे अपने लेता है तो लेने दीजिए, तो रिस्क लेना पड़ेगा। इस्लाम जोड़ने वाला दीन है। इसलिए अब अगली आयतें देखिए कितने खूबसूरत तरीके से दिलों को जोड़ने की बात है। 63 से 64 आपस की मोहब्बतें, वल्लफबैना कुलूबिहिम, अल्लाह ताला जिस ग्लू से आपको मुझे जोड़ना चाहता है उसका तस्करा है। बड़े प्यार से सुनिए, फेवरेट आयतों में से एक आयत है, इनके दिलों में बाहमी उल्फत भी इसी ने डाल दी, जमीन में जो कुछ है तो अगर सारे का सारा खर्च कर डालता तो भी इनके दिल आपस में मिला न सकता था। यानी मोहब्बतों का खजाना अलवदूद के हाथ में है, ये तो अल्लाह ही ने इनमें उल्फत डाल दी, वो गालिब हिकमतों वाला है। ए नबी तुझे अल्लाह काफी है और इन मोमिनों को जो तेरी पैरवी कर रहे हैं। यहाँ बात हुई उल्फत की। आप देखिए कि अल्लाह के नबी की टीम में दो तरह के लोग थे, एक को मुहाजरीन के नाम से आप और मैं जानते हैं और दूसरी को अंसार के नाम से हम जानते हैं। मुहाजरीन वो थे जो अपना सब कुछ छोड़कर आए थे और अंसार वो थे जो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो चुके थे। रिश्ते अखवात का जो आपने सबक पढ़ा हुआ है, बचपन से हमने भी पढ़ा हुआ है, कैसे मुहाजिर अपना घर छोड़कर आने पे अगर अल्लाह के नबी के साथ थे तो अंसार ने भी अपने दिल खोल दिए, घर खोल दिए, रहमी रिश्ते पीछे रह गए। ईमान की ताकत रिश्तों को जोड़ देती है। याद रखिए कि ये तरबियत और ये तज़किया अगर ना हुआ हो तो कभी भी लोग आने वालों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप अपने मुल्कों को देखिए, कुछ साल पहले कुछ मुल्कों से जो मुसलमान लुटे पुटे आए, हमारे लोगों ने उनको मुहाजिर कहना शुरू कर दिया। ये जॉब, ये हमारी जॉब्स ले गए, ये हम पे माशरती बोझ पड़ गया, मुआशी जो बोझ पड़ गया। इसके बरक्स आप देखिए कि अंसारे मदीना कैसे उन्होंने मिसालें दी। वजह क्या है कि खास है तरकीब में रसूल हाशमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ऐसी तरबियत की थी, ऐसा उनका दिल जोड़ दिया कि उनके अंदर से खोट खपट अगर आई भी तो वो रही नहीं, निकल गई। और एक असूल लिख लीजिए, जितना कुरान के करीब आते जाएंगे उतना एक दूसरे के करीब भी आते जाएंगे, और जो दीन का काम करने वाले लोग कुरान से दूर, क्लासों से दूर, खुद सुनते नहीं, वो किसी को कहां सुनाएंगे, उतना आपस में खटेंगे, कटेंगे, पटेंगे। जितना ज्यादा ये ग्लू, आप इसको ग्लू कहा करें, मुझे ये कुरान ऐसे लगता है स्टिकी। तो इस वक्त देखिए आप हजारों लोग बैठे हैं, इस तरह स्टिक ऑन है इस वक्त कि जरा सी हरकत भी होती है तो आप उसको नोट कर लेते हैं। ये ग्लू है, ये जोड़ेगी। आज हमें उम्मत को कुरान देना है। ये जो फिरके बन गए, जाते बन गई, बिरादरियां बन गई, क्योंकि बीच में कुरान नहीं है। हर एक ने अपनी किताब पेश की, किसी ने अपनी फिक पेश की, किसी ने अपने इमाम की बात पेश की। सारों को जमा कर एक टोकरी में डालो और लंबी करके वातसिमु बिहब्लिल्लाही जमीया बना दें, तो आपस में मोहब्बत प्यार। और याद रखिए, दो लफ्ज लिख लें, हुब्बे जा और हुब्बे माल। इसकी वजह से अंसारुल्लाह टूट जाते हैं, फट जाती हैं टीमें। अल्लाह की मोहब्बत एक मैग्नेट होता है जो लोगों को जोड़ देता है। नबी सल्लम बहुत प्यारे उस्ताद थे, आपने अपने साथियों की कुछ इसी तरह से मदद की कि जिसका तिस्करा यहां फरमाया। दुआ कीजिए आज के दौर के उम्मत मुस्लिमा के दिलों को अल्लाह जोड़ दे। आज उम्मत क्यों कटी फटी है, आज क्यों हम एक दूसरे को कभी सिंधी पंजाबी के नाम पे रगड़ते, कभी आप उसको हनफी और कभी बरेलवी और कभी किसी और नाम पे रखते। इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन लफ्ज मुसलमान पे अपने आप को जोड़ेंगे तो इंशाल्लाह खैर होगी। आगे देखिए 65 से 66, मुसलमानों के ईमान का वजन। अगर इधर आप एक और खूबसूरत सा कोड वर्ड लिख लीजिए कि मोमिन तोला जाता है गिना नहीं, तो आपको इस आयत की रूह समझ आएगी। या युहन नबी युहर्रिद अल मोमिनीन अलल क़िताल, ए नबी ईमान वालों को जिहाद का शौक दिलाइए। अगर आप में 20 भी सबर करने वाले होंगे तो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर तुम में से 100 होंगे तो 1000 कुफार पर गालिब रहेंगे, इस वास्ते कि वो बेसमझ लोग हैं। अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया, यानी अच्छा अब अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का करता है। वो खूब जानता है कि तुम में ना तवानी है, बस अगर तुम में से 100 सबर करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में से 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे। अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया, तो लिखिए हेड काउंट। कितने लोग हैं जो हेड काउंट मेंटेलिटी रखते हैं, कभी लोगों को गिनेंगे, कभी कुर्सियां गिनेंगे, कभी पंखे गिनेंगे, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे। तो याद रखिए कि इस्लाम हेड काउंट को नहीं मानता। आप जिस मकसद और जिस कॉज में लग गए हैं, आप काफिला नबूवत में शामिल हो गए हैं, इसी तरह ईमान के मुताबिक आपके साथ लोग कौन से हैं, उनके ईमान का क्या लेवल है, इससे मदद आती है। लोग कम हो या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कम लोग भी बहुत प्रोफाउंड होते हैं। जैसे आप देखिए, जिस्म में बहुत बड़ी बड़ी आर्टरीज भी हैं, मगर कहीं बारीक सी रगें भी होती हैं। तो कभी कभी हाई प्रोफाइल यानी शोहरत होना फायदा देता है, कभी लो प्रोफाइल पे रहना फायदा देता है। अल्लाह के हाथ चुनाव शौक और जज्बे की बुनियाद पे होता है। आप चाहते हैं कि आपको भी अल्लाह सुबहाना ताला ईमान के साथ तोले, अपना ईमान बढ़ाते जाए, आपसे जो काम लिया जाएगा वो भी आगे से आगे बढ़ता ही जाएगा। दूसरी बात, आप देखिए कि शुरू के दौर में हमेशा ही जो लोग किसी कॉज के बिल्कुल आगाज में होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मेहनतों में और बहुत ज्यादा मुजाहिदों से गुजरते हैं, उनका ईमान बढ़ता है। साहबे कराम की मिसाल आपके मेरे सामने है, मोमिन के साथ यही है। आज भी अगर आप देखें तो 2 बिलियन मुसलमान हैं। अगर तराजू में रखकर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो का ईमान डाला जाए और पलड़े में दूसरी तरफ पूरे आज के मुसलमानों का डाला जाए, तो उम्मीद है कि अबू बकर का ईमान बढ़ेगा। 2 सहाबा का ईमान आज के 2 बिलियन मुसलमानों से ज्यादा था। क्यों? क्योंकि शुरू के दौर के सहाबा कराम बहुत पक्के थे, उन्होंने बहुत सारी आजमाइशें सही थी, अल्लाह ने उनको पक्का करवा दिया, पुख्ता करा दिया, और इस तरीके से वो लोग अल्लाह के नबी के हाथों में कुंदन बने थे। जैसे आप देखिए कि मिट्टी के बर्तन को जब आप पकाते हैं तो फिर वो पक्का हो जाता है। तो आज आप भी अपने लिए लिखिए, बुनियादों में पढ़िए, मुश्किलात से गुजरकर जितना ज्यादा आप आगे आएंगे उतना ज्यादा अल्लाह सुबहाना ताला आपसे बेहतरीन तरीके से ये सारे काम लेगा। आगे अब बदर के कैदियों में जो कैदी आए थे उनकी तरफ कुछ इशारा है। आयत 67 से 671 देखिएगा। टॉपिक लिखिए, मुसलमान माल के लिए नहीं लड़ता, यानी मोमिन के दिल में माल की मोहब्बत नहीं होती। मा कान लिन नबी यकून लहू असरा, नबी के हाथ में कैदी नहीं चाहिए जब तक के मुल्क में अच्छी तरह खून रेजी की जंग ना हो जाए। तुम तो दुनिया के माल चाहते हो और अल्लाह का इरादा आखरत का है। और अल्लाह ताला जोरावर बा हिकमत है। अगर पहले ही अल्लाह ताला की तरफ से ये बात लिखी ना जाती कि जो कुछ तुमने ले लिया है इस बारे में तुम्हें बड़ी कोई बड़ी सजा होती, बस जो कुछ हलाल और पाकीज़ा गनीमत तुमने हासिल किए खूब खाओ पियो और अल्लाह ताला से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला गफूर रहीम है। इस आयत के साथ तो मुझे हमेशा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु याद आते हैं, कहते थे कि जितना मैंने अपने छुड़ाने के लिए फिदिये में दिया था आज इस्लाम ने मुझे इससे बहुत ज्यादा दिया। लिखिए इस जुमले को, बदर के बाद तादाद में तो लोग बढ़ गए लेकिन ईमान का लेवल अमूमी तौर पर कम हो गया। नए नए लोग इस्लाम में दाखिल होते गए और नए लोग कच्चे होते हैं, जैसे बिल्कुल आप में वो लोग जो पहली दफा कुरान सीख रहे हैं, बिल्कुल बड़ी बड़ी बातों पे घबराएं ना क्योंकि आपसे भी ज्यादा उम्मीदें भी नहीं है, लेकिन वक्त के साथ तरबियत हुई, नबी के हाथ लगे तो वो तरबियत से बेहतर होते गए। यहां भी असल में इसी बात का तज़किरा करके अल्लाह सुबहाना ताला ने बता दिया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग थे उनकी नजरें माल पे नहीं थी, आखिरत पे थी, दुनिया पे नहीं थी। और कभी कभी ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला मुश्किल हालात में डालकर आजमा भी लेता है। इसी तरह की आजमाइशों का तज़किरा कुछ आगे भी आएगा जिसको हम देखते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं कि अगर ये बात पहले ही ना लिखी जाती, ये कौन सी बात थी कि तुम्हें इस सारे के बाद अल्लाह सुबहाना ताला ने खैर देनी है। फिर इसके बाद फरमाया, ए नबी अपने हाथ तले के कैदियों से कह दो कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में नेक नियति देखेगा तो जो कुछ तुमसे लिया गया इससे बेहतर तुम्हें देगा और फिर गुनाह भी माफ फरमाएगा और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर वो तुझसे खयानत का इरादा करें तो ये तो इससे पहले खुद अल्लाह की खयानत कर चुके, कैसे शिर्क भी और दिल में खोट रखकर अल्लाह के दीन के लिए निकलते हैं। आखिर इसने इन्हें गिरफ्तार करा दिया और अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरी आयतों पे आगे हैं सूरत अल अनफाल की, देखिएगा इनको पढ़ते वक्त तो ऐसे लगता है कि खाली हैं। गुर्बत, जैसे किसी का बड़ा अच्छा जोड़ा देखकर किसी बड़ी मेहनत से तैयार हुई लड़की को लगता है मेरे कपड़े तो अच्छे ही नहीं है ना। हकीकत यह कि सहाबा कराम की कोशिशों और उनकी कुर्बानी और उनके दीन के साथ ताल्लुक और उनकी कमिटमेंट को देखकर हमें भी ऐसे ही लगता है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। आपके दिल का हाल मैं नहीं जानती। इन सारी आयतों को पढ़ते और सुनते वक्त अपने आप को सामने रखकर सोचिएगा कि मैं इस रास्ते में कहां खड़ी हूं, मैं अल्लाह के नबी के इस दीन में, इस जिद्दोजहद में जो मेरा हिस्सा है वो किस दर्जे का है, ताकि फिर हम इससे अपने लिए अमल की बातें ले सकें। देखिएगा जिहाद और हिजरत करने वाले एक दूसरे के दोस्त हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बि अमवालिहिम, जो लोग ईमान लाए, नंबर 1 2 3 कर लीजिए ताकि आपका चेकलिस्ट तैयार हो जाए, फिर हिजरत भी की और अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, और जिन लोगों ने इनको पनाह दी और मदद की ये सब आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। और जो ईमान तो लाए हैं लेकिन हिजरत नहीं की, तुम्हारे लिए इनमें कुछ भी रिफाकत नहीं, यानी जो सिर्फ बातें करते हैं उनसे अब आपकी कोई दोस्ती नहीं जब तक के वो हिजरत ना करें, जब तक वो अपनी गलत चीजें ना छोड़ दें। हाँ अगर वो तुमसे दीन के बारे में कोई मदद तलब करें तो तुम पर मदद करना जरूरी है, सिवाय इन लोगों के तुम में और इन मेहदों पे मां है। तुम जो कुछ वो कर रहे हैं, तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह ताला इसको खूब जानता है। काफिर लोग आपस में एक दूसरे के रफीक हैं, अगर तुमने ऐसा न किया तो मुल्क में फितना होगा और जबरदस्त फसाद हो जाएगा। जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया और जिन्होंने पनाह दी और मदद पहुंचाई, यही लोग सच्चे मोमिन हैं, इनके लिए बख्शिश है और इज्जत की रोजी। और इसके बरक्स والذين آمنوا من بعد ما وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم, और जो लोग इसके बाद ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ होकर जिहाद किया, बस ये लोग भी तुम में से हैं, तुम में से ही हैं, और रिश्ते नाते वाले इनमें से बास के ज्यादा नजदीक हैं अल्लाह के हुक्म में, बेशक अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो ग्रोह है जिनका तस्करा करते वक्त हमेशा जुबानें अपने आप को आजिज महसूस करती हैं। सहाबा कराम वो लोग थे जिन्होंने हकीकत में इन आयतों को अपने ऊपर भुगता। देखिए आज मैं भी पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो कुरान पढ़ते हैं जैसे कि ये सूरत पढ़ रहे हैं, डिटैच्ड फ्रेम ऑफ माइंड से पढ़ते हैं, हमारे लिए ये लफ्ज हैं, हमारे लिए ये सवाब की आयते हैं, बरकत की आयते हैं, जबकि सहाबा कराम का तो तज़करा है इन आयतों में, उनके तो जज्बात हैं इन आयतों में, वो तो खून के रिश्तों की कुर्बानियां दे रहे थे। अल्लाह ताला ने इसमें सहाबा कराम की वो खूबसूरतियां बयान कर दी कि जो उन्होंने इस्लाम के रास्ते में दी। उन्होंने अपने रिश्तों को सामने बीच में नहीं आने दिया, रिश्तों खून के रिश्तों ने उनकी ईमानी कुव्वत को कमजोर नहीं किया। जब भी मुआशरे में तीन लफ्ज लिख लीजिए कि जिहाद दावत और तबलीग के दर्जे पर होगा तो इल्म को फैलाना होगा तो मुखालफत शुरू होगी, और जब ये जिहाद जिहाद बिस सैफ यानी किताल में ढलता है तो फिर तो आप कह लीजिए कि पोलराइजेशन शुरू हो जाती है। आप इल्म सीखने आएंगी ना तो आपके घर वाले परेशान होंगे, फिर आप जरा और आगे जाएंगी तो गली वाले भी परेशान होंगे, फिर उसके बाद खानदान और मोहल्ला बरादरी ये चलता ही जाएगा, पोलराइजेशन शुरू होती है, दो गिरोहों में मुआशरा बढ़ता है। जब भी नबी की दावत गई, आज नबी का पैगाम किसी भी दाई दीन के नाते से ही क्यों ना चला जाए, एक वो किस्म के लोग होते हैं जो बात मानते हैं, दूसरे वो जो नहीं मानते, जो नहीं मानते वो तो गायब हो जाते हैं, वो कहते हैं कभी कभार ठीक है, हर रोज नहीं, हर वक्त नहीं। अब जो बात मानने वाले हैं ना, अब उनके साथ फिर आगे मामले मुख्तलिफ हैं, ऐसे लोगों को फिर हिजरत करनी पड़ती है, अपनी आदतें छोड़नी पड़ती हैं, नाफरमानी से फरमा बरदारी की तरफ हिजरत करनी लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी मनपसंद चीजें छोड़ते हैं, कम्फर्ट जोन से निकलते हैं, और एक दिन उनका नाम अंसारुल्लाह में लिख दिया जाता है, और जो ये कुर्बानियां ना दे सके वो कभी अंसारुल्लाह नहीं बनता। इसी तरह से फिर मुहाजिर वो बन जाते हैं जिनको अल्लाह के रस्ते में अपनी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। ऐसे वक्त में आपको मुझे यहां दो लफ्ज हैं, यानी इस आयत के साथ अक्सर एक जुमला मेरे दिमाग में रहता है, आज के दौर के मुहाजिरीन और अंसार। कुछ लोग आप जैसे माशाल्लाह कई सालों से दीन उनके घरों में उनकी जिंदगियों में आ चुका, उनके घर वाले मान चुके कि अब ये इसके बगैर नहीं जिएंगी, वो हैं आज के दौर के अंसार। आपको अंसार बनना पड़ेगा। इसके बरक्स नए नए लोग जो इस दौरे कुरान को सुन रहे हैं पहली दफा, जो हिदायत की तलब में डरते घबराते परेशान हैं, उनको आज के दौर के मुहाजिरीन कहूंगी। उनके लिए अपने दिल में नरमी लाइए अल्लाह के लिए, मत अभी उनके कपड़ों को देखिए, मत उनकी स्लीवलेस को देखिए, मत उनकी क्यूलॉट्स को देखिए, मत आप उनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें रखें, उनकी नेल पॉलिश को घूरें कि आप तो जी मुसलमान नमाज पढ़ी आपने, आपकी तो ऐसे नहीं हुआ। वजह क्या है कि जब दीनदार लोग बेजा सख्ती करने लगते हैं तो नए नए लोगों के हौसले टूटने लगते हैं। फिर होता क्या है, एक तो वो पीछे से बेचारे आए, देखिए ना जिसने कभी नमाज ही नहीं पढ़ी, अब वो नमाज पढ़ने लगा, अब आप उसके हुलिये पे बातें कर रहे हैं, वो उसका हाल तो बिल्कुल इधर है कि उधर से छोड़ा तो उनके नाराज। रिवर्ट को लीजिए जेन में, एक औरत अपना दीन छोड़ती है, उसका रिश्ते उसका खानदान तो पहले ही नाराज है, शौहर ने छोड़ दिया, फैमिली ने छोड़ दिया, अब वो छोड़ें और आगे से आप भी वेलकम ना करें तो वो तो कह दीजिए ना कि न इधर के रहे न उधर के रहे। बिल्कुल इसी तरह याद रखिए कि आज मादी तौर पे हिजरत शायद इतनी ना हो, आज आपकी मेरी हिजरत जिस्मानी नहीं जहनी है। कुरान पढ़ने के बाद सबसे पहली हिजरत जो कुरान मांगता है आपसे वो अकीदे की हिजरत होती है। आपको पता चलता है मेरा तो अकीदे ठीक नहीं था, मेरे खानदान मेरे बाप दादा के तौर तरीके ठीक है, उसमें शिर्क है, या नबी सल्लम की जात में गलूब है, या मैंने क्यामत के बारे में सोचा हुआ फुलां बुजुर्ग काम करेगा, ये तीन चीजों में गलती दिखती है। सबसे पहली चोट जो पड़ती है जब आप अपना अकीदा बदलते हैं अल्लाह की बना। आज देखिए कितने लोग हैं जो दिल से इस्लाम को मान चुके हैं, जुबान पे क्यों नहीं लाते, वजह साफ पता है कि फिर सारा छुटेगा। फिर उसके बाद अकीदे के बाद आप देखिए कि आपकी फिक्र बदलती है, ओहो वो तो किसी और मसलक से थे, मैं तो आज तक किसी एक मसलक के साथ थी, अब तो कुरान मुझे कह रहा है कि हुवा समाकुमुल मुस्लिमीन, और फिर कबायर छोड़ने पड़ेंगे, सगायर छोड़ने पड़ेंगे, कितने कपड़ों से आपको हिजरत करनी पड़ेगी, जो शुरू से आपकी तो सारी वार्डरोब ही बिल्कुल ही बेकार सी है, अब क्या करें। ऐसे लोगों को आप लोग वेलकम कीजिए, खुशियां दीजिए, खुशखबरियां दीजिए और उनके हाथ थामिए, क्योंकि वो सीढ़ी के पास खड़े हसरत से आपको देख रहे हैं। ठीक है आप 10वीं 12वीं सीढ़ी पे चढ़ चुकी हैं, वो भी जमीन पे खड़े हैं, बिस्मिल्लाह करके बुलाइए, अपने अंदर सख्ती ना लीजिए। और अल्लाह के नबी के सहाबा ऐसे ही थे, कैसे उन्होंने लोगों को थामा। ये दुआ कीजिए अल्लाह ताला आज के दौर में मुझे और आपको, अगर हम दीन पे जमे हुए हैं तो आज हमें अंसारुल्लाह बना दे और नए लोगों को हम मोहब्बतें दें, प्यार दें, उनको बुलाएं। और इस तरह से आप देखेंगे कि सबसे मुश्किल जो जिहाद है ना, वो खुद को मुसलमान बनाने का है। सवाल लिखिए, आज अगर कोई आपसे पूछे जिहाद की सबसे मुश्किल किस्म कौन सी है, तो आप किसी मुश्किल से मुल्क का नाम लेंगे, किसी बड़ी ताकत का नाम लेंगे? नहीं, सबसे मुश्किल जिहाद खुद को मुस्लिम बनाना, बाकी तो सब बहाने हैं। जब आप खुद मुसलमान हो जाएंगे, आपके अंदर एक कशिश होगी, आपके शौहर 5 साल बाद मुसलमान हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इल्ला माशाल्लाह। सिर्फ आपको एक हेड काउंट देना चाहती हूँ, अपने आप को जरा सा आगे लाएं, आगे बढ़िए, देखिए कैसे लेके चलो। इस तरीके से फिर आप देखें और अपने अंदर से सख्ती निकाल दीजिए, अखलाक के साथ उनको अपनी तरफ लाइए। अल्लाह ने बहुत सारी लिमिट्स दी हैं, उनके साथ रहिए। जिस दिन आपने हिजरत कर ली जहनी तौर पे, तो फिर आपको अपने कंफर्ट लेवल से निकलना पड़ता है, ये सबसे मुश्किल होता है। सारी जिंदगी चूल्हा चौका ही जिंदगी का मकसद था, अब थोड़ी सी स्ट्रगल आ गई दीन सीखने और सिखाने की, बस मुश्किल है। आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाएगा। पहली सहरी पकानी बड़ी मुश्किल लगती है, आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल से आसानियों में आ जाता है। एक वक्त आ जाता है, जो लोग शुरू में इनिशिएटिव ले लेते हैं ना, फिर बाकी लोगों के लिए वो रास्ते बनाते हैं। आज के इस दौर में आपको मुझे जरूरत है इस बात की, अपने खानदान में बारिश का पहला कतरा बने, अपने आप को बेहतरीन तरीके से अल्लाह के रास्तों में लेकर आए। तो ये थी सूरत अल अनफाल नफल से। अब अगली सूरत आपके मेरे सामने है तौबा, यूनिक सूरत है। पहले तो तौबा करते हैं हम भी इस्तग़फार। इस सूरत को पढ़ने के बाद वाकई तौबा होती है, और इसका नाम भी तौबा शायद इसलिए कि इसमें तीन लोगों की तौबा का तस्करा है। तरतीब के एतबार से 9th नंबर की सूरत है और इसकी 129 आयतें हम पढ़ेंगे इधर इंशाल्लाह। थोड़ा सा इसका मिजाज समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप किसी का मिजाज ना समझें तो बात नहीं समझ आती। तो लिखिए, पहली तो इसकी यूनिकनेस क्या है कि इससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं है। क्यों नहीं है सवाल कीजिए मुझसे, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने नहीं लिखाई। तो जब अल्लाह के नबी ने यहां तो बिस्मिल्लाह नहीं लिखाई, तो हमने नहीं लिखी और बोली, सहाबा ने नहीं बोली लिखी, तो फिर क्या आप और मैं अपनी मर्जी से दीन की बाकी चीजों में कमी बेशियां कर सकते हैं? फिर दुआओं में सबके लाके लगा सकते हैं? मुसलमान की और मोमिन की शान है कि नबी के फुटस्टेप पे पांव रख के चलता है, तो लिहाजा इस चीज की जरूरत है। दूसरी बात यह है, सूरत तौबा के को समझने के लिए आपको नबी सल्लम का दौर समझना होगा। अगर आप पहली 1 से 93 आयात को देख रहे हैं ना, तो इस दौर में जब सूरत तौबा नाजिल हुई, अंदरूने अरब इस्लाम का गलबा मुकम्मल हो चुका था, यानी मक्का मदीना मुसलमानों के हाथों में आ चुका था। आप देखिए कि 9 हिजरी में नाजिल हुई थी, ये याद रखिएगा। इस दौर में तीन बड़ी बड़ी फतूहात मुसलमानों को मिली। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया की एक फतह मुबीन मिली, 8 हिजरी में फतेह मक्का की खुशखबरी मिली, और 9 हिजरी में हज्जतुल विदा जहां 1.25 लाख का तकरीबन मजमा हो गया। ये तीन माइलस्टोन तय हो चुके। इस दौर में इस्लाम पूरी जगह बना चुका। अल्लाह ताला ने अब इस्लाम को अरब की हदूद से बाहर लाना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबरें मिलनी शुरू हो गईं कि एक गैर मुस्लिम बादशाह मुसलमानों पे मदीना पे हमला करने की कोशिश में है। आम हुक्मरान होते तो डर जाते, फौरन भेजते किसी डेलीगेशन को बड़े तोहफे देके और उनकी पसंद की शराइत को कबूल करते हुए साइन करके आ जाते किसी वादे पे, या छुप जाते या डरते। आप ऐसे लीडर नहीं थे, आप डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव थे, याद रखिए, ऑफेंसिव लोग ही जीतते हैं। आपने सहाबा को कहा तैयारी करो, खुल्लम खुल्ला तैयारी, नाम लेकर बता दिया कि फुला तरफ जा रहे हैं, खड़ी फसलें तैयार हैं, वो सारी चीजें इंशाल्लाह जहां आते आएंगे वहां देखेंगे। लेकिन यहां इस सूरत को शुरू करते वक्त बस इतनी बात समझ लीजिएगा कि इस दुनिया में जीने के लिए आपको मुझे जिस करेंसी की जरूरत है ना, वो तकवा है। दुनिया के पैसे दुनिया की चीजें दिलाते हैं, नेकी के कामों के लिए तकवे की जरूरत होती है। गज़वा बदर बिगिनिंग ऑफ द एंड थी, और तबूक तक पहुंचते हुए इस्लाम का हिलाल बदर में बदल गया, जिसको आप चौदहवीं का चांद कहेंगे। लोगों को तकवे में जिस तकवे की बहुत जरूरत होती है, नंबर एक इनफिरादी तकवा, आपको मुझे चाहिए अपनी जाती जिंदगी इबादात के लिए, बहुत ही आसान है, ये निस्बतन आसान है। दूसरा तकवा चाहिए होता है इज्तमाई तकवा, बड़ा ही मुश्किल है, यकीन करे चीखें निकल जाती हैं, दिल करता जंगल में चले जाओ, हर वक्त ही गलत फहमियां और गलत चीजों के अंदर इंसान फंसता है। माशरे को कैसे साथ लेके चलूं, खानदान को कैसे लेके चलूं, बच्चों की शादियां फलां, इसके लिए टीम वर्क की जरूरत होती है, मकसद पे नजर रखना होती है। अगर सहाबा किराम में इज्तमाई तकवा ना होता तो कभी वो अल्लाह के नबी की इताअत ना करते और मकसद के साथ जुड़े ना रहते, और दुश्मनों से लड़ना तो दूर की बात थी, आपस में लड़ भिड़कर खत्म हो जाते। आज 2021 का मुसलमान हमारे सामने जो मैदान है, आज हमारे सामने दो किस्म के कुफार हैं, एक ला इल्म है और एक इल्म वाले हैं। ला इल्म लोग कौन हैं? जिनको इस्लाम का पता ही नहीं, बिनाइन है। आप और मैं उनको हदफ बनाए, इल्म दीजिए। अक्सरियत तो इस्लाम को मुसलमानों की हालत से पहचानती है कि शायद इस्लाम इतना ही बुरा है या ऐसे ही बुरे दर्जे में जैसे मुसलमान है। इनसे आपको मुझे कोई जंगों का खतरा नहीं है, ये आपके इर्द गिर्द रहने वाले भोले भाले लोग, हेलो हाय 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 थक थक, ये कुछ करते हुए आप इनसे निकल जाएं। इनको बिरयानियां खिलाइए, पकौड़े दें रोज रात को, इनको खाने खिलाइए, अपने आला अखलाक के साथ दीन की तरफ लाइए। दूसरी किस्म के जो लोग हैं ना, वो इल्म वाले हैं, पढ़े लिखे, जिनको अपने दीन का भी इल्म है और हमारा भी है। ये वो लोग हैं जिनके लिए आपको मुझे, ऑफकोर्स हमसे ऊपर के दर्जे पे जो लोग हैं, सियासी तकवे की जरूरत है। इसके लिए पॉलिसीज बनाना, ऐसे लोगों के साथ वो बातें करना जो इनके प्रोपेगंडे को खत्म कर दे, तो सूरत तौबा आपको सियासी तकवा सिखाती है। लीडरशिप के लेवल पे कोई कहां पहुंच जाए, किधर चला जाए, तो आज आपको मुझे ये सब कुछ सिखाया जा रहा है कि तुमने इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद इस्तेमाल कहां करना है। आइए इसको जरा खुलासे में देख लेते हैं। इस सूरत के अंदर आपको मुझे इस्लाम की तहम्मुल मिजाजी दिखेगी, मोहलत मुद्दत से दिल खुल जाते हैं, यानी चार माह की मोहलत दी थी कि शायद इनके दिल खुल जाएं, कुरान सुन लें और फिर इनको छोड़ दिया जाएगा। किसी को पिछली जिंदगी का ताना नहीं देना चाहिए, आजमाइश तो अल्लाह करके रहेगा। दूसरों पे नाफिज करने से पहले खुद पर तो इस्लाम को नाफिज कीजिए। और यहां बुलंद दर्जों की बातें होने वाली हैं अभी इंशाल्लाह, अल्लाह हमारे भी दर्जे बुलंद कर दे। फिर रिश्तों का जिहाद है, और मुसलमान का भरोसा अल्लाह की मदद पर है। और शम्मा को खतरा साहिब शम्मा से होता है, यानी मोमबत्ती को वही बुझा सकता है जिसके हाथ में है। माजरत के साथ अभी कह दूं कि इस्लाम की मोमबत्ती को बुझाने के लिए कुफार की फूके काफी नहीं है, वो तो दूर से फूक मारते हैं, हमें खतरा उसको है तो हम मुसलमानों से, जिन्होंने अपनी शादी ब्याह से इस्लाम को निकाल दिया, वो बाकी चीजों में कहां डालेंगे। और फिर बैतुल माल जाती में रास नहीं, इज्तमाई कामों के लिए जो माल जमा किया जाता है वो किसी एक फर्द के कस्टडी में नहीं होता, और उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना होता है। फिर हुरमत के महीनों की बातें हैं, फिर हम इसमें देखेंगे गज़वे तबूक की तैयारियां हैं, सफरे हिजरत है, चंद मुनाफिकाना खसूसियात हैं, ज़कात की बारे में जो एक पूरी क्लैरिटी की आयत है वो आप इस हिस्से में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि ज़कात किसको दी जा सकती है किसको नहीं। फिर इसी तरह मुनाफिकीन की मजीद सिफात हैं, मोमिनों की सिफात हैं, मकसद जिंदगी क्या होना चाहिए, और मुनाफिकीन किस बात की खुशियां मनाते हैं, और सच्चे मोमिनों के रवैये, और एक बड़ा सा जुमला लिख लें कि शिर्क के साथ इस्लाम का निभा नहीं हो सकता। ये खामखा एक गठजोड़ करने की कोशिशों में आप खुद भी दुखी हैं, दूसरों को भी दुखी कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह के बगैर। बरातुम मिन अल्लाह व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, पहली पांच आयतें, टॉपिक लिखिए इस्लाम की तहम्मुल मिजाजी। अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से बेजारी का ऐलान है इन मुशरिकों के बारे में जिनसे तुमने अहद पैमान किया था। बस मुशरिको, तुम मुल्क में चार महीने तक तो चल फिर लो, जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो, और ये भी याद है कि अल्लाह काफिरों को रुस्वा करने वाला है। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को बड़े हज के दिन इत्तला है कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है और इसका रसूल भी। देखिए अगर इसको गलत पढ़ लेना तो मानी बिल्कुल पलट जाएगा। अल्लाह अपने रसूल से बेजार है, यानी आपको सिर्फ एक इशारतन बता रही हूँ कि तजवीद को गलत ना किया करें। जबर और जेर के साथ अरबी जुबान में मानी बदल जाते हैं, तो मान लफ्ज सही पढ़ेंगे तो मानी भी इंशाल्लाह ताला सही होगा। अगर अब भी तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर तुम रूगरदानी करो तो जान लो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते और काफिरों को दुख की मार की खबर पहुंचा दीजिए, सिवाय इन मुशरिकों के जिनसे तुम्हारा माहदा हो चुका और इन्होंने तुम्हें जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, न किसी की तुम्हारे खिलाफ मदद की, तो तुम भी इनके माहदे की मुद्दत इनके साथ पूरी करो। अल्लाह ताला परहेजगार लोगों को दोस्त रखता है। फिर हुरमत वाले महीनों के गुजरते ही मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, इन्हें गिरफ्तार करो, इनका मुहासरा करो और इनकी ताक में हर घाटी में जा बैठो। हाँ अगर वो तौबा कर ले और नमाज के पाबंद हो जाएं और ज़कात अदा करने लग जाएं तो तुम इनकी राहें छोड़ दो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। ठीक, ये है वो आयतें जो फतेह मक्का के बाद अगले साल सन 9 हिजरी में जब हज का मौसम आया तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो और हजरत अबू बकर सिद्दीक के जरिए हज के मैदान में और जाकर वहां सुनवाई गई। देखिए इस्लाम की तहम्मुल मिजाजी, 21 साल हो गए अल्लाह के नबी को नबी बने हुए और बैतुल्लाह के अंदर बुत थे, कुछ भी नहीं कहा आपने, किसी का बुत नहीं जाके तोड़ा, किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपने पहले अंदर के बुत तोड़े। ला इलाहा कहकर ला की तलवार से अंदर के बुतों को तोड़िए फिर इल्लल्लाह समझ आएगा। लेकिन जब मक्का फतह हो गया और मक्का की पहचान एक मुसलमान शहर और मुल्की हुई तो अल्लाह के नबी ने फिर इन आयात के जरिए से वहां एक ऐलान करवा दिया, 4 महीने की मोहलत दिलवा दी गई कि अभी भी मौका है, कुरान सुनो सीखो और फिर भी इस्लाम कबूल कर लोगे तो हम तुम्हें कबूल करेंगे। अब इस सारी बात में ये जो आयत नंबर 5 है ना, ये है सबसे ज्यादा मिस कोट की जाने वाली आयत आज के दौर में, पकड़ो और इनको मारो। और आयत भी पूरी नहीं कोट करते वरना बात अगली आयत के हिस्से में खुद ही समझ आ जाती है। इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है और सूरत तौबा को निसाब से निकलवा दिया गया है, आपको पता ही होगा ये बात, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें। हत्ता कि मैंने खुद एक वीडियो देखी, सच थी कि झूठ, लेकिन लग तो सच रही थी, कि इंडिया में एक शख्स ने मुकदमा दायर किया कुरान के खिलाफ कि ये खूनी किताब है, इसको जलाइए, इसको बंद कीजिए, क्योंकि जब तक ये किताब दुनिया में रहेगी लोग लड़ते भिड़ते रहेंगे। तो कोई लोग कुरान पढ़ पढ़ के, तो बोला कुरान तो मुसलमान नहीं पढ़ते, गैर कहां से पढ़ रहे हैं। तो याद रखिए इस आयत को समझ लीजिए, यह आयत आम नहीं है, टाइम बाउंड है। वो सारे हालात सामने रखिए जहां ये आयत नाजिल हो रही है कि इतने साल की मोहलतें देने के बाद, 21 साल के सब्र और तहम्मुल के बाद अब यहां हुक्म दिया जा रहा है। तो आप कहिए कि इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं बल्कि ये इस्लाम प्यार के और अखलाक के जोर पर नाफिज किया गया। अल्लाह के नबी ने मोहब्बत से दिलों को फतह किया। और दूसरी बात है कि नबी की जंगें जो थी वो कोई ऐसी जंगें नहीं थी कि जिसको आज की जंगों से रखें। अब होता क्या है, जो हमारा गम है ना वो क्या है, हमें खुद तो पता नहीं होता, दूसरा कोई सवाल करे तो एक तो जवाब नहीं दे सकते, दूसरी बात अपने दिल में शक आता है। तो इसलिए कलबुल मुर्ताब, आज के इस बारे में हम शक देख रहे हैं कि जुम्मत मुस्लिमा के अपने दिलों में अल्लाह के नबी और जंगों और जिहाद में, अगर लफ्ज जिहाद नहीं कोई बोलता, बैन कर दिया जाएगा, सेंक्शन लग जाएंगी। हालांकि हकीकत यह है कि अल्लाह सुबहान तआला ने इधर वो सारी बातें हमें बताई हैं जो हम देखने वाले हैं अभी इंशाल्लाह। ये वो असूल है जिसके तहत पिछली कौमें हलाक की गई थी और उनको आसमानी जमीनी आफात से हलाक किया गया। इस कौम को, मक्का वालों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की तलवारों से हलाक किया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के नबी की जुबान से बात सुनी भी, पैगाम खुद भी पहुंचा, लेकिन उन्होंने फिर भी ना माना। आइए देखते हैं आगे। सॉरी, आयत नंबर 6 से 10, टॉपिक लिखिए, मोहलत मुद्दत दीजिए ताकि दिल खुल जाए। वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन, अगर मुशरिकों में से कोई आपसे पनाह तलब करे तो इसे पनाह दे दो यहाँ तक कि वो कलामुल्लाह सुन ले, फिर इसे अपनी जाए अमन तक पहुँचा दे। ये इसलिए कि ये लोग बेइल्म हैं। मुशरिकों का अहद अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक कैसे रह सकता है सिवाय इनके जिनसे तुमने अहदो पैमान मस्जिद हराम के पास किया है। जब तक वो लोग तुमसे मुआहदा निभाएं, तुम भी इनसे वफादारी करो। अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत रखता है, इनके वादों का क्या एतबार। इनका अगर तुम पर गलबा हो जाए तो ना ये कराबदारी का ख्याल रखे ना अहदो पैमान का। अपनी जुबानों से तो वो तुम्हें परचा रहे हैं लेकिन इनके दिल नहीं मानते, इनमें से अक्सर फासिक हैं। उन्होंने अल्लाह ताला की आयतों को बहुत कम कीमत पर बेच दिया और इसकी राह से रोका। बहुत बुरा जो ये कर रहे हैं। ये तो किसी मुसलमान के हक में किसी रिश्तेदारी का या किसी अहद का मुतलक लिहाज नहीं करते, ये हैं ही हद से गुजरने वाले लोग। क्या पता चला अल्लाह ताला ने अपने हिसाब से ऐसे लोगों को जो अल्लाह के नबी सल्लम के दुश्मन बने हुए थे दोबारा मौका दे दिया कि ये इन सारी बातों के कहने सुनने के बावजूद भी एक मौका और ले ले। और वो किधर है? आयत 11 से 13 में टॉपिक लिखिए, किसी को पिछली जिंदगी का ताना नहीं देना। फइन ताबू वअक़ामुस्सलात वअतुज़्ज़का। अब भी अगर ये तौबा कर लें और नमाज के पाबंद हो जाएं और ज़कात देते रहें तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। हम तो जानने वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। अगर ये लोग अहद पैमान के बाद भी अपनी कस्में तोड़ दें और तुम्हारे दीन में तानाजनी करें तो तुम भी इन सरदाराने कुफर से भिड़ जाओ। इनकी कस्में कोई चीज नहीं, मुमकिन है कि वो भी इससे बाज आ जाए। तुम इन लोगों की सरकूबी के लिए क्यों तैयार नहीं होते जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ दिया और पैगम्बर को जिला वतन करने की फिक्र में है और खुद की अव्वल बार उन्होंने तुमसे छेड़की। क्या तुम इनसे डरते हो? अल्लाह ही ज्यादा मुस्तहक है कि तुम इसका डर अल्लाह ही इस बात का ज्यादा मुस्तहक है कि तुम इसका डर रखो बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो। आपको बातें तो समझ आ ही रही होंगी। जाहिर है कि इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, तारीख है। अल्लाह के नबी का ये दौर बड़ा मुश्किल दौर था और खास तौर पे अब देखिए सहाबा का। और ये जो आयत 11 पढ़ी है ना, इस पे तो जरा सा गौर कीजिए। फइंताबू फइख्वानुकुम फिद्दीन। सुभान अल्लाह, अल्लाह का दामने रहमत बहुत वसी है। जब जिस दौर में कोई पलटना चाहता है, इवन 21 साल के दुश्मन जिन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी को सताया, अल्लाह उनको भी मोहलत दे रहा है। इससे पता चलता है कि इस्लाम ब्लड थर्स्टी नहीं है। इन आयतों पर सिर्फ वही अमल कर सकता है जो सिर्फ अल्लाह की खातिर जिहाद करता हो। मुझे तो ऐसे लगता है कि कदम कदम पर सहाबा के जज्बात का इम्तिहान लिया जा रहा था। देखिये, यहाँ फइख्वान को फिर दीन कहा जा रहा है और सहाबा ने मान लिया। जो लोग मुसलमान हुए, 90% लोग फतेह मक्का के बाद मुसलमान हो चुके थे। किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया कि लो जी, हम तो कुर्बानियां दे देकर शुरू से फावे हो गए और मारे गए और ये बाद वाले आज हमारे करीब आ गए। नहीं ऐसा किया। नए आने वालों को हमेशा वेलकम किया और आप भी वेलकम कीजिए। क्यों? इसलिए कि कोई बच्चा बाद में पैदा हो जाए तो उसका कसूर तो नहीं है। बस खरे खोटे का फर्क लोगों में फर्क डाल देता है, अदरवाइज कोई पहले आ जाए कोई बाद में। और मैं जब भी कभी सहाबा के लिए सोचती हूँ, रिसेंटली आप में से कुछ लोगों को फसुरफत पढ़ाई है, तो मुझे ऐसे लगता है कि क्या अखलाकी मजबूती थी सहाबा में। ये कमाल किसका था? ये उस्ताद का कमाल था। ऐसी किताब पढ़ाई कि वो कागज के सफों से हटकर दिल के सफों पे चली गई। सच यानी अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को जो किताब पढ़ाई वो किताबों में नहीं लिखी, वो कागज के नोट्स नहीं थे, वो दिल पे लिखे गए। और फिर जैसे लिखे गए उसका जिक्र है, फौरन कबूल कर लिया। किसी नए मुसलमान को ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा मेरा पुराना बैर है, तुम्हें मैं नहीं देख सकता। और आज लोग जब तस्कीर के बगैर दीन के काम करते हैं ना, तो यकीन करें दीन को बदनाम करते हैं। हम तो आपके पुराने साथी हैं, ये तो नए हैं, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। सहाबा ऐसा नहीं कहते। आने वालों के लिए दिल के दरवाजे खोल दिए। फिर आप देखिए, सहाबा में कोई सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं थी, खुद नुमाई का कोई हल्का सा जर्रा नहीं था सहाबा में, क्रेडिट लेने का कोई शौक नहीं था, सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं थी। ऐसे ही कह सकती हूँ कि चलते फिरते कुरान थे सहाबा। अपनी जात की नफी की और इस्लाम की ताकत बन गए। और खुद को उम्मत की वाहदत के पीछे छुपा दिया, खुद छुप गए, इस्लाम को जाहिर कर दिया। हम कितने इम्पोर्टेंट हैं, ये सोच नहीं थी सहाबा की। और आपने यहां ये भी नोट किया है कि कैसे सीनों की ठंडक की बात करके अल्लाह ताला ने यहां ये बात बता दी कि सच्चा मोमिन किसी को इस्लाम की तरफ आता देखकर, दीन की तरफ आता देखकर उसका सीना ठंडा होता है। साबा के सीने इस्लाम के गलबे से ठंडे हुए थे, बदले लेकर नहीं हुए। दूसरों को इस्लाम की तरफ आता देखकर एक सच्चे मोमिन का सीना ठंडा हो जाता है, क्योंकि उनकी दुश्मनी काफिर से नहीं कुफर से थी। सब अपने नफ्स के लिए नहीं अल्लाह के लिए जंग करते थे। लिहाजा ऐसी ही चीजों को यहां सुनते हुए देखिएगा, आयत नंबर 14 से 15, अल्लाह को मोमिन की खुशी अजीज है। अल्लाह को भी देखिए अपने मोमिन बड़े प्यारे लगते हैं। फरमाया कातिलूहुम युअज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, इनसे जंग करो, अल्लाह ताला इन्हें तुम्हारे हाथों अजाब देगा, इन्हें जलील और रुसवा करेगा, तुम्हें इनके इन पर मदद देगा और मुसलमानों के कलेजे ठंडे करेगा और इनके दिल का गम व गुस्सा दूर करेगा, और वो जिसकी तरफ चाहता है रहमत से तवज्जो फरमाता है, अल्लाह ताला जानता बूझता और हिकमत वाला है। तो साहबा के ठंडे कर दिए सीने अल्लाह ने, अल्लाह आज हमारे भी सीने ठंडे कर दे नए लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाकर। आप देखिए नए लोगों को इस्लाम में आता देखकर कितना खुश होते हैं। आज भी कोई रिवर्ट होता है ना तो वो इतना खुश होता है। एक किसी का मैं देख रही थी, बहुत ही मोटिवेशनल थी उनकी वीडियो, तो वो बता रहे थे अपने इस्लाम की स्टोरी। तो उसने कहा कि मुझे आज तक जिंदगी में इतनी किसी मर्दों ने नहीं दी जो उस दिन दी जिसे मैं मुसलमान हो गया। तो रो रो के अपनी कहानियां बताते हैं, तो दिल तो सच है। हम अगर जैसे भी गए गुजरे हैं, लेकिन आज भी हम दूसरों को इस्लाम की तरफ आता देखकर खुश होते हैं। आज इन आयतों को सुनते वक्त दुआ करें, अल्लाह मेरे हाथों से लोगों को इस्लाम दे, और गैर मुस्लिम को इस्लाम मिलेगा, मुसलमान को कुरान मिलेगा। जब लिखिए, गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है, मुसलमान कुरान कबूल करता है। अपने प्यारों को बीवी बुलाइए, खूबसूरत घड़ियां हैं, प्यार की घड़ियां हैं, उनकी याद में रोइए, उनको तड़पाइए और उनके लिए तड़पिए। आपकी मोहब्बत की ग्लू में वो चिपके चले आएंगे ताकि कोई बच जाए, क्योंकि जब एक इंसान दूसरी तरफ चला जाता है ना तो फिर उसको बात समझ नहीं आती जब तक के आप उससे मोहब्बत का इजहार ना करें। आगे देखिए आयत 16, आजमाइश से सलाहियतें निखरती हैं। जी अम खसिब तुम अंतुतरकु वलम मायालम इल्ला, क्या तुम समझ बैठे हो, अपने दिल पे लीजिए इस आयत को, क्या तुम समझ बैठे हो कि तुम छोड़ दिए जाओगे, हालांकि अब तक तो अल्लाह ताला ने तुम में से इन्हें मुमताज ही नहीं किया जो मुजाहिद हैं और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया। अल्लाह ताला खूब खबरदार है जो तुम कर रहे हो। जन्नत सस्ता सौदा नहीं है, जन्नत के लिए मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, अल्लाह ताला हमें इसके लिए तैयार कर रहे हैं। आयत 17 से 18, सही अकीदा होगा तो इबादत सही होगी। मा कान लिल मुश्रिकीन यामुरू मसाजिद अल्लाह, लायक नहीं कि मुश्रिक अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें, हालांकि वो खुद अपने कुफर के आप ही गवाह हैं। इनके आमाल जाया हो गए और इकारत हो गए और वो दायमी तौर पर जहन्नमी है। अल्लाह की मस्जिदों की रौनक और आबादी तो इनके हिस्से में है जो अल्लाह पर और क्यामत के दिन पर ईमान रखते हों, नमाजों के पाबंद हों, ज़कात देते हों, अल्लाह के सिवा किसी से ना डरते हों। तवक्को है कि यही लोग यकीनन हिदायत याफ्ता हैं। जरा से अपना हिसाब लीजिए, आप और मैं देखते हैं क्या अकीदा दुरुस्त है जिसके साथ दीन की खिदमत कर रहा हूं। आज भी आप देखिए बातिल अकायद के साथ लोग मसाजिद की रौनक बनते हैं, वहां रूहानियत नहीं रहती और बाकी चीजें रह जाती हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक दे। और फिर इसकी दूसरी बात क्या है कि अल्लाह का डर, सिर्फ अल्लाह का डर जिंदगी में लाइए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक ताकत और एक एनर्जी आ गई। मक्का वाले शिर्क के साथ खाना काबा की खिदमत करते थे, उन्हीं की तरफ इशारा किया जा रहा है। आगे भी देखिए आयत 19 है, इस्लाम को खुद पर नाफिज करना है। कैसे? अल्लाह ताला ने पैगाम दे दिया, अजाल तुम सिकायत अल हाजी व इमारत अल मस्जिद अल हराम, क्या तुमने हाजियों को पानी पिला देना اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا؟ کیا پتہ چلا نمائشی نیکیاں جنت نہیں دیں گی؟ آج لوگ افطاری کرواتے، کھانے کھلاتے اور چندے دیتے، 10-10 لاکھ کا چیک دے دیں گے، لیکن خود دین کا کام نہیں کرتے، اس مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس آیت کا میسج کیا ہے؟ کہ نمائشی نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ کیا کرو؟ بلندر سے لینے ہیں۔ آگئی وہ خوبصورت سی آیت جس کا انتظار تھا، آیت 20 سے 22۔ بلند درجوں والے، اللہ مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بھائی بہنوں، ہمارے ماں باپ کو انہی درجوں میں شامل کروائے، اور ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ہر ایک نام پہ اپنے لیے دعا بھی کرتے جائیے گا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی۔ ان کے لیے وہاں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، دوام والی، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں۔ کیا بات ہے! آگے ذرا سنیے، دونوں کو اکٹھا لیں گے۔ آئی 23 سے 24، رشتوں کا جہاد۔ یہاں سے جہاد کا رخ مشرکین مکہ سے پھیر کر محبتوں اور خون کے رشتوں کی طرف موڑا جا رہا ہے، اور یہ مشکل ترین جہاد ہے، رشتوں کا جہاد۔ یا ایھا الذین آمنو، آپ ذرا سے اس کو اپنے اوپر لیجئے، آپ سب چیزیں چھوڑ کر ذرا اس کو فیل کیجئے، تدبر کی آیت ہے یہ۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گناہگار اور ظالم ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے، قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال، اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا ہے یہ آیت؟ ایک آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں اپنی شکل بڑی کلیئر دکھتی ہے، پور پور کھلا دکھتا ہے، میگنیفائنگ گلاس ہے یہ ایک آیت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترازو میں دو پلڑوں میں ایک طرف 8 محبتیں اور دوسری طرف 3 چیزیں رکھ دی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی ہے وہ سخت امتحان جس میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ آج بھی نمازیں پکی، روزے پکے، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھے نہ پڑھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام کے سچے خیرخواہ بن جاؤ۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، مال دینے والے بہت ہیں لیکن محبت نہیں دیتے اسلام کو، وقت نہیں دیتے، جان دینے والے تھوڑے ہیں۔ کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو آپ سونے کے لقمے کھلائیں لیکن ماں اٹھائے نہ، تو اس بچے میں کرینکینس آئے گا۔ جو نفرتوں میں پلتے ہیں وہ نفرت والے ہو جاتے ہیں۔ بالکل آج اسلام کا مزاج اینگریج لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام وہ جو بڑا غصے والا مذہب ہے، وجہ پتا کیا ہے؟ اسلام کے اس بچے کو پیار نہیں ملا۔ آج اسلام کو محبت چاہیے، آپ کی میری جان چاہیے، آپ کے میرے جذبے چاہیے، توجہ چاہیے۔ اس بچے کی طرح جس کو خوب دنیاوی اچھے کھلونے دے کے پرچا دیا جائے لیکن پیار نہ دیا جائے، ہمارا اسلام بھی ایسا ہی ہے۔ لاکھوں چندہ دینے والے خود کبھی ان مسجدوں اور اداروں میں آ کر دیکھتے بھی نہیں، وہ کہتے ہیں پیسہ دیا اور کیا چاہیے۔ تو اپنائیت والا انداز چاہیے، غیریت والا نہیں۔ اسلام کے ساتھ اپنوں والا تعلق رکھیے، ستیلوں والا نہ رکھیے۔ آپ اس کو اپنی کوز بنائیے، یہ میرا بچہ ہے، مجھے کرنا ہے، آئی ہیو ٹو ڈو دس، کیونکہ یہ جہاد آج کے دور کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ دیکھیے کہ ماں تھکی بھی ہو نا، پھر بھی اپنا بچہ کسی کو نہیں دیتی، کہتی میں اس کو کھلاؤں گی، میں اس کو لے لیتی ہوں، اور بچے کو بھی کتنا سکون ملتا ہے ماں کی گود میں آ کے۔ اور آج سم درجات، جہاد والوں کے دوہرے درجے ہیں۔ کیوں؟ ایک طرف رشتے بھی نبھا رہے ہیں اور دوسری طرف دین کا کام بھی کر رہے ہیں۔ एक तरफ दीन की जगहों पे आके भी गर्म सर्द सहनी पड़ती है और दूसरे घर वालों के मूड भी देखने पड़ते हैं। अल्लाह अजर जाया नहीं करेगा। खाद बनिए। आज के दौर में अगर आपकी मेरी ये कोशिशों के बाद कोई इस्लाम का एक बूटा ना लगा, कोई इस्लाम का गलबा ना हुआ, कोई फिक्र ना कीजिए, बस ये कही अल्लाह हमारा हिस्सा डाल दे। आज मैं इस दौर में इस्लाम की ये इस खेती को पौधा पानी देने वालों में शामिल हो जाऊं और उस चिड़िया की तरह जिसने हजरत इब्राहिम के लिए आग जलाई गई वे अपना पानी डालकर जब किसी ने कहा कि तेरे इस कतरे से क्या होगा तो उसने कहा मुझे क्या लगे, कल ये कह दूंगी कि अल्लाह मैं आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में थी। और ये काम कर जाएंगे तो अल्लाह हो सकता है हमारी कब्रों में भी और इसी काम की बदौलत बाद में हमारी नस्लों से फिर कुछ दीन का काम ले ले। और अगर आपकी सारी कोशिशें आज बेसूद लगती हैं फिर भी मायूस ना हो, आपको क्या पता कि अगली नस्ल को आपके इन कामों से कितना फायदा हो जाए। और खास तौर पर आप देखिए खून के रिश्ते जिनका यहां जिक्र है, ये हमारे वीक पॉइंट्स होते हैं। और खून के रिश्ते जब ईमान की दौलत से महरूम हो जाएं तो ये आजमाइश कई गुना बड़ी हो जाती है। क्या करें, इनका हक अदा कीजिए लेकिन दिली मोहब्बत नहीं होगी। एक पलड़े में 8 मोहब्बतें तो दूसरे में 3 मोहब्बतें, अल्लाह रसूल और उसके रास्ते की जिद्दोजहद जो आप बहुत सारे कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह कहते 8 के मुकाबले में 3, और मैं कहती हूं कि हमारी तो सिर्फ इनमें से ये 8 तो क्या, इनमें से एक एक चीज हमें इतनी महबूब है कि वो इन 3 के मुकाबले में भारी है। डालकर देख लीजिए। अल्लाह ताला कहता है हुब हो अहब में ना बदले, ये मोहब्बतें कहीं तुम्हारी कमजोरी ना बन जाएं, ये मोहब्बतें तुम्हारे पांव की बेड़ियां ना बन जाएं, ये बुजुर्ग कहीं तुम्हें जन्नत के आला दर्जों में जाने से ना रोक लें, तुम्हारी ये औलाद तुम्हें साबिकून अल अव्वलून की जगह असहाबुल यमीन तक ना रोक दे। अल्लाह का हक तो इनको ना दो। होता पता क्या, कि हम इनका हक देते देते अल्लाह का हक देने लगते हैं, और जब अल्लाह के हक पे डाका डालकर इनको हक देंगे तो कभी सुकून और खुशी नहीं मिलेगी। अब आप और मैं अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपने लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि अल्लाह ने देख लीजिए आखिरी जुमला जो कह दिया ना इस आयत में कि अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता ना फरमानों को हिदायत नहीं मिलती। तो बात यह कि आज मुझे आपको अपने किबले दुरुस्त करने हैं और अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। हमारे ईमान पुराने हो जाते हैं। हदीस में आता है कि ईमान कपड़े की तरह पुराना हो जाता है। इस कुरान के पानी से जुड़े रहिए, सारी जिंदगी तालिब इल्म रहिए। आप आइए वापस सबीलुल जन्ना अटेंड कीजिए। 10-10 दफा पढ़े हुए कुरान जिन्होंने इधर उधर कई जगह पढ़ा, जब उन्होंने पढ़ा सीखा, 2 दिन पहले भी मैं एक हमारी बहुत अच्छी साथी है उनकी ऐसे सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे दिन ब दिन यकीन आता जा रहा है कि वाकई मैंने अपनी जिंदगी का जो बेहतरीन फैसला किया पिछले साल वो सबीलुल जन्ना 2020 को ज्वाइन किया। हालांकि उसके पहले पढ़ाती थी ग्रुपों में, 20-20 ग्रुप लोग चलाते हैं आपको पता, इधर सुन उधर सुन, लेकिन वो बात जो तालिब इल्म बन के कागज कलम पकड़ते हैं, मैं सोचती हूँ अल्लाह को वो जो प्यार आता है ना तालिब इल्मों पे असाइनमेंटे करते हुए और पेपर चेक करवाते हुए, वो अल्लाह को प्यारा लग जाता है। तो अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो जाए और बेहतरीन तरीके से हमें अपने रास्ते में खपा दे। आगे अब एक और जंग की तरफ इशारा है। सारी सूरत का यही मिजाज है जो इस वक्त चल रहा है। एक आयत भी अगर मैं कहूँ ना कि स्किप करने वाली हो तो वो करने वाली नहीं है। इसलिए अपने लिए ईमानी गिजा लीजिए इसके तर्जुमे को सुनते हुए। आयत 25 से 27 गज़वे हुनैन का किस्सा है। ये भी एक ऐसी जंग थी जिसमें मुसलमानों को गर्रा हो गया कि हमारे पास आज बहुत ताकत है, लेकिन अल्लाह ने एक झटका दिया। लकद नसरकुमुल्लाह फी मवातिना कसीरा, यकीनन अल्लाह ताला ने बहुत से मैदानों में तुम्हें फतह दी है और हुनैन की लड़ाई वाले दिन भी जबकि तुम्हें अपनी कसरत पर नाज हो गया था, लेकिन इसने तुम्हें कोई फायदा न दिया बल्कि जमीन बावजूद अपनी कुशादगी के तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ फेर कर मुड़ गए। आपके मेरे लिए अमल के अपनी किसी कामयाबी पे अपने कंधे न थपथपाइए। याद रखिए वो इदारा वो इंस्टीट्यूट वो फर्द कभी फ्लरिश नहीं होगा जिसमें 5 चीजें हों और उन 5 में सिर्फ एक चीज इधर आपके सामने लिखी हुई है और वो क्या है कि तकब्बुर आ जाना, बड़ाई है कोई हम जैसे, वो तो हम है ना। कोई कहेगा अच्छा आप वो देखे वहां तो ऐसा होता है जी, वो तो ऐसे देखे, आपको तो पता है हम इतना बड़ा नाम है, जब कोई शख्स चाहे दीन का काम करने वाला हो या दुनिया वाला, कोई फर्द हो, कोई बशर हो या कानून, ये समझ लेता है ना कि हम अपनी फील्ड के मास्टर हैं, वहीं डिक्लाइन आएगा। जो कार्य हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, जैसा हम पढ़ाते हैं वैसा कोई नहीं पढ़ाता। जैसी हमारी टीम, कतन न मानिए, दुआ कीजिए कि कभी दिल में कलमे के लिए ख्याल ना आए, हमेशा अपनी खामियां देखिए और दूसरों की खूबियां देखिए। अल्लाह ताला गज़वे हुनैन की तरफ हमारी तवज्जो दिलाते हैं, फिर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की तस्कीन अपने नबी पर और मोमिनों पर उतारी और अपने वो लश्कर भेजे जिन्हें तुम देख नहीं रहे थे, और काफिरों को पूरी सजा दी। हर जंग में फरिश्ते उतरते थे क्योंकि अल्लाह को मुसलमानों की मदद करनी थी, और जितना मुसलमान अपने ईमान में सच्चा और खरा होता जाता है उतनी मदद उतरती है। किसी ने कहा था मुसलमानों से कि तुम तो बड़ा कहते हो कि मदद उतरती है, तो फरिश्ते आज क्यों नहीं उतरते? हर मैदान में तो मुसलमान मार खा रहे हैं, और हर महाज पे आप देख लीजिए इस्लाम के खिलाफ ही लोग बातें करते कराते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि फरिश्ते उतरे थे, फिर उनको कहीं मुसलमान ही नहीं दिखे तो वो वापिस चले गए। बात है कहने की, फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। तो आप अपना ईमान इस दर्जे का बढ़ाइए कि अल्लाह ताला फरिश्तों को आपके लिए वहां भेज दे, तो इंशाल्लाह आज भी इसकी पूरी उम्मीद है। लिहाजा इन कुफार का यही बदला था। फिर इसके बाद भी जिस पर चाहे अल्लाह ताला अपनी रहमत की तवज्जो फरमाए, अल्लाह ताला की बख्शिश और मेहरबानी करने वाला। और इस जंग में शुरू में झटका लगा था, लेकिन बाद में फिर अल्लाह ने इसमें भी मुसलमानों को मदद दी। याद रखिए, सिर्फ ओहद की जंग में एक झटका लगा और ये हुनैन में, इसके अलावा नबी सल्लम अपनी सारी जंगें जीते। कौन से सबब थे? आज भी आपका ईमान का लेवल क्या है और आपके साथियों का ईमान और कमिटमेंट कितनी है, इस पे अल्लाह आपको, कोई दुनिया की ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और ये दो चीजें ना हो तो आप कुर्सियों की जगह सोफे लगा लीजिए, और आप स्क्रीनों की जगह बड़े बड़े सिनेमा हॉल वाली स्क्रीन लगा लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। ये अल्लाह की जो मदद होती है ना, ये अंदर से उठती है, अंदरूनी हालत पे आती है। लोग बैरूनी चीजों से खुश होने लगते हैं। बहरहाल आयत नंबर 28 से 29, अल्लाह का भरोसा, सॉरी मुसलमान का भरोसा अल्लाह की मदद पे। कैसे? या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐमान वालों, बेशक मुश्रिक बिल्कुल ही नापाक हैं, वो इस साल के बाद मस्जिद हराम के पास भी न फटकने पाए। अगर तुम्हें मुफलसी का खौफ है तो अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देगा अपने फजल से अगर चाहे, अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। जब हरम में कुफार को आने से रोका तो कुछ मुसलमानों के दिल में ख्याल आ गया कि खाना काबे की तो रौनक कम हो जाएगी, तो जब रौनक नहीं होगी तो कारोबार कैसे चलेंगे? तो अल्लाह ने उसका जवाब दे दिया कि फिक्र ना करो, अल्लाह इस कमी को पूरा कर देगा। तुम क्या करो? इन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और क्यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह और उसके रसूल की हराम करदा शय को हराम नहीं जानते, ना दीने हक को कबूल करते हैं। इन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई, यहां तक कि वो जलीलो ख्वार होकर अपने हाथ से जिजिया दिया करें। नॉन मुस्लिम जिजिया देता है, मुसलमान जकात देता है। आगे आए 30 से 33, खूबसूरत आयत जिसके अंदर आप देखते हैं अहले किताब के कुछ बातिल अकायद को। देखिएगा, यहूद कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है, और नसरानी कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ये कॉल सिर्फ इनके मुंह की बात है, अगले मुनकरों की बात ये भी नकल करने लगे। अल्लाह इन्हें गारत करे, वो कैसे पलटाए जाते हैं। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने आलिमों और दरवेशों को रब बना लिया और मरियम के बेटे मसीह को, हालांकि इन्हें सिर्फ एक अकेले अल्लाह ही की इबादत का हुक्म दिया गया था जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो पाक है इनके शरीक मुकर्रर करने से। इनके इरादे क्या है आप नोट कीजिए, क्या मुंह की फूकों से ये चिराग बुझाया न जा सकेगा? ये आप कर चुके आयत अपने थीम पे शुरू में। देखिएगा, युरीदून अन युतफिउ नूरल्लाह बिअफवाहिहिम वयअबल्लाह इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफिरून। वो चाहते हैं, कौन चाहते हैं? इस्लाम के दुश्मन चाहते हैं। सारे गैर मुस्लिम नहीं, याद रखे गैर मुस्लिमों की दो किस्में, एक को तो अपना नहीं पता, इस्लाम का भी नहीं पता, उनको ना सोचा करें। ये आपके हमसाए नहीं है, ये आपके कुलीग नहीं है, आपके साथ काम करने वाले नहीं है, ये वो दूसरी किस्म जो पीछे बता चुकी हूँ, जो इल्म वाले हैं, जो अपने दीन को सीख कर और स्टबन होकर इस्लाम के खिलाफ हो गए। तो क्या चाहते हैं? आपने मुंह की फूकों से नूर को बुझाएं, नूर से मुराद इस्लाम, मुंह से क्या मुराद है इधर? अफवाह क्या ये? ये देखिए, ये माइक में फूक मारूंगी ना, दूर तक गई। आज का मीडिया, आज का सोशल मीडिया जिस पे इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं, फरमाया और अल्लाह इनकारी है मगर इस बात का कि अपना नूर पूरा करे, गो काफिर ना खुश रहे। आपके हाथ में शम्मा हो, थोड़ी सी फूक के सब बुझ जाएगी। तो आज के मुसलमान को सीधा होना है ताकि इस्लाम की शम्मा बुझने ना पाए। इसी ने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा है कि इसे और तमाम मजाहिब पर गालिब कर दे अगरचे मुशरिक बुरा माने। अल्लाह में गलबा इस्लाम में खपा दे, हमारी नस्लों को खाद बना दे। अल्लाह हमारी वजह से इस्लाम के पौधे पे बहार आ जाए। आयत 34 से 35। बैतुल माल जाती मेरास नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्न कसीरा मिनल अहबार, ऐ ईमान वालो, अक्सर उलमा और आबिद लोगों का माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह की राह से रोक देते हैं। जो लोग सोना चांदी का खजाना रखते हैं और अल्लाह की राह में इनको खर्च नहीं करते, इनको दर्दनाक अजाब की खबर पहुंचा दीजिए। जिस दिन इस खजाने को आतिशे दोजख में तपाया जाएगा, फिर इससे इनकी पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी। इनसे कहा जाएगा, ये है वो जिसे तुमने अपने लिए खजाना बना रखा था, बस अपने खजानों का मजा खुद चख लो। वो माल जिसकी जकात न दी जाए, हदीस में उसको कंज कहा जाता है। अभी सोचिए, पिछले सालों की नहीं दी या अब की नहीं दी, इसको दीजिए। एक औरत अपनी बेटी के साथ मौजूद थी, कड़े पहने हुए थे। जब अल्लाह के नबी से पूछा कि इसकी जकात है, आपने कहा है, तो कहा कब तक? जब से बनाए हैं तब तक। तो उसने वो कड़े उतार कर दे दिए कि आप इसी को इस्लाम के रास्ते में खपा दीजिए। तो औरत अपने जेवर की, अपने माल की जकात की खुद मुकल्लफ है। अल्लाह ताला हमारे दामन पे एक पैनी जकात की ना रखे जब हम दुनिया से जाएं, और अभी भी अल्लाह ताला में इससे सुरखरू कर दे। आगे आए थे 36-37। इन्ना इद्दत शहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरा, हुर्मत के महीनों की कोई बात है? महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक अल्लाह ताला की किताब में 12 है, 12। इस दिन से जब से आसमानों जमीन को इसने पैदा किया, इनमें से 4 हुर्मत और अदब के हैं। यही दुरुस्त दीन है। तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो और तुम तमाम मुशरिकों से जिहाद करो जैसे कि वो तुम सब से लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। महीनों का आगे पीछे कर देना कुफर की ज्यादती है। ये एक बिदत थी मक्का वालों में, नसी कहते थे इसको, अपनी मर्जी से महीनों को आगे पीछे करते। आज की जुबान में ऐसे ही कि रोजे हमेशा सर्दियों में आए, इसलिए हर 2-3 महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद एक साल का इजाफा कर देते। मुख्तलिफ तरीके थे उसके जिसको नसी कहते थे। फरमाए, इससे वो लोग गुमराही में डाले जाते हैं जो काफिर हैं। एक साल तो इसे हलाल कर लेते हैं और एक साल उसी को हर हुर्मत वाला कर लेते हैं कि अल्लाह ने जो हुर्मत रखी है इसके शुमार में तो मुवाफकत कर ले, यानी गिनती बस पूरी हो जाए, फिर इसे हलाल बना ले जिसे अल्लाह ने हराम किया है। इन्हें इनके बुरे काम भले दिखा दिए गए और कौमे कुफार की अल्लाह रहनुमाई नहीं फरमाता। अल्लाह ताला हमें दीन में इस किस्म की चीजों से बचा के रखे। आज भी मुसलमान ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं, जकात के माल को पता नहीं किधर कुधर मासियों को दे के या अपने ही पैसों की चीजों को अपने बिजनेस से निकालकर बांट दिया और लोगों को तोहफों के नाम पे दिया। याद रखिए, जकात ऐसे नहीं देनी चाहिए। ये एक इज्तमाई चीज होती है जिसको इज्तमाई मसारिफ पे इस्तेमाल किया जाएगा। आगे से अब वो सूरत का हिस्सा शुरू होता है जो अगले पारे में भी जाएगा, और ये है गज़वा तबूक। आज हम इसको पढ़ेंगे आयतों के साथ। कल पारे के शुरू में आपको कुछ तबूक का तनाजर और उससे रिलेटेड चीजें बताऊंगी ताकि आप समझ सकें कि ये दीन इतनी आसानी से नहीं पहुंचा हम तक। ये जो आज आप और मैं अपने नाम के साथ लफ्ज़ मुसलमान लगाते हैं, ये अल्लाह के नबी और सहाबा की बेआरामियां थी। ये घर छोड़कर मीलों दूर जाकर भूख प्यास पेट काटने का सफर था। पेट पे पत्थर बांधे पड़े। 18 लोगों को एक ऊंट पे बारी बारी सवार किया गया। सारे दिन में एक खजूर खिलाई गई। खड़ी फसलें छोड़कर निकले और फिर कहीं दीन के पौधे पे बहार आती है। आपको मुझे तो अपने ऊपर शर्म आ जाती है जब हम सहाबा के इनामाल को अपने इन छोटे छोटे कामों को मुश्किल समझते हुए करते हैं। आइए देखते हैं। और इस पुकार को दिल पे लीजिएगा, बिल्कुल एड्रेसिंग स्टाइल है। टॉपिक लिखिए गज़वे तबूक की तैयारियां। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम उन्फिरू फी सबीलिल्लाहि सअक़लतुम इलल अर्ज़। हे ईमान वालो, हम सब अपने ईमान को संभालें, अल्लाह की इस पुकार को अपने दिल पे लीजिए। हर एक अपने हालात खुद जानता है, अपनी मजबूरियां उसको खुद पता है, वो कितना मजबूर है या कर दिया गया या बन गया, और क्या ये मजबूरी हर चीज में, हम अपने आप को कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं और कितना ओवर एस्टिमेट करते हैं। हर एक अपने दामन में झांके, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि चलो अल्लाह के रास्ते में कूच करो तो तुम जमीन से लगे जाते हो? क्या तुम आखिरत के बस दुनिया की जिंदगानी पर रीझ गए हो? सुनो, दुनिया की जिंदगी तो आखिरत के मुकाबले में कुछ यूं ही सी है। अगर तुमने कुछ न किया तो तुम्हें अल्लाह ताला दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारे सिवा और लोगों को बदल लाएगा। तुम अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। नए लोग इस आयत को ना सुने, जो अभी पहली दफा सुन रहे हैं उनके लिए कोई इस आयत में इंशाल्लाह पकड़ की बात नहीं है। आप तो अभी प्यारे प्यारे मासूम बच्चों की तरह हिदायत की तरह लुढ़कते पुढ़कते आ रहे हैं। आपका तो अल्लाह की तरफ निकलना यही बहुत है कि वक्त पे नमाज पढ़ लें। लेकिन ये पुकार मेरे जैसे लोगों के लिए है कि जो सर से पांव तक नेमतों में भरे पड़े हैं, जिनको अल्लाह ने शायद फैसला ही कर लिया कि सारी दुनिया से ज्यादा नेमतें देनी है। ये मेरे आपके लिए कि अल्लाह के रास्ते के मुतालबे, अल्लाह के दीन की ये कोशिशें और जिद्दोजहद जब सामने आती है तो मैं किस छोटी सी चीज को, छोटे से काम को, थोड़े से माल को, एक फुट दो फुट के बच्चे को बुनियाद बनाकर मैं कहां रह जाती हूं, ये आप में से मेरे में से हर एक खुद सोचेगा। और अगली आयत में तो डांट का एक नया ही अंदाज है। क्या देखिएगा, आयत 40 से 42 सफरे हिजरत है, लेकिन डांट पता क्या है? इल्ला तंसुरूहु फकद नसरहुल्लाह। अगर तुम इनकी मदद ना करो तो ना करो। पिछली आयत में कहा करो, क्या हो गया? और आप कहते नहीं करते तो ना करो। अल्लाह तुम्हारी मदद का कोई मोहताज नहीं, इसलिए कि अगर तुम इन, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना करो तो अल्लाह ही ने इनकी मदद की उस वक्त भी जब इन्हें काफिरों ने देश से निकाल दिया था, और दो में का दूसरा जबकि वो दोनों गार में थे, जब ये अपने साथी से कह रहे थे कि गम न करो अल्लाह हमारे साथ है, पर चुनावे बारी ताला ने अपनी तरफ से तस्कीन इस पर नाजिल फरमाकर इन लश्करों से उसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं, इसने काफिरों की बात पस्त कर दी। और बुलंद व अजीज तो अल्लाह ताला का कलिमा है, अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है। हिजरत की राहें कदम ब कदम। ये आयत 40 का जुमला नोट कर लें, ला तहज़न इन्नल्लाहा माना। अबू बकर को उस वक्त अपनी फिक्र नहीं थी, मोहम्मद मुस्तफा की फिक्र थी, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर आज इस शख्स को कुछ हो गया तो इस्लाम का क्या बनेगा, क्योंकि ये अल्लाह का आखिरी रसूल है। अपनी जान को हथेली पर रख के नबी का साथ देने वाला अबू बकर कुरान की आयत में आप झलकता हुआ देख लेंगे, कैसे नबी के आराम की खातिर खुद को डसवाते रहे और आप हिले नहीं अपनी जगह से। अल्लाह हमें सिद्दीकियत का मुकाम दे दे, हम आज के इस दौर में इस दीन के साथ इतने ही सच्चे हो जाएं। हिजरत की राहें इस आयत को आप पढ़कर देखें तो आपको यकीन आ जाता है। और जब आप ज़ियारतों पे कभी जाएं और गारे सौर की ज़ियारत के लिए जाएं तो नीचे खड़े होकर देखा करें, इस दफा कम अज कम एक घंटा वहां खड़े रहकर पूरा वहां का सारा मामला पढ़ते सुनते आए, जब ग्रुप के साथ गए थे तो। कितना आसान है ज़ियारतों को देखना, कितना आसान है मक्के में जाकर रोना और मदीने में जाकर रोना, और कितना मुश्किल था और कितना मुश्किल है आज नबी के उस मिशन के लिए अपने आप को हल्का फुल्का करना। आज भी अपने आप को भारी करेंगे तो कभी भी नहीं निकल सकेंगे। हल्के जिस्म वाला ही ज्यादा भागता है, कम वाल वाला ही भागता है, खाली हाथ वाला तो ऐसे तेजी से बोर्डिंग पास लेके चला जाता है, और जिसके पास थैलों के थैले और पटारों के पटारे पड़े हैं वो हो सकता है फ्लाइट ही ना उसकी मिस हो जाए। इन सारी बातों को सुनते हुए जरा सुनिए आयत 41। انفرو خفافا وثقالا وجاہدو بی اموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, نکل کھڑے ہو جاؤ, ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کسی کے پاس کسی بھی قسم کی, اور راہ یاب بھی اپنے مال اور جان سے جہاد کرو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو. اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے, لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی. اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت اور طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے, یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے. ایک بھی لفظ نہیں کہنے کی ضرورت ان آیتوں پہ. آپ دیکھیے کہ انسان کی طبیعت کو, فطرت کو جھنجھوڑ دیتی ہیں یہ آیتیں. جب پڑھو اپنی فکر پڑ جاتی ہے, اپنے دامن میں بندہ جھانکنے لگ جاتا ہے اور اپنے پاؤں خود کلہاڑی مارتا ہے انسان. آیت 43 سے 59, چند منافقانہ خصوصیات. اف اللہ ان کلمہ ازن تلہم, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے, آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے. اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے, اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ تو اللہ پر ایمان ہے اور نہ آخرت کے دن کا یقین ہے, جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ہی شک میں سرگرداں ہیں. یعنی ہمیشہ عذر وہی کرتے ہیں جن کے پاس زیادہ ہی سہولتیں ہوتی ہیں. مشکلات والے تو ہو سکتا ہے پھر بھی نکل پڑے. آپ دیکھیں کہ آیتوں میں, آیت 45 میں القلب المرتاب یعنی شک کی دل کا تذکرہ ہے کہ کیسے دلوں میں شک پڑ جاتا ہے اپنے ہی دین سے پیچھے رہنے کی وجہ سے. تو القلب المرتاب کون ہے؟ ارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون. کب دوغلا پن آتا ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو پارے کے شروع میں آج یاد دی تھی کہ آج بڑے بڑے اینکرز اسلام کے بارے میں دلوں میں شک ڈالتے ہیں. دوسری بات ہے کہ جب دنیا کو دین پر فوقیت دے دیں تو دین کی کاز پہ شک ہونے لگتا ہے, اور دوسری بات دنیاوی مفادات میں تردد میں پڑے رہنا, ہینکی پینکی, دیکھیں گے, ڈلی ڈیلی. اللہ کہتے ہیں اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کا رکھتے, لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا. اس پہ تو دل کرتا ہے روئے بندہ. کہیں بھی جانا ہوتا ہے نا تو رات کو بندہ چیزیں تیار کر کے بیٹھتا ہے. جنہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ رات کو جلدی سوتے ہیں کہ فجر قضا نہ ہو. تو جن کے ارادے ہی نہیں وہ فجر سے دو گھنٹے پہلے ہی سو جائیں گے کہ اب تو نیند بہت آ گئی. اللہ کہتے ہیں مجھے پسند ہی نہیں آتا کچھ لوگوں کا نکلنا, دعا کیجئے یہ وقت نہ آ جائے. ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ نہیں آتا رب کی طرف, اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ رب آنے نہیں دیتا, ناراضگی اتنی بڑھ جاتی ہے. اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کو میرے در کے پیر نہ آنے دینا, باقی جو مرضی آ جائے. اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی, اب تسلی دی جا رہی ہے اللہ کے نبی کو کیونکہ آپ کا دل کڑتا تھا, تو فرمایا اگر یہ تم میں نکل بھی جاتے تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے, بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے, مراجے کے سازشیں کرتے, آپس میں لڑواتے, ٹیم کو توڑتے, ارد گرد میں ادھر ادھر باتیں کرتے. وجہ کہہ کہ دل سے جو نہیں نکلے, موٹیو ان کا ٹھیک نہیں تھا تو شکر کرو کہ یہ نہیں آئے. یاد رکھیے کچھ لوگوں کا ساتھ ہونا فائدہ مند ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا ساتھ نہ ہونا فائدہ مند ہوتا ہے. ایسے ہی لوگوں کی یہاں بات ہے. اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے, ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں. یعنی ان کی سازشیں جو اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھی اللہ نے وہ بھی کھول دی, یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا باوجود اس کے کہ وہ ناخوشی میں ہی رہے. ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے, مجھے فتنے میں نہ ڈالیے, آگاہ رہو وہ فتنے میں پڑ چکے اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے. جت بن کیس کا نام آتا ہے اس آیت میں. کہتا تھا مجھے نہ لے کر جائیں, میں رومی عورتوں کا حسن برداشت نہیں کر سکتا. और देखा जाए तो उसका उजर अगर आपको बड़ा ही नामाकूल लगा है तो अमूमन हमारे भी उजर बड़े ही नामाकूल होते हैं जब कभी हम रुकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आपको अगर कोई भलाई पहुंच जाए तो इनको बुरा लगता है, और अगर बुराई पहुंच जाए तो ये कहते हैं कि हमने अपना मामला पहले से दुरुस्त कर लिया था। फिर तो बड़े ही इतराने वाले लौटते हैं, यानी बड़े होशियार होते हैं, पहले से ही सब फिगर आउट कर लेते हैं कि जाना बेहतर है या ना जाना बेहतर है। आप कह दीजिए कि हमें सिवाय अल्लाह ताला के हमारे हक में लिखे हुए कि कोई चीज पहुंच ही ना सकती, वो हमारा कारसाज और मौला है। मोमिनों को अल्लाह ताला की जात पर ही भरोसा करना चाहिए। कह दीजिए कि तुम हमारे बारे में जिस चीज का इंतजार कर रहे हो वो दो भलाइयों में से एक है। देखिए आपको कितनी खुशखबरियां मिल रही हैं इस आयत में, तस्कीन, सूदिंगनेस। दो भलाइयां कौन सी हैं जिनमें से तुम्हें हमें मिल सकती हैं, और हम तुम्हारे हक में इसका इंतजार करते हैं कि या तो अल्लाह अपने पास से कोई सजा तुम्हें दे या हमारे हाथों से। बस एक तरफ तुम मुंतजिर रहो, दूसरी तरफ तुम्हारे साथ हम भी मुंतजिर हैं। मोमिन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है, फतह या शिकस्त दोनों उसके लिए एक ही बराबर हैं, और वो शर में से खैर को निकाल लेता है। कह दीजिए कि तुम खुशी या नाखुशी किसी भी तरह खर्च करो, कबूल तो हरगिज ना होगा, कबूल तो हरगिज न किया जाएगा, यकीनन तुम फासिक लोगो। कुछ लोगों ने खुद जाने के बजाय बस माल देना पसंद किया, पैसे ले लीजिए, हमारा हिस्सा डाल दीजिए, तो अल्लाह कहते हैं ये हिस्सा आप साथ रखिए। लिखिए एक जुमला, वो वक्त जिस वक्त हिस्सा बनने का वक्त हो उस वक्त हिस्सा डालना भी कबूल नहीं होता। अंधों में काना राजा। देखिए गिल्ट दूर करने के लिए बाज लोग कुछ ना कुछ कहते, चलो कुछ तो कर दें, ये जो हम हिस्से डालते फिरते हैं ना एंड पे खाली रह जाएंगे। हिस्सा बन जाइए, आपके बगैर कोई चीज पूरी ना हो। गाड़ी की मिसाल ले लें या किसी और चीज की ले लें, कोई सबब इनके खर्च की कबूलियत के ना होने का इसके सिवा नहीं कि ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनकिर हैं, और बड़ी काखली से ही नमाजों को आते हैं और बुरे दिल से ही खर्च करते हैं। आपको पता चले कि बुरे दिल से आपको कुछ दे गया तो आप भी नहीं कबूल करेंगे, तो अल्लाह ताला तो इससे बहुत ज्यादा गैरत रखता है। बस आपको इनके माल और औलाद तअज्जुब में ना डाल दें, अल्लाह की चाहत यही है कि इससे इन्हें दुनिया की जिंदगी में ही सजा दे और इनके कुफर ही की हालत में इनकी जानें निकल जाएं। ये अल्लाह की कसमें खा खा कर कहते हैं कि तुम्हारी जमात के लोग हैं, हालांकि वो दरअसल तुम्हारे नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि ये डरपोक लोग हैं। अगर ये कोई बचाव की जगह या कोई गार या कोई भी सर घुसाने की जगह पा लें तो भी इस तरफ लगाम तोड़कर उल्टे भाग जाए, यानी अपना कोई फायदा हो तो इन्हीं हालात में वो करने को तैयार हो जाएं, दीन के फायदे की बजाय अपने फायदों के हरीफ। इनमें वो भी हैं जो खैरात के माल की तकसीम के बारे में आप पर ऐब रखते हैं, अगर इन्हें इसमें कुछ मिल जाए तो खुश हैं, और अगर इसमें से ना मिला तो फौरन ही बिगड़ खड़े होते हैं। अल्लाह के नबी पे बार बार शक करते थे, नाउस बेला के आपने माले गनीमत को कुछ इधर से उधर किसी को दे दिया, दिला दिया, उस पर अल्लाह तला ने ये बात खड़ी कर दी। अगर ये लोग अल्लाह और रसूल के दिए हुए पर खुश रहते और कह देते कि अल्लाह तला ही हमें काफी है, अल्लाह हमें अपने फजल से देगा और इसका रसूल भी, हम तो अल्लाह की जात से ही तवक्को रखने वाले हैं। आगे है जी आयत जिसको आप कह सकते हैं कि जकात कहां दी जाए कहां ना दी जाए, आयत 60 से 66 को देखेंगे। जकात का बयान, इन नमस सदकात लिल फुकराई वल मसाकीन, सदके सिर्फ फकीरों के लिए हैं और मिस्कीनों के लिए और इनके वसूल करने वालों के लिए और इनके लिए जिनके दिल परचाए जाते हों, यानी जिनको इस्लाम की मोहब्बत दिलानी हो, और गर्दन छुड़ाने में और कर्जदारों के लिए और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के लिए, फर्ज है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। ये जो लफ्ज है ना फरीदतु मिन अल्लाह, ये बताता है फरीदतु मिन अल्लाह कि ये सदका जकात का है, क्योंकि अरबी जुबान में हर सदके को सदका कहते हैं, चाहे वो जकात हो या कोई और हो। इनमें से वो भी हैं जो पैगंबर को ईजा देते हैं और कहते हैं कि ये कान का कच्चा है। आप कह दीजिए कि वो कान तुम्हारे भले के लिए हैं, वो अल्लाह पर ईमान रखता है और मुसलमानों की बात का यकीन करता है, और तुम में से जो अहले ईमान है इनके लिए रहमत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग तकलीफ देते हैं इनके लिए दुख की मार है। पहले आके अल्लाह के नबी को बातें सुनाते और आप भोले थे, और मोमिन वाकई भोला होता है तो बाद में बातें करते हैं, ये तो बातों में आ जाते हैं। इनको राजी करना बड़ा आसान है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि शुक्र करो कि अल्लाह के नबी तुम्हारी बाल की खाल नहीं निकालते, मैं तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खा जाते हैं। हालांकि अगर ये ईमानदार होते तो अल्लाह और उसका रसूल रजामंद करने के ज्यादा मुस्तहक थे। क्या ये नहीं जानते कि जो भी अल्लाह की और इसके रसूल की मुखालफत करेगा इसके लिए यकीनन दोजख की आग है जिसमें ये हमेशा रहने वाला है और ये जबरदस्त रुसवाई है। लिखिए आयत 62 पे उजरे गुनाह अस बदतर गुनाह, गुनाहों के उजर पेश करना गुनाह करने से भी ज्यादा बुरा है अल्लाह की निगाहों में। अल्लाह ताला में उजर करने वालों में शामिल ना करें। हमेशा अपना मुहासबा करें, किसी को मत सोचा करें। ऐसी आयतें सुनते पढ़ते हुए हर एक अपने बारे में सोचे कि मेरे उजर वाकई सच्चे हैं कि नहीं। मुनाफिकों को हर वक्त इस बात का खटका लगा रहता है कि कहीं मुसलमानों पर कोई सूरत ना उतरे जो इनके दिलों की बातें इनको बतला दे। कह दीजिए कि तुम मजाक उड़ाते रहो, यकीनन अल्लाह ताला इसे जाहिर करने वाला है जिससे तुम डर और दुबक रहे हो। यहां देखिए आयत 64 में अलकलबुल मुनाफिक, निफाक वाला दिल जिसमें शक भी है तरद्दुद भी है। यहज़रुल मुनाफिकून अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन तुनब्बिहुम बिमा फी कुलूबिहिम। तो जरा इस आयत की रोशनी में देखिए, निफाक वाला शख्स या मुनाफिक दिल, दोनों कोई भी बात कह लीजिए, उसकी क्या खासियत होती है? पहली बात है कि लोगों में अपनी असलियत खुलने से खौफजदा होता है। हाय मेरे बारे में पता न लग जाए तो आप ठीक हो जाए, गलत चीज होगी तो कभी भी नहीं दिखेगी, सच होगा तो छुपेगा कभी नहीं। दूसरी बात है कि अल्लाह की ढील को कामयाबी समझते हैं। और तीसरी बात है कि तरद्दुत और तजब्जब में पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी सारी कैफियत से मुबर्रा कर दे। आगे देखिए आयत 65, तमाशे भी बहुत करते हैं, मजाक भी करते, खेल तमाशों का नाम है, इसी का तस्करा आ रहा है अगली आयतों में। अगर आप इनसे पूछें तो साफ कह देंगे हम तो यूं ही आपस में हंस बोल रहे थे। कह दीजिए कि अल्लाह इसकी आयतें और इसका रसूल ही तुम्हारे हंसी मजाक के लिए रह गए। तुम बहाने न बनाओ, यकीनन तुम अपने ईमान के बाद बेईमान हो गए हो। अगर हम तुम में से कुछ लोगों से दरगुजर भी कर लें तो कुछ लोगों को इनके जुर्म की सजा भी देंगे। यानी मजाक बहुत सूझता है मुनाफिक को, काम जो नहीं होता। और जब आप किसी चीज में फोकस नहीं होते ना, आप बहुत ज्यादा अपने आप को वहां ऐसा महसूस करते हैं कि अच्छा जी जो भी है देखी जाएगी। तो फिर ऐसी ही के हर वक्त खेलना कूदना फन फ्रॉलिक मौज मस्ती, तो अल्लाह ताला ने उस पे इन पे तनकीद की। अब बराह रास्त इनका नाम लिया जा रहा है आयत 67 से 70। देखिये मुनाफिकों की सिफात, अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात। तमाम मुनाफिक मर्द और औरतें आपस में एक ही हैं। ये बुरी बातों का हुक्म देते हैं और भली बातों से रोकते हैं और अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं। ये अल्लाह को भूल गए, अल्लाह ने इनको भुला दिया। बेशक मुनाफिक ही फासिक और बदकिरदार हैं। यहाँ देखिए मिस्टर एंड मिसेस का तस्करा और आगे भी इन्हीं की बातें। अमूमन औरतें अपने शौहरों का नाम लेकर कभी कभी खैर से दीन से दूर होती हैं। तो एक सवाल है कि क्या नौसुबिल्ला ऐसी औरतें ये सोचती हैं कि उनके मर्द मुनाफिक हैं? ऐसा नहीं है। औरत के पास अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है और औरत के पास अल्लाह ने कुछ ऐसे हथियार छुपा रखे हैं कि वो बड़े से बड़े मर्द को बेवकूफ बना लेती है। शर्त एक है कि औरत ठुक जाए, जम जाए। आप देखिए किसी का शौहर उसको कह जाओ चोरी करो, करके आएगी? आप अपने ऊपर लीजिए, मैं भी बीवी हूं, क्या मैं अपने शौहर पे खुदा ना खास्ता अगर कोई मुझे चोरी को कहता मैं करूंगी? तो बात सादी है, जब चोरी आपने अपने शौहर के साथ कहने पे करती तो ये बाकी चीजों पे आप उन गरीबों का नाम क्यों लेते हैं? अल्लाह ताला हमें अपने शौहरों के लिए बेहतरीन बनाए, उनके खिलाफ हुज्जत ना बन जाए हम लोग। फरमाया अल्लाह ताला इन मुनाफिक मर्दों और तौर काफिरों से जहन्नुम की आग का वादा कर चुका है जहां ये हमेशा रहने वाले हैं, वही इन्हें काफी है, इन पर अल्लाह की फिटकार है और इन्हीं के लिए दायमी अजाब है। मिसल इन लोगों के जो तुमसे पहले थे, तुमसे वो ज्यादा कुव्वत वाले थे और ज्यादा माल और औलाद वाले थे, बस वो अपना हिस्सा बरत गए, यानी अपने हिस्से का काम करके दुनिया से चले गए। लिहाजा तुम भी अपना हिस्सा बरत चुके, जैसे तुमसे पहले के लोग अपने हिस्से से फायदा मंद हुए थे, तुमने भी इसी तरह मजाकाना बहस की जैसे कि उन्होंने की थी। इनके अमाल दुनिया और आखिरत में गारत हो गए, यही लोग नुकसान पाने वाले हैं। क्या इन्हें अपने से पहले लोगों की खबरें नहीं पहुंची? कौन सी? कौमे नूह, आद और समूद, और कौमे इब्राहिम, और अहले मदियन, और अहले मोतफिकात यानी कौमे लूत इशारा इसमें, उल्टी हुई बस्तियों के रहने वाले। इनके पास इनके पैगंबर दलीलें लेकर पहुंचे। अल्लाह ऐसा न था कि इन पर जुल्म करे, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया। पीछे मुनाफिकात का और मुनाफिकीन का जिक्र था, अब आप जैसे अच्छे अच्छे लोगों का जिक्र है, यानी मोमिनीन की और मोमिनात की सिफात, आयत 71 से 72। वल मोमिनून वल मोमिनात, मोमिन मर्द औरतें आपस में एक दूसरे के मुआविन और मददगार हैं और दोस्त हैं। वो भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। अपना अपना जायजा लीजिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब ईमान वालियां हैं, ईमान वाले हम दावा भी करते हैं। जरा से इस चेक लिस्ट में रीचेकिंग कर लीजिए, कौन सी चीज कमजोर है, उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह, बेहतरी करेंगे, अल्लाह ताला मदद करेगा। क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे के मुआविन और मददगार दोस्त हैं। वो भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। नमाजों की पाबंदी बजा लाते हैं, जक़ात अदा करते हैं, अल्लाह की और इसके रसूल की बात मानते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला बहुत जल्द रहम फरमाएगा। बेशक अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। जब ये सब काम कर लेंगे तो क्या मिलेगा? इन ईमानदार मर्दों और औरतों से अल्लाह ने इन जन्नतों का वादा किया जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहां वो हमेशा रहने वाले हैं, और इन साफ सुथरे पाकीजा महल्लात का जो इन हमेशगी वाली जन्नतों में है। और अल्लाह की रजामंदी सबसे अच्छी चीज है और यही जबरदस्त कामयाबी है। दुआ कीजिए अल्लाह हमें अपनी रजा दे दे। अल्लाह की रजा सबसे बड़ी दौलत है। सब कुछ मिल गया लेकिन अल्लाह की रजा ना मिल गई तो कुछ भी ना मिला। अल्लाह ताला सबसे राजी हो जाए और आपको राजी भी कर दे। आगे आए 73-74। काम का इरादा करके निभाना है, बोलिए इंशाल्लाह। या युहन्नबी युजाहिदिल कुफार अवल मुनाफिकीन, ए नबी कुफार और मुनाफिकीन से जिहाद जारी रखिए और इन पर सख्त हो जाइए। इनकी असल जगह दोजख है, वो निहायत बदतरीन जगह है। ये अल्लाह की कसमें खाकर कहते हैं कि उन्होंने नहीं की कहा, हालांकि यकीनन कुफर का कलेमा इनकी जुबान से निकल चुका है और ये अपने इस्लाम के बाद काफिर हो गए हैं, और इन्होंने इस काम का कसद भी किया जो पूरा न कर सके। नबी सलम की जान लेने की कोशिश की थी, उसकी तरफ इशारा। ये सिर्फ इसी बात का इंतकाम ले रहे हैं कि इन्हें अल्लाह ने अपने फजल से और इसके रसूल ने दौलतमंद कर दिया। अगर ये अब भी तौबा कर लें तो ये इनके हक में बेहतर है, और अगर मुंह मोड़े रहें तो अल्लाह ताला इन्हें दुनिया आखिरत में दर्दनाक अजाब देगा और जमीन भर में इनका कोई हिमायती और मददगार न खड़ा होगा। क्या मिला? सोचा जाए तो 4 दिन की दुनिया थी, वो भी चली गई, और आखिरत मिली ना। अल्लाह ताला दुनिया में उसकी रजा के काम करने वाला बना दे। और आप देख रहे हैं कि जहां जंगों का जिक्र है वहां मुनाफिकीन का जिक्र है। इन्हीं में से कुछ और, आयत 75 से 74। बखीली करने वाले, क्योंकि जहां भी दीन का काम होगा वहां माल तो चाहिए होगा, तो माल देने में तो मुनाफिक की जान चली जाती है। वो कहते हैं ना, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए। तो ऐसे लोग ना खुद देते हैं ना दूसरों को देते हैं, उसी का तस्कर है। وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا, इनमें से वो भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर वो हमें अपने फजल से माल देगा तो हम जरूर सदका व खैरात करेंगे। जरा अपने ऊपर लीजिए, कोई हमने तो ऐसी नीयत नहीं की हुई और बाद में भूल गए या बदल गए हैं। इनमें से वो भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद कर रखा था अगर वो हमें अपने फजल से माल देगा। ये मैंने आयत का नंबर शायद गलत बोला था, 74-75 कह दिया, तो आयतें क्या है 75-76। इनमें से वो भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर वो हमें अपने फजल से माल देगा तो हम जरूर सदका व खैरात करेंगे और पक्की तरह नेकोकार हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह ने अपने फजल से इनको दिया तो ये इसमें बखीली करने लगे और टाल मटोल करके मुंह मोड़ लिया। हम तो नहीं ऐसा करते। लोग कहते बहुत सारा माल होगा तो बहुत सारा देंगे, तो आज उसका जवाब ले लीजिए, थोड़े में से थोड़ा देना शुरू कर दें, बहुत में से भी बहुत देंगे आप इंशाल्लाह। आज जितना है अगर आप उसके अंदर से नहीं देंगे तो कल ज्यादा में से देना और मुहाल होगा। और बहुत गहरा असूल है 77-79 में, निफाक वाले की बख्शिश नहीं। कैसे? फाकबहुम निफाकन फी कुलूबिहिम इला यौमि यलकौनहु। ये इतिकादी निफाक की बात है پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کسی کام کی نیت کر لیتا ہے نا، اچھے کام کی، دین کے نام پہ بھی، پھر بعد میں بھول جاتا ہے، تو کبھی یاد آئے تو فوراً اس کام کو کر لیجئے ورنہ دل میں نفاق کا خطرہ ہے۔ آیت 77 میں دیکھیے، القلب المنافق، متردد، شکی دل کون سا ہے؟ ان آیتوں کی روشنی میں دیکھ لیجئے کہ منافق کیسے ڈرتے ہیں۔ نمبر ایک، برائیوں پہ مائل ہو جاتے ہیں، عہد شکنی کی طرف دل جانے لگتا ہے، اور اسی طرح بھلائیوں سے دور رہتے ہیں اور بخیلی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے نفاق سے پاک کرے۔ فرمایا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کے بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غیب کی ساری باتوں سے باخبر ہے۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر تانہ زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں، بس ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھ لیجئے، منافق کسی کو نیکی کرتا دیکھ نہیں سکھاتا اس کو، جو تھوڑا کرے کہتے ہیں یہ تو کچھ نہیں کرتے، جو بہت کرے کہتے ہیں ہاں جی بس ان کو سب خود ہی کرنا اور خود کرنا کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھول دیا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے یہاں وہ بھی آیت آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جس شخص نے ساری رات کنواں چلایا اور اس کی مزدوری لا کر غزوہ تبوک کے مال میں شامل کرا دی، اور اللہ کے نبی نے اس کی بڑی قدردانی کی۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا دیتے ہیں، بات یہ کہ آپ کے پاس ہے کتنا اور کتنے میں سے کتنا دیتے ہیں، یہ کرائیٹیرین بنایا کریں اپنے مال خرچ کرنے کا۔ اور آگے پھر کچھ منافقوں کی موت اور اس کے بعد ان کی استغفار کی بات ہے، آیت 80، ناقابل معافی لوگ، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کیجئے یا نہ کیجئے، اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو نہ بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ عبداللہ بن ابی کی طرف اشارے ہیں۔ آیت 81 سے 86، فاسق ہدایت نہیں پاتے، فریح المخلفون بمقعدہم، پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے پیچھے رہ جانے پر خوش ہیں۔ نوٹ کیجئے، مومن نیکیوں میں ساتھ جانے پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور منافق پیچھے رہنے پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ چلو شکر ہے میری جان چھوٹ گئی۔ ہاں، اللہ ہمیں اپنی چھٹی بھی نیکیوں پہ رونے والا بنا دے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش وہ سمجھتے۔ ہمیں تو گرمی میں بھی نہیں نکلنا پڑتا، ہمارے تو گرمیوں میں بھی ایئر کنڈیشن، گاڑیاں اور بڑے خوبصورت ماحول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رستوں میں نکلنے والا بنا دے۔ اگلی آیت پہ ذرا سا تدبر کروں گی میں بھی اور آپ بھی، کیونکہ یہ وہ آیتیں کہ جن کو پڑھ کر واقعی دل نرم ہوتا ہے، رقائق القلب میں سے ہے یہ آیت۔ بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسے اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس آج کون سا کلچر ہے؟ فن، مزہ، قرآن بھی بچے اس سے پڑھیں گے جس ان کو مزہ ہے۔ میرے بچے گئے تھے کلاس میں، مزہ ہی نہیں آیا۔ کیوں بھائی؟ وہ ہوٹل میں گئے تھے کھانا کھانے، وہ چکی چیز پہ گئے تھے۔ یاد رکھیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے۔ آج مزے کی خاطر لوگ دین کی سیکھنے سکھانے کو بھی بازوا حق بات چھوڑ کر ادھر ادھر کی میٹھی باتوں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے عقائد کی اور ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر آپ یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے، اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی لڑ سکتے ہو، تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ آپ کو یاد آیا سورۃ الانعام کا وہ حصہ، ایک بار بندہ بیٹھتا ہے پھر اگلی دفعہ اللہ اٹھنا ہی نہیں دیتا، اگر بیٹھے تو اٹھ جائیں، بہت کم لوگ ہیں جو بیٹھنے کے بعد دوبارہ اٹھتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ جاتے بہت ہیں، آتے تھوڑے ہیں، اس لیے آنے والوں میں بنیے، اللہ آپ کو پیار سے تھام لے گا۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہے، आपको इनके माल और औलाद कुछ भी भले न लगें, अल्लाह की चाहत यही है कि इन्हें इन चीजों से दुनियावी सजा दे और अपनी जाने निकलने तक काफिर ही रहें। जब कोई सूरत उतारी जाती है तो अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, जब कोई सूरत उतारी जाती है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाओ और इसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो इनमें से दौलतमंदों का एक तबका आपके पास आकर ये कहकर रुख्सत ले लेता है कि हमें तो बैठे रहने वालों ही में छोड़ दीजिए, छूटे सच्चे बहाने। आयत 87-89, मुनाफिकीन की खुशियां नेकी के काम से पीछे रहने की, कैसे? रदू बी यकून माल खवालिफ, ये तो खाना नशीन यानी घरों में रहने वाली औरतों का साथ देने पर रीझ गए और इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, अब वो कुछ समझ नहीं रखते। देखिए, इस आयत में दिल की दो मुख्तलिफ किस्में हैं, मोहर लगे हुए दिल भी और ला यफ़क़हून जो पिछले पारे में पढ़ा। तो आयत 87, अल क़ल्बुल मतबू अलै, मोहर शुदा दिल। क्या हमने देखी इस आयत में इसकी सिफात? मुराद चाहते हैं, कहते हमारे लिए रियायत कर दें, बस ये मेरे लिए तो रुख्सत होनी चाहिए ना, ये मेरे लिए कानून थोड़ी है, ये रियायत मेरे लिए थोड़ी है, और ये रियायत जरा फीस में कंसेशन हमें दे दें। यानी दूसरों से क्या लेनी आप खुद ना देने वाले बने, तो मुराद में रियायत छुपी हुई है, बस ये स्पेशल मेरे लिए, ये रूल मैं नहीं मानूंगी, ये बाकी करेंगे, मैं नहीं यूनिफॉर्म पहनूंगी, ये स्टाइल होता है। फिर इसी तरह दौलत और आसाइश के रसिया, खुशहाली के बस खूगर और तन परवरी, नरम कोश होता है, जिस्मानी तौर पे बड़ा सहल होता है ऐसा शख्स। अल्लाह आपको मुझे ऐसे लोगों में शामिल ना करे, इसीलिए जिद्दोजहद की राह में रुकावट बन जाते हैं। ऐसे लोग दीन के काम ज्यादा देर नहीं करते। अल्लाह ताला हमारे अंदर से ये सारी चीजें निकाल दे और हमें जिंदगी के आखिरी दम तक अपने दीन की खिदमत के लिए चुने रखे। फरमाया, लेकिन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ के ईमान वाले अपने मालों और जानों से जिहाद करते हैं, यही लोग भलाइयों वाले हैं और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इन्हीं के लिए अल्लाह ने वो जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें ये हमेशा रहने वाले हैं। और जालिका, यही है क्या? जालिकल फौजुल अजीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आयत 90-93, पारे की आखिरी आयत, सच्चे मोमिनों के रवैये वर्सेस वो लोग जो झूठे उजर करते थे। वजाल मुअज़्ज़िरून मिनल आराफ, बादिया नशीनों में से उजर वाले लोग हाजिर हुए कि इन्हें रुख्सत दे दी जाए और वो बैठ रहे जिन्होंने अल्लाह रसूल से झूठी बातें बनाई थी। अब तो इनमें जितने कुफार हैं इन्हें दुख देने वाली मार पहुंच कर रहेगी। दईफों पर, देखिए जिस चीज की वजह से वो नहीं गए ना दीन पे, अल्लाह ने घरों में वही तकलीफें डाल दी। यही मुराद है इससे कि दीन के काम में जो मुश्किलें आती है ना, ये हमें बहुत सारे दुनिया के कामों के, दुनिया की मुश्किलात से बचा देती हैं। अब सच्चे मोमिनों का जिक्र है, जईफों पर और बीमारों पर और इन पर जिनके पास खर्च करने को कुछ भी नहीं, कोई हर्ज नहीं, ये है वो असल जिनके दर्जे अल्लाह के हाँ, बशर्ते कि वो अल्लाह और उसके रसूल की खैर ख्वाही करते रहें। ऐसे नेक कारों पर इल्जाम की कोई राह नहीं, अल्लाह ताला बड़ी मगफरत और रहमत वाला है। हाँ, इन पर भी कोई हर्ज नहीं जो आपके पास आते हैं कि आप इन्हें सवारी मुहैया कर दें। राइट प्रॉब्लम है इनका, तो आप जवाब देते हैं कि मैं तो तुम्हारी सवारी के लिए कुछ भी नहीं पाता, तो वो रंजो गम से अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए लौट जाते हैं कि इन्हें खर्च करने के लिए कुछ भी मुयस्सर नहीं। कभी हमारे साथ भी ऐसा वक्त आया? बेशक इन लोगों पर तो राह इल्जाम है और इन्हीं पर है जो बावजूद दौलतमंद होने के आपसे इजाजत तलब करते हैं। किस बात की? एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे तो माफ कर दीजिए, मैं तो नहीं ये काम कर सकता, मैं तो नहीं जा सकता। ये सोच, ये खाना नशीन औरतों का साथ देने पर खुश है। कहते ने इन्होंने चूड़ियां पहन ली औरतों की तरह और इनके दिलों पर मोहरे खुदाबंदी लग चुकी है जिससे ये लोग महज बे इल्म हो गए हैं। आए पारे का पहला लफ्ज क्या था? वालमु। आखिरी लफ्ज देखिए, ला यालमून, बे इल्मी। क्या पता चला? इल्म है जो निफाक से निकालेगा। आयत 93 में अल-क़ल्बुल मतबू अलै के एक और किस्म, मोहरशुदा दिल, कौन सा है इस आयत की रोशनी में? जहालत वाला, जिसके दिल में जहालत थम जाए। जब जहालत की गुमराही दिल में आती है ना, तो इंसान ना तो अपना नफा नुकसान पहचानता है और दिल पसंद जिंदगी में खो जाता है। तो बात सच कह के अल्लामा इकबाल ऐसे तमाम लोगों के लिए जो अपनी जान, अपनी माल, अपने दिल, अपने ऐश कोश को बुनियाद बनाकर आज के दौर में अल्लाह के दीन की इस मूवमेंट सरगर्मी में आगे नहीं आते कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है, निगाह है आईना सांस में। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्किही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।